चर्चा करने के लिए आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। यह कहना पुनरुक्तिपूर्ण होगा टिकाऊपूर्ण होगा कि वो बहुत अहम सवाल है, लेकिन सारी पुनरुक्तियां गलत नहीं होती, इसलिए दोहराव से ही मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा। भारतीय सामाजिक जीवन के एक अहम यथार्थ जाति व्यवस्था,
ये बात बार बार कही गई है और फिर भी कही जानी चाहिए क्योंकि ये एक गहरी सच्चाई को संप्रेषित करती है। जाति व्यवस्था के बारे में तमाम जो जाति विरोधी योद्धा रहे, जाति विरोधी आंदोलन करने वाले जो शख्सियता रही, उन सभी ने इस सवाल को समझने की कोशिश की, इस सवाल का सामना करने की कोशिश की कि जाति व्यवस्था 3,500-4,000 साल से भारतीय उपमहाद्वीप के समाज की एक सच्चाई बनी हुई है और तमाम आक्रांता आए, अलग अलग शासन आए, दिल्ली सल्तनत में तुर्क हुकूमत से लेकर मुगल हुकूमत से लेकर ब्रिटिश हुकूमत से लेकर और आजादी के बाद हिंदुस्तान में कांग्रेस और तमाम अन्य जो चुनावी पार्टियों की सरकारें आईं, इन तमाम व्यवस्थागत परिवर्तनों और साथ ही जो रूलर्स में परिवर्तन आए, शासक वर्ग में परिवर्तन आए, उसके बावजूद जाति का प्रश्न एक अहम प्रश्न बना हुआ है, हमेशा से ही बना रहा है, लेकिन हाल में विशेष तौर पर रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद और गुजरात में ऊना दलित उत्पीड़न कांड के बाद और अभी यहां मिर्चपुर में दोबारा पुरानी घटनाओं की पुनरावृत्ति शुरू हुई है और इसके अलावा हाल ही में आरक्षण के प्रश्न को लेकर जो जाट एजिटेशन हुआ और अभी कुछ ही समय पहले और वो प्रक्रिया अभी भी जारी है, महाराष्ट्र में जो मराठा मूक मोर्चे निकल रहे थे जो मूलतः एक मराठा लड़की के कुछ दलित लड़कों द्वारा सामूहिक बलात्कार के बाद एक स्पॉन्टेनियस एक स्वतः स्फूर्त अपसर्ज हुआ जिसमें तमाम मराठा आबादी जो है वो सड़कों पे उतरी और उसको कुछ राजनीतिक ताकतों ने इस तरह का एक मोड़ दिया कि जब तक आरक्षण बना रहेगा, जब तक दलित उत्पीड़न विरोधी कानून बरकरार रहेगा, तब तक मराठा लोगों का हक जो है वो छीना जाता रहेगा। इन सारी सरगर्मियों ने एक बार फिर से जाति के प्रश्न को एक नए महत्व के साथ रेखांकित किया है और कोई भी इंसाफ पसंद व्यक्ति, कोई भी संवेदनशील व्यक्ति जो भारतीय समाज में है, उसके सामने फिर एक ज्वलंत प्रश्न के तौर पे इसको खड़ा किया है। हमेशा से ही केंद्रीय प्रश्न था लेकिन इसे एक बार नए महत्व के साथ, एक नए फोर्स के साथ अंडरलाइन किया है, रेखांकित किया है। ऐसे समय में यहां बैठे लोग, मैं मानकर चल रहा हूं कि वो सामाजिक परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्ध लोग हैं या उसके प्रति सरोकार रखने वाले लोग हैं, निश्चित तौर पर वो परिवर्तन कैसा हो, ठीक है मैं हैंडल करूंगा, वो परिवर्तन कैसा हो, किस तरीके से लाया जाए, इसके बारे में हमारे अलग अलग विचार हो सकते हैं और उस पर बैठ के निश्चित तौर पे बहस की जा सकती है और होनी चाहिए। लेकिन इतना तय है कि यहां बैठे लोग अगर कोई सरोकार नहीं रखते सामाजिक परिवर्तन के प्रति, आर्थिक शोषण के खिलाफ, सामाजिक न्याय के लिए, तो वो यहां बैठे ही नहीं होते। वो यहां बैठे ही इसलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये सरोकार उनके दिलो दिमाग में है। ऐसे में आज ये दावा करना कि हम यहां पर जाति उन्मूलन की कोई लाइन पेश कर देंगे या कोई समाधान पेश कर देंगे इस सवाल का, ये छोटा मुंह बड़ी बात होगी। हम सिर्फ बहुत ही विनम्रता के साथ अपने कुछ विचार रखेंगे इस पर कि हमें क्या लगता है जाति के उद्भव, विकास और उन्मूलन के प्रश्न पर किस तरीके से आज सोचा जाना चाहिए। अमेरिका की एक अश्वेत और वामपंथी क्रांतिकारी एंजेला डेविस ने कहा था कि रेडिकल यानी आमूलगामी, रेडिकल होने का अर्थ है चीजों की जड़ तक जाना। अंबेडकर ने भी कहा था जड़ तक जाओ विवाद निपटेगा। इसलिए हम जाति व्यवस्था के प्रश्न पे भी जड़ तक जाने से ही शुरुआत करेंगे और जड़ तक जाकर ही मुझे लगता है कि सही तरीके से इस पूरे प्रश्न को इसकी ऐतिहासिक अंतर्वस्तु के साथ और इसके समकालीन स्वरूप यानी कि ऐतिहासिक तौर पे किस रूप में यह व्यवस्था विकसित होती आई है और आज ये किस रूप में हमारे सामने मौजूद है। इस रूप में ही चीजों को देखा जाना चाहिए, क्योंकि ऐतिहासिक तौर पर देखने से ही एक तर्कसंगत रिगरस के लिए कोई बहुत उपयुक्त मुझे हिंदी अनुवाद नहीं मिला, लेकिन एक रिगरस समझदारी, रिगरस का मतलब होता है कि आप एक आर्ग्यूमेंट देते हैं, एक दलील पेश करते हैं और उस दलील के बुनियाद पे खड़ी होकर आप अगली दलील पेश करते हैं, आपकी सारी दलीलें आपस में संबद्ध होती हैं, जुड़ी होती हैं और एक कंप्लीट तर्क व्यवस्था का निर्माण करती हैं, उसको आप रिगरस लॉजिक कहते हैं। तो रिगरस एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए एक ऐतिहासिक नजरिया होना बहुत जरूरी है। इसलिए शुरुआत इस बात से की जानी चाहिए कि जाति है क्या, और जाति है क्या इस सवाल का जवाब देने के लिए एक प्रतिप्रश्न उठाया जाना चाहिए, एक काउंटर क्वेश्चन उठाया जाना चाहिए कि जाति वर्ड व्यवस्था पैदा कैसे हुई, ये अस्तित्व में ही कैसे आई। जाति व्यवस्था के बारे में अगर हम ऐतिहासिक विश्लेषण करें तो काफी इस पर इतिहासकारों ने काम किया है, डीडी कोसाम्बी से लेकर रामशरण शर्मा, रोमिला थापर, सुवीरा जायसवाल, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में इरफान हबीब, सतीश चंद्रा, हरबंस मुखिया, और आधुनिक भारत के संदर्भ में सुमित सरकार, शेखर बंदोपाध्याय, बिपिन चंद्रा, साथ ही अंबेडकर भी। इन लोगों ने जो काम किया है उसके मद्देनजर ही मैं पहले करीबन 40-45 मिनट में अब तक जो जाति व्यवस्था के उद्भव पर ऐतिहासिक काम हुआ है उसकी एक संक्षेप में व्याख्या रखूंगा, और उसके बाद हम इससे आज क्या सीख समझ सकते हैं उसके बारे में कुछ आरजी प्रेक्षण, कुछ प्रोविजनल प्रेक्षण मैं आपके सामने रखूंगा, जो कि निश्चित तौर पर इस विषय पर मेरा अंतिम शब्द या किसी का भी अंतिम शब्द नहीं होगा। अभी भी जाति व्यवस्था के उद्भव और विकास पर शोध जारी है और तमाम नई चीजें भी सामने आ रही हैं, इसलिए अभी तक हुए अध्ययन का एक सार संक्षेप में बस आपके सामने पेश करूंगा। वर्णाश्रम व्यवस्था, पहले तो वर्ण और जाति अलग होता है, ये आगे आएगा भी। वर्णाश्रम व्यवस्था या वर्ण का जो पहला संदर्भ भारतीय प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, वो पहला संदर्भ मिलता है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में, पहली बार वर्ण का जिक्र आता है। उस समय जिस रूप में एक चार वर्णों की बात की गई है, उन चार वर्णों में अभी जाति व्यवस्था के जो दो आज आप कह सकते हैं कि मूल चारित्रिक विशेषताएं हैं, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, उनका जिक्र नहीं आता है। उस वक्त चार वर्णों की बात जरूर की गई है कि ब्रह्म, क्षत्र, विष और शूद्र। इन चार वर्णों की बात करते हुए सजातीय विवाह की बात उसमें नहीं की गई है और ना ही उसमें एक आनुवांशिक श्रम विभाजन की बात की गई है, जो दो बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं आज जाति व्यवस्था के। उस पहले संदर्भ में आपको सजातीय विवाह के नियम का कोई जिक्र नहीं मिलता और ना ही आपको आनुवांशिक श्रम विभाजन का कोई जिक्र मिलता है। इस आधार पर कई इतिहासकारों ने ऋग्वेद के उस पूरे पुरुष सूक्त का अध्ययन करते हुए यह नतीजा निकाला है, और जो काफी हद तक संतुलित और सही नतीजा है, कि जब ऋग्वेद, और ये लेटर वैदिक ऋग्वेदिक पीरियड की बात है, वैदिक पीरियड को दो हिस्सों में बांटा गया है, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, यानी कि वैदिक युग का पूर्वार्ध और वैदिक युग का उत्तरार्ध। अर्ली वैदिक पीरियड ही ऋग्वैदिक काल है। ऋग्वैदिक काल को भी दो हिस्सों में बांटा गया है, अर्ली ऋग्वैदिक काल और बाद का ऋग्वैदिक काल। ये जो पहला रेफरेंस आता है ये बाद के ऋग्वैदिक काल का है, जो ऋग्वेद का काल है पूरा, उसके बाद के दौर में ये पहली बार रेफरेंस आता है, और उस समय वास्तव में ये संदर्भ उस समय के वर्ग विभाजन को दिखला रहा था। उस समय का जो समाज में वर्ग विभाजन पैदा हुआ था, उन वर्गों को ही ये चार नाम दिए गए थे जो चार वर्णों की बात की गई है। उस समय आनुवांशिक श्रम विभाजन पर आधारित और सजातीय विवाह पर आधारित जाति व्यवस्था का भी उद्भव नहीं हुआ था। जाति शब्द का जिक्र ऋग्वेद में आपको नहीं मिलता है। जाति शब्द का जिक्र पहली बार आपको 200 ईस्वी पूर्व के कुछ स्रोतों में मिलता है, जिसमें एक है पाणिनि का अष्टाध्यायी, जिसमें वर्ण और जाति दोनों का जिक्र किया गया है, लेकिन इसमें वर्ण और जाति दोनों का जिक्र समानार्थी के रूप में किया गया है, एक ही जिसका अर्थ हो इस तौर पे किया गया है। इसके बाद वृहद संहिता जो है वराहमिहिर की, उसमें भी वर्ण और जाति दोनों ही शब्दों का जिक्र मिलता है, लेकिन यहां पर भी इन दोनों शब्दों का समानार्थी के रूप में इस्तेमाल किया गया है। और उस दौर की सबसे बाद की जो एक रचना है याज्ञवल्क स्मृति, याज्ञवल्क स्मृति में पहली बार एक जगह उस पूरे ग्रंथ में जाति और वर्ण इन दोनों शब्दों का दो अलग अलग रूपों में इस्तेमाल किया गया है। और पहली बार हम देखते हैं कि जाति और वर्ण अलग अलग परिघटनाओं के रूप में सामने आते हैं। अब इस पे थोड़ा आगे आएंगे कि किस रूप में जो है जाति और वर्ण के क्या रिश्ते हैं, जातियां किस तरीके से पैदा हुई, चार वर्णों के भीतर हर वर्ण के भीतर ढेर सारी जातियां पैदा हुई और वो क्यों पैदा हुई, किस प्रक्रिया में पैदा हुई, इस पे थोड़ा सा आगे आते हैं। रोमिला थापर और इरावती कर्वे जो प्राचीन भारत के दो प्रमुख इतिहासकार हैं, उनका यह मानना है कि जाति व्यवस्था, जाति वर्ण व्यवस्था, यह वास्तव में इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप में पहले से मौजूद थी, आर्यों के आने से पहले ही। रोमिला थापर हड़प्पा सभ्यता का मूल्यांकन करते हुए बताती हैं कि उसी समय हड़प्पा सभ्यता के समय में ही, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उस समय, सजातीय विवाह की व्यवस्था और आनुवांशिक श्रम विभाजन हड़प्पा सभ्यता के समाज में शुरू हो गया था। और जो आर्यन इन्वेजन बाद में हुआ, आर्य इन्वेजन का कंसेप्ट बहुत सवाल उस पर उठाया जा रहा है कि कोई हमला हुआ था, ज्यादा प्रमाण इस बात के मिलते हैं कि उस प्राचीन काल में जो क्लाइमेटिक बदलाव आते थे, जलवायु परिवर्तन होते थे, उसकी वजह से अलग अलग जो समुदाय हैं वो एक इलाके से दूसरे इलाके में अक्सर माइग्रेट करते थे, प्रवास करते थे। और आर्यों का भी केंद्रीय जो मध्य एशिया है उससे प्रवास एक बार में नहीं हुआ था बल्कि कई वेव्स में हुआ था, कई लहरों में वो प्रवास हुआ था। तो रोमिला थापर का ये कहना है कि आर्य यहां आए, प्रवास करने की प्रक्रिया में आए और प्रवास करने की प्रक्रिया में उनका जब सामना यहां पर मौजूद जो मूल निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के बचे कुचे तत्व थे, क्योंकि जब तक आर्य आए थे तब तक हड़प्पा सभ्यता का ह्रास, उसका पतन काफी हद तक हो चुका था, उसके कुछ रेमिनेंट, उसके कुछ अवशेष तत्व बचे हुए थे और उनसे जो इंटरेक्शन हुआ उस प्रक्रिया में आर्यों ने यह चीज यहां के मूल निवासियों से ली। तो रोमिला थापर और इरावती कर्वे जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का मूल आर्य सभ्यता में नहीं देखते हैं बल्कि वो यहीं की मूल सभ्यता में देखते हैं जो हड़प्पा के बचे खुचे तत्व थे और इसके अलावा जो भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अन्य मूल निवासी आबादी थी उसमें वो देखते हैं। इस पर काफी प्रश्न खड़ा किया गया है और इस थ्योरी को विशेष तौर पर सुविरा जायसवाल ने अपनी पुस्तक कास्ट में, कास्ट ओरिजिन फंक्शन एंड डायमेंशन उस किताब का नाम है, उसमें इस पूरे विचार को चैलेंज करते हुए रखा है कि ये कहीं ना कहीं पूरे आर्य सभ्यता को दोष मुक्त करने जैसा है और ये वास्तव में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को भारतीय उपमहाद्वीप का एक सारभूत गुण बना देता है कि भारतीय सभ्यता में ही, भारतीय उपमहाद्वीप की सभ्यता में ही कुछ ऐसा था जिसने वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को जन्म दिया और जो बाहर से आए उन्होंने इसको अपना लिया, जाति व्यवस्था को, वास्तव में ये पहले से ही यहां पर थी। इसको प्रमाणों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर सुविरा जायसवाल ने खंडित किया है कि ऐसा नहीं था। और उनका जो मानना है वो ये था कि अगर आपको वर्ण और जाति व्यवस्था के शुरुआत को समझना है तो आपको आर्यन लोगों के आने के बाद और उनके बसने के बाद और विशेष तौर पे उनके खानाबदोश चरवाहा जीवन शैली से कृषक जीवन शैली में प्रवेश के बाद, यानी कि खेती को मुख्य आर्थिक गतिविधि के तौर पे अपनाने के बाद, जब अधिशेष उत्पादन हुआ, अतिरिक्त उत्पादन हुआ, वर्ग पैदा हुए, राज्य पैदा हुआ और पितृसत्ता पैदा हुई, यानी कि स्त्रियों को गुलाम बनाया गया, उसके साथ आपको जाति के उद्भव को देखना पड़ेगा, जिसको वो कहती है कि जाति जो है वो बाध्य है कि वो वर्ग और पितृसत्ता को के साथ आए, वो अलग से नहीं आ सकती है, जाति वर्ग और पितृसत्ता और राज्य सत्ता के पैदा होने के साथ ही अस्तित्व में आई। अब इस पूरे भौतिकवादी विश्लेषण की, या कहा जाए कि सामाजिक, आर्थिक और भौतिक कहना चाहिए, भौतिक संबंधों को, क्योंकि ये ज्यादातर मार्क्सवादी इतिहासकार हैं और हम लोग के विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों में इस तरीके से मार्क्सवाद पढ़ाया जाता है कि मार्क्सवाद हर चीज का कारण आर्थिक बताता है, आर्थिक कारक ही मार्क्सवाद बताता है कि सब कुछ तय कर देते हैं। वास्तव में मार्क्सवाद इस व्याख्या के खिलाफ लड़ते हुए ही पैदा हुआ था और मार्क्सवाद ने इस व्याख्या का विरोध किया था कि समाज में हर चीज आर्थिक तौर पर निर्धारित होती है। मार्क्स और एंगल्स दोनों ने ही बाद में अपने पूरी थियरी को स्पष्ट करते हुए अलग अलग अपने मित्रों को पत्र में स्पष्ट किया। एंगल्स ने वेडमेयर को पत्र में लिखा कि हमारी जो थियरी है, हमारा जो सिद्धांत है, वो सिर्फ इतना कहता है कि इतिहास में निर्धारक तत्व जो है, समाज में कोई भी परिवर्तन होने का जो निर्धारक तत्व है, वह उत्पादन और पुनरुत्पादन के संबंध है। उत्पादन और पुनरुत्पादन के संबंध, इसका मतलब है कि कोई भी इंसान कुछ भी सोचेगा, कुछ भी कला साहित्य संस्कृति रचेगा, कोई सामाजिक मूल्य मान्यता पैदा करेगा, इससे पहले उसका जिंदा होना जरूरी है, और उसके जिंदा होने के लिए उसको उत्पादन और पुनरुत्पादन करना पड़ेगा। यानी उसको अपने खाने पीने रहने, अपना बदन ढांपने के लिए वस्तुएं पैदा करनी पड़ेंगी, और अपने ऑफस्प्रिंग्स को पैदा करना पड़ेगा, यानी प्रजनन करना पड़ेगा। इसके बिना इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता, और वो जिंदा ही नहीं रहेगा तो वो ना तो कला साहित्य संस्कृति रच सकता है, ना वो किसी सामाजिक मूल्य को रच सकता है, ना ही वो कोई और बौद्धिक गतिविधि कर सकता है। तो इसके आधार पर मार्क्स ने कहा कि ये उत्पादन और पुनरुत्पादन के संबंध किसी भी समाज का आधार निर्मित करते हैं, और इस आधार पर ही खड़े होकर इंसान वो अपनी सरकारें बनाता है, वो अपनी राजनीति तय करता है, वो अपनी सामाजिक मूल्य मान्यताएं तय करता है, वो अपनी संस्कृति को निर्धारित करता है, सोच समझ के नहीं, एक स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया में। लेकिन इस आर्थिक आधार, जिसके लिए एक बहुत ही अपचयित शब्द बना दिया गया आर्थिक आधार, मूलतः आधार, मूल आधार जिसको कहते हैं, कि समाज का मूल आधार यह होता है। अब इस दृष्टिकोण को अपनाने वाले जितने भी इतिहासकार रहे, उन्होंने भारत की जाति व्यवस्था, भारत के इतिहास का जब मूल्यांकन करना, उसका अध्ययन करना शुरू किया, तो उन्होंने भी जाति के सवाल को प्रमुखता के साथ लिया। जाति व्यवस्था के भौतिकवादी विश्लेषण की शुरुआत डीडी कोसाम्बी के साथ होती है, दामोदर धर्मानंद कोसाम्बी, जो कि एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी थे, एक बहुत बड़े न्यूमिस्मेटिक एक्सपर्ट, जो लोग सिक्कों का अध्ययन करते हैं प्राचीन काल से अभी तक, अलग अलग दौर में कैसे सिक्के आए और वो अलग अलग सिक्के कैसे अपने समय के समाज के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। वो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, न्यूमिस्मेटिक्स के एक्सपर्ट थे, और साथ में अग्रणी इतिहासकार थे अपने, कहा जाए कि जनरेशन के, और उन्होंने विज्ञान की भी गहरी पढ़ाई की थी, एक विज्ञान में भी गहरी दिलचस्पी रखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने सबसे पहले कास्ट और वर्ण के मूल का एक अपना सिद्धांत रखा। उनका सिद्धांत यह था कि वैदिक आर्यों के भारतीय उपमहाद्वीप में स्थापित होने से पहले, वैदिक सभ्यता जिन आर्यों ने शुरुआत की, उन वैदिक आर्यों के स्थापित होने से पहले ही आर्य जो प्रवास हो रहा था, आर्यों का जो प्रवास हो रहा था, तो आर्यों की एक आबादी भारतीय उपमहाद्वीप में उसके पहले ही बस चुकी थी, और ये आबादी जो है वो जो हड़प्पा घाटी के सभ्यता के बचे हुए तत्व थे, और जहां जो यहां के मूल निवासी अन्य जो कबीले थे, जनजातियां थी, उनके साथ वो फ्यूज कर गए थे, संलयित हो गए थे, मिश्रित हो गए थे। दूसरा जो आप कह सकते हैं वेव आया वैदिक आर्यन का, तो वो वैदिक आर्यन जब आए तो उन्होंने, उनका साबका इस आबादी से पड़ा जो मिश्रित आबादी थी, आर्यों के पहले वेव से आए हुए लोगों और भारतीय उपमहाद्वीप में पहले से मौजूद मूल निवासी जो आबादी थी, उनकी मिश्रित आबादी से उनका सामना हुआ, और उन्होंने जो मिश्रित तत्व थे उनको दास या दस्यु तत्व नाम दिया, दास या दस्यु नाम उनको पहली बार दिया गया, और उस समय दास का आज जो अर्थ है गुलाम, उस समय वो अर्थ उस शब्द का बना नहीं था, क्योंकि अगर आप ऋग्वेद देखें तो उसमें इंद्र के लिए भी दास शब्द का इस्तेमाल किया गया है, दास और असुर। उस समय दास और असुर शब्द का इस्तेमाल उन आर्यों के लिए किया जाता था जो आर्य पहले ही आ चुके थे भारतीय उपमहाद्वीप में और यहां के मूल निवासियों से मिश्रित हो गए थे, और असुर शब्द का इस्तेमाल, पुरंदर शब्द का इस्तेमाल, नगर विनाशक शब्द का इस्तेमाल, जो इंद्र जो कि वैदिक आर्यों का प्रमुख इहलौकिक देवता था, क्योंकि वैदिक आर्यों के दो प्रकार के देवता थे, इहलौकिक देवता और पारलौकिक देवता, जो पारलौकिक देवता थे उनके लिए देव शब्द का इस्तेमाल होता था, और जो इहलौकिक देवता उनके थे जिसमें प्रमुख इंद्र था, उसके लिए असुर शब्द का इस्तेमाल आपको मिलता है। तो यह स्पष्ट है कि जब वो इंटरेक्शन शुरू हुआ वैदिक आर्यों का और जो यहां से पहले से मौजूद आर्य और मूल निवासियों की एक मिश्रित आबादी थी, तो पहले से बसे हुए आर्यों के लिए जो कि मिश्रित हो गए थे, असुर दास दस्यु शब्द का इस्तेमाल होता है, और एक कंफ्लिक्ट की शुरुआत होती है। वो कंफ्लिक्ट में अंततः वैदिक आर्यंस इस आबादी को पराजित करते हैं, एक तरीके से कॉन्कर करते हैं, विजयी होते हैं उसमें, और इस विजय के साथ जो इस तरह की मिश्रित आबादी थी उसको एक तरीके से अधीनस्थ बनाया जाता है, सबजुगेट किया जाता है, और उसके साथ ही दास और दस्यु शब्द का जो कनोटेशन हैं, इसके जो निहितार्थ हैं, वो परिवर्तित होते हैं और पहली बार दास शब्द का वो अर्थ पैदा होता है जिसे हम आज जानते हैं, गुलाम, स्लेव। ये जो दास और दस्यु आबादी थी, यही आबादी आगे चल के शूद्र वर्ण में परिवर्तित हुई, शूद्र वर्ण जो था उसमें परिवर्तित हुई। और शुरुआत में इस पूरे व्यवस्था को, जैसे आर्यंस जब आए थे तभी वो तीन हिस्सों में बटे हुए थे, शूद्र अभी उसमें शामिल नहीं थे, लेकिन उसमें एक पुरोहित वर्ग ब्राह्मण, एक योद्धा वर्ग क्षत्रिय, और एक जो मेहनतकश वर्ग था जो खेती वगैरह करता था या इस तरह की चीजों में चरवाहा था, इस तरह की चीजों में संलग्न था, यानी उत्पादक गतिविधियों में, उसके लिए विष, जिससे वैश्य शब्द बाद में बना, विष शब्द का इस्तेमाल था। और ये शूद्र जो है, ये जब वो वैदिक आर्य यहां बस गए तो उसके बाद जो पहले से बसे हुए आर्यंस थे, जो पराजित हुए, जिनको अधीनस्थ बनाया गया, वो शूद्र वर्ण में तब्दील हुए। और पहली बार फिर आपको लेटर वैदिक पीरियड में पुरुष सूक्त में पहली बार वर्णाश्रम व्यवस्था का जिक्र मिलता है, चार वर्णों का जिक्र मिलता है। और उस समय तक इसमें डीडी कोसाम्बी इस बात के ऐतिहासिक प्रमाण देते हैं कि जो शूद्र आबादी भी थी, अगर शूद्र आबादी, शूद्र स्त्री या ब्राह्मण पुरुष, शूद्र स्त्री और क्षत्रिय पुरुष से कोई बच्चा पैदा होता था तो उसको बिना किसी भेदभाव के साथ वैदिक सोसाइटी में अपना लिया जाता था, एसिमिलेट कर लिया जाता था। उस समय इसके भी प्रमाण मिलते हैं कि अभी शूद्रों को पूरी तरीके से अनफ्री लेबर, अमुक्त श्रम, श्रमिक वर्ग में तब्दील नहीं किया गया था और उनकी एक आबादी मतलब फ्री टाइप सब्जुगेटेड थी, अधीनस्थ थी, लेकिन अभी पूर्णतः उसको एक दास, एकदम पूरी तरह अनफ्री लेबर में तब्दील नहीं किया गया था। अब इस आप कह सकते हैं कि चार वर्णों के अस्तित्व में आने का वास्तव में, और इसको एक वैचारधारात्मक रूप देने का काम जो पुरोहित वर्ग था, ब्राह्मण वर्ग था, उसने किया। उसने इस वर्ग विभाजन को पहली बार एक लेजिटिमेसी, एक वैधिकरण देने का काम किया। और ब्रूस लिंकन नाम के एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपने शोध के आधार पर दिखाया है कि इस दौर में पूरी दुनिया में जो भी इस तरह की चरवाही जनजातियां थी, नोमैड्स थे, खानाबदोश जनजातियां थी, उनमें अक्सर ये तीन विभाजन पाए जाते थे, जो कि एक तरीके से जादुई विश्व दृष्टिकोण का युग था। जादुई विश्व दृष्टिकोण के युग में मतलब जब ये चरवाहे और खानाबदोश या शिकार करने वाली ये जो जनजातियां थी, उसमें एक पुरोहित वर्ग का होना जो कि तरह तरह के रिचुअल्स करके एक तरीके से वो लोगों के भीतर, कबीले के भीतर इस बात का एक कॉन्फिडेंस पैदा करने का काम करता था कि हाँ, आपका शिकार सक्सेसफुल होगा, आप जो आर्थिक गतिविधि कर रहे हैं वो सक्सेसफुल होगी, तो उसके लिए कुछ कर्म कांड रचे जाते थे। और शुरुआती सारे, माफ कीजिएगा मैंने ही अपना मोबाइल ऑन किया, तो ब्रूस लिंकन ने यह दिखाया कि पहले ही तमाम जनजातियों में इस तरह के विभाजन थे। इजिप्ट का वो एग्जाम्पल देते हैं, सेंट्रल एशिया का एग्जाम्पल देते हैं, चीन का एग्जाम्पल देते हैं, जहां पर भी इस तरह की खानाबदोश जनजातियां थी उनमें ये तीन विभाजन होते थे, एक पुरोहित वर्ग, एक योद्धा वर्ग जो कि अन्य कबीलों से युद्ध करता था या शिकार करता था, इस तरह की चीजें करता था, और एक जो कबीले के अन्य मिनियल काम होते थे, छोटे काम होते थे, वो करने वाला एक वर्ग जिसको भारत में विश्व वैदिक सभ्यता में कहा गया। इस तरह का विभाजन और भी जनजातियों में था, ये ऐसा नहीं था कि ये यहीं पर केवल हुआ था, वैदिक सभ्यता में था। यहां पर आगे क्या नया हुआ उस पर हम आगे आएंगे, लेकिन यहां पर शूद्र जाति, शूद्र वर्ण जो है शामिल हुआ, जो सब्जुगेटेड, अधीनस्थ कर ली गई, हरा दी गई, एक पहले से आई हुई आर्य आबादी जो बसी हुई थी उसको सब्जुगेट करके शूद्र वर्ण में तब्दील किया। और यहां से उस समय जो आप कह सकते हैं कि समाज का वर्ग विभाजन था, उस वर्ग विभाजन को ही ये वर्ण व्यवस्था जो उस समय पैदा हुई थी वो दिखला रही थी। दूसरे शब्दों में, सिंपलर टर्म्स में कहें तो वर्ण अपने मूल में, अपने जन्म के समय, उस समय का वर्ग विभाजन था, समाज का वर्ग विभाजन था। कोसाम्बी आगे कहते हैं कि अभी यह वर्ग विभाजन जो है वो बहुत सुदृढ़ नहीं बना था। यह वर्ग विभाजन सुदृढ़ आगे बढ़ता बनता है जब 700 बीसी से लेकर 1000 बीसी से लेकर 700 बीसी तक, बिफोर क्राइस्ट, 1000 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी पूर्व के बीच, और उसके बाद के दौर में भी लोहा मिलता है और लोहे के साथ लोहे का हल बनता है, जो गंगा के मैदानों का मध्यवर्ती हिस्सा है उसमें जो घने जंगल थे उनकी कटाई होती है और खेती की सभ्यता का विस्तार होता है, और जो वैदिक सभ्यता थी जो अब चार वर्णों में बटी हुई थी वो वैदिक सभ्यता ईस्टवर्ड यानी कि पूरब की तरफ अपना विस्तार करती है। पूरब की तरफ जब वो अपना विस्तार करती है तो उस प्रक्रिया में वो अपने रास्ते में तमाम जनजातियों और कबीलों से टकराती है। कोसाम्बी का यह कहना है कि यही जनजातियां और कबीले ये वैदिक सभ्यता में शामिल होते हैं और यही नई जातियां बनते हैं। जो कबीले शामिल होते जाते हैं वैदिक सभ्यता में, वैदिक सभ्यता के पूर्ववर्ती विस्तार के साथ, वही नई जातियों के रूप में अलग अलग वर्णों में व्यवस्थित होते जाते हैं। जो पराजित कबीले होते हैं, जो इस तरह के काम में सिद्धस्त होते हैं, जिन कामों को पहले ही वैदिक सभ्यता में निचला काम मान लिया गया था, उन कबीलों को नीचे के वर्ण में जातियों के तौर पर स्थापित किया जाता है। जबकि वे कबीले जो कन्फ्लिक्ट के जरिए नहीं, एक युद्ध के जरिए या टकराव के जरिए नहीं, बल्कि एक स्मूथ प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं वैदिक सभ्यता में, वो विश वैश्य या क्षत्रिय या ब्राह्मणों के बीच में जाकर जातियां बनते हैं। आर एस शर्मा ने डीडी कोसाम्बी के इस पूरे स्कीम को स्वीकार करते हुए इस पे कुछ सवाल खड़े किए। आर एस शर्मा का यह कहना था कि जब तक लोहे का हल नहीं आया था और जब तक लोहे के हल द्वारा खेती उन्नत तरीके से होने की शुरुआत नहीं हुई थी, तब तक समाज में इतना अधिशेष ही नहीं था, इतना अतिरिक्त उत्पादन ही नहीं था कि वर्ग पैदा हो सके। इसलिए जब पहली बार पुरुष सूक्त में चार वर्णों का वर्णन मिलता है, तो उस समय वो चार वर्ण वास्तव में वर्ग नहीं है, बल्कि वो सामाजिक संस्तरीकरण है। वो ऐसे सामाजिक संस्तर हैं जो श्रम विभाजन पर आधारित हैं, लेकिन श्रम विभाजन पर आधारित होने के बावजूद अभी वे वर्ग नहीं बन सके हैं, क्योंकि जब तक अधिशेष उत्पादन नहीं होगा, यानी कि समाज अपनी जरूरत से ज्यादा पैदावार नहीं करेगा, तब तक वो जरूरत से ज्यादा पैदावार कोई एक हिस्सा समाज का वो उसको हड़पेगा नहीं, और जब तक वो हड़पेगा नहीं तब तक समाज का अमीर गरीब में बंटवारा या समाज का मेहनत करने वाले लोगों या फिर परजीवियों में बंटवारा वो संभव नहीं। और आर एस शर्मा की ये बात काफी हद तक सही भी लगती है, और वो उस समय के प्रमाणों से प्रदर्शित करते हैं कि वास्तव में ये जो सामाजिक संस्तरीकरण चार वर्णों के रूप में अस्तित्व में आया था ऋग्वेदिक काल के उत्तरार्ध में, ये वर्ग विभाजन में तब्दील होता है तब जबकि लोहे के हल के साथ खेती होती है और पहली बार अधिशेष उत्पादन होता है। और अधिशेष उत्पादन जब होता है तो निश्चित तौर पर वे सामाजिक संस्तर, यानी कि योद्धा संस्तर, क्षत्रिय और पुरोहित संस्तर यानी कि ब्राह्मण, वे ज्यादा बेहतर स्थिति में होते हैं कि वो जो भी अतिरिक्त पैदा हो रहा है उसको हस्तगत कर सके, हड़प सके। और इस तौर पे ये जो चार सामाजिक संस्तर थे ये वर्ग का रूप अख्तियार करते हैं। जातियों के पैदा होने के बाद भी सुवीरा जायसवाल ने इसमें एक चीज जोड़ी है डीडी कोसाम्बी के सिद्धांत में। डीडी कोसाम्बी और आर एस शर्मा दोनों का ही मानना था कि जब वैदिक सभ्यता गंगा के मैदानों यानी कि आज का जो आप कह सकते हैं यूपी बिहार का इलाका है, जो सबसे उपजाऊ जमीन वाला इलाका है, गंगा के मैदानों में उसके विस्तार के साथ जो है जो जातियां जो जनजातियां शामिल हुई वैदिक सभ्यता में और उन्होंने जातियों का स्वरूप लिया, तो ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक जनजाति शामिल हो कि पूरी की पूरी जाति बनी। हर जाति जिसको कहती है डिफरेंशियल एसिमिलेशन हुआ, विभेदीकृत रूप से सम्मिलित हुए, यानी हर जाति जो जनजातियां थी उनमें भी एक इस तरह का विभाजन पैदा हो चुका था जो जनजातियां गंगा के मैदानों में थी, कि एक पुरोहित वर्ग था, एक योद्धा वर्ग था और एक काम करने वाला वर्ग था। तो जो पुरोहित वर्ग थे वो पुरोहित वर्ग में शामिल हुए, जो जनजातियां विजयी हुई जो पुरोहित वर्ग थे वो ब्राह्मण वर्ण की नई जातियां बनी, जो क्षत्रिय थे वो जो योद्धा थे वो अक्सर क्षत्रिय वर्ण की नई जातियों में तब्दील हुए, और जो मीनियल टास्क को अंजाम देने वाले निचले कामों को अंजाम देने वाले विभिन्न जातियां थी वो जो है निचले वर्णों में शामिल हुई। और सुवीरा जायसवाल ने इसके लिए अपने तथ्य प्रमाण और सबूत पेश किए हैं, और अभी कहा जाए कि जो सबसे उन्नत काम जाति व्यवस्था के उद्भव और विकास पे मेरी जाति तौर पर राय यह है कि सुवीरा जायसवाल का किताब की पुस्तक एक अग्रणी शोध माना जाना चाहिए और एक कटिंग एज रिसर्च है जो सबसे उन्नत तरीके से चीजों को व्याख्यायित कर पाता है और ज्यादा सुसंगत रूप से व्याख्यायित कर पाता है। अब जो अगर आप ये देखें कि एक परिवर्तन किस रूप में हो रहा है वर्ण व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में जो परिवर्तन हो रहा है वो क्यों हो रहा है? वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सामाजिक आर्थिक संबंध है और जो उत्पादन पद्धति है वो जब समाज की बदलती है, तो जिस रूप में संहिताओं में या वेदों में या पुराणों में या उपनिषदों में चीजें दर्ज की गई थी ब्राह्मणों द्वारा, हूबहू उस रूप में चीजें नहीं हो रही। इसलिए एक मायने में कई लोग इस तरह का विश्लेषण करते हैं कि ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था पैदा की, ब्राह्मणों ने सजातीय विवाह को बाकी समाज पे थोपा। अंबेडकर भी ऐसा ही मानते हैं। अंबेडकर की अपनी थियरी जो है, उनका पहले कोलंबिया यूनिवर्सिटी का एक पेपर है कास्ट मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट 1916 का, जो कि 1917 में प्रकाशित हुआ इंडियन एंटीक्वायरी नाम के एक पत्रिका जर्नल में। और उसके बाद 1918 में उन्होंने लिखा अनटचेबल्स द सन्स ऑफ चिल्ड्रन ऑफ इंडिया घेटो। इन दोनों ही पुस्तकों में अंबेडकर ने यह विश्लेषण पेश किया है कि ब्राह्मण जो थे उन्होंने उनके अपनी जो कस्टम्स और ट्रेडिशन, उनकी जो परंपराएं थी, उनमें सजातीय विवाह एक प्रमुख चीज थी, एंडोगेमी, कास्ट एंडोगेमी। और यह सजातीय विवाह की परंपरा को ब्राह्मणों ने थोपा नहीं, उन्होंने एक तरीके से परसुएड करके कन्विंस कर दिया बाकी समाज को कि उनकी मूल्य मान्यताएं और उनकी परंपराएं वो श्रेष्ठतर है, वो ज्यादा बेहतर है। और इसको फिर बाकी समाज ने आत्मसात कर लिया और इसके साथ पूरे समाज में जातिगत सजातीय विवाह की व्यवस्था बहाल हुई और यहीं से कास्ट पैदा हुई। कास्ट के मूल को वो इस रूप में देखते हैं। लेकिन अगर इस स्कीम को माना जाए कि ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था को इस रूप में इंजेंडर किया या पैदा किया, तो सवाल ये उठेगा कि फिर ब्राह्मणों को किसने पैदा किया। तो वास्तव में अगर हम संहिताओं के व्याख्या से देखें कि संहिताओं और ब्राह्मण संहिताओं और पुराणों और उपनिषद से जाति व्यवस्था निकल रही है, तो हम बहुत ही एब्जर्ड ऊटपटांग नतीजों पर पहुंचेंगे। यह कहना चाहिए कि जाति व्यवस्था अपने समय के श्रम विभाजन के तौर पर पैदा हुई, जिस श्रम विभाजन को ब्राह्मणों ने कर्मकांडीय और धार्मिक रूप में अश्मीभूत कर दिया। अश्मीभूत मतलब ऑसिफाई, ऑसिफाई करने का मतलब हुआ एक तरीके से जीवाश्मीकृत कर देना। जीवाश्मीकृत करना, जैसे आप प्राचीन गुफाओं में डायनासोर का जीवाश्म मिलता है ना, कि वो जड़ित हो जाता है, इम्बेड हो जाता है, चट्टान के ऊपर ही इम्बेड हो जाता है। तो उस तरीके से एक आदिम युग में, या कहा जाए कि वैदिक सभ्यता की शुरुआत में, जो वर्ग विभाजन पैदा हो रहा था, उस वर्ग विभाजन को उस समय के शासक वर्ग ने वैधिकृत किया। यह काम हर शासक वर्ग करता है, दुनिया का हर शासक वर्ग यह काम करता है। जहां पर भी वर्ग विभाजन होता है, तो आप जो शासित है उसको यह कहकर शासन उस पर नहीं कर सकते कि मैं तुम पर शासन करने जा रहा हूं क्योंकि मेरी मर्जी है। आप अपने शासन को सही ठहराने के लिए तरह तरह की विचारधाराएं और तरह तरह के सिद्धांत पैदा करते हैं, और इन विचारधाराओं और सिद्धांतों को पैदा करके आप उस सबजुगेटेड, अधीनस्थ, कुचल दी गई, दबा दी गई आबादी, शोषित और उत्पीड़ित आबादी को विचारधारात्मक रूप से भी डिसार्म कर देते हैं, निशस्त्र कर देते हैं। और हर शासक वर्ग ये करता है। पूंजीपति शासक वर्ग पहला ऐसा शासक वर्ग है जो अपने वैधीकरण के लिए कोई दैवीय सत्ता का इस्तेमाल नहीं करता है। जैसे सामंती शासक वर्ग था, तो उसके लिए इतना कहना काफी था कि राजा ईश्वर की छाया है, इसलिए राजा शासन करेगा। आज पूंजीपति वर्ग यह नहीं कह सकता है। पूंजीपति वर्ग का अपने विचारधाराओं, शासक विचारधाराओं को पैदा करने का तरीका अलग होता है, मैकेनिज्म अलग होता है, प्रणाली अलग होती है। क्या क्या हुआ? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, बच्चों को खेलने दो, बच्चे बैठ नहीं सकते, या तो बाहर करना पड़ेगा या वो, कोई बात नहीं, जब तक शोर न मचाएं तब तक ठीक है। तो हर शासक वर्ग ये काम करता है। पूंजीपति शासक वर्ग इसको वर्चस्वकारी रूप में करता है। वर्चस्वकारी मतलब पूंजीपति शासक वर्ग शासित से सहमति लेकर उस पर शासन करता है, शासित को इस बात के लिए कन्विंस कर देता है कि तुम मुझे सहमति दो कि मैं तुम पर शासन करूं। यही वर्चस्व, शासन सहमति लेकर करना। तो अपना प्रभुत्व, जिसके ऊपर प्रभुत्व स्थापित किया जा रहा है, उससे ही सहमति लेकर उस पर प्रभुत्व स्थापित करना। और इसके बहुविध मैकेनिज्म होते हैं पूंजीवादी शासक वर्ग के, जिसमें से सबसे प्रमुख होता है चुनाव, जो ये यकीन पैदा करता है कि हमने ही तो चुना है। मोदी गलत किया डिमोनेटाइजेशन करके, लेकिन हमने ही तो चुना है। मनमोहन सिंह ने नव उदारवादी नीतियां लागू करके गलत किया, लेकिन हमने ही तो चुना है। यह है वो वर्चस्वकारी प्रणाली जिसके जरिए पूंजीपति वर्ग शासन करता है। लेकिन यह एक अलग चर्चा का विषय है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा कि यह सहमति निर्मित कैसे की जाती है। एक बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी से तंगहाल आबादी को आप रेडियो, टीवी, होर्डिंग्स और मीडिया और जो पूरे शासक वर्ग के तमाम उपकरण है, उससे बार बार दोहरा के असत्य को सत्य में तब्दील कर देते हैं। सभी जानते हैं कि सारी चुनावी पार्टियां एक थैली की चट्टी बट्टी हैं, लेकिन कांग्रेस के 10 साल के शासन के बाद जब लोग उबे हुए थे, परेशान थे गरीबी और बेरोजगारी से, तो पूरे कॉरपोरेट मीडिया ने 11,000 करोड़ रुपए खर्च करके मोदी का चुनाव अभियान किया और आपको घर से निकलते, गाड़ी में जाते, बस में जाते यही सुनाई पड़ता रहता था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। इसको इतनी बार दोहराया जाता है कि एक श्रांत, क्लांत, थकी हुई आबादी वो कहती है चलो यार इसको ही देख लेते हैं एक बार, यही कुछ कर देगा, ये थोड़ा सा तानाशाह टाइप है, थोड़ा जोर से डंडा चलाएगा सब ठीक कर देगा। तो इस तरीके से सहमति निर्मित की जाती है। ये इस बात को छिपा नहीं सकता कि पूंजीपति वर्ग भी आपको लूट रहा है और शासन कर रहा है, लेकिन तात्कालिक तौर पर जब तक जनता के पास कोई विकल्प नहीं होता है तब तक वो इस या उस चुनाव चिन्ह पे ठप्पा मार के संतुष्ट हो जाती है और इस तरीके से सहमति निर्मित होती है। लेकिन पूंजीपति वर्ग पहला ऐसा शासक वर्ग था जो सहमति लेकर शासन करता था, यानी वर्चस्व, हेजमनी, हेजमनी का इस्तेमाल करके शासन करता है। उसके पहले के जितने वर्ग है, चाहे वो सामंती शासक वर्ग हो या गुलामों का जो मालिक वर्ग था ग्रीको रोमन एंटिक्विटी में, ग्रीस में, प्राचीन यूनान और प्राचीन रोम में, वो उसको ऐसी कोई सहमति लेने की जरूरत नहीं होती थी, वो दैवीय तौर पे अपना वैधिकरण लेता था, है ना, डिवाइन तरीके से अपना वैधिकरण लेता था कि चूंकि मैं ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव हूं धरती पे, इसलिए मैं शासन करूंगा। इसलिए चर्च और सत्ता का एक गहरा गठजोड़ पूरे मध्य युग में आपको यूरोप में देखेगा। इसलिए मंदिरों, पुरोहित वर्ग और जो शासक वर्ग था उसका एक गहरा गठजोड़ आपको नग्न, आज भी है लेकिन पहले नग्न रूप में आपको प्राचीन और मध्यकालीन भारत में भी नजर आएगा, लेकिन आज वो नहीं हो सकता। आज इस रूप में शासन करना मुश्किल है पूंजीवादी व्यवस्था के दौरान, जब कम से कम एक लिमिटेड जनवाद लोगों को दिया जाता है वगैरह वगैरह। अब जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था पर अपनी चर्चा पर वापिस लौटते हुए, कि जातियों के पैदा होने का, वर्ण के पैदा होने का इस रूप में एक इतिहास आपको, और मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप में से बहुत सारे लोग शायद छात्र होंगे, बुद्धिजीवी होंगे, वो जानते हैं, हो सकता है मुझसे बेहतर जानते हैं और पहले से पढ़े हुए हों इन चीजों के बारे में, इसलिए उन पाठ्य पुस्तकों में दर्ज सारी चीजों का यहां बखान करना या बयान करना मेरा मकसद नहीं है। मूल बात मुझे जो यहां पर मैं अपनी जो राय इस पर रखना चाहता हूं वो ये है कि जाति वर्ण व्यवस्था के सदियों सदियों के दौरान हुआ जो इसमें परिवर्तन है, जो इसमें गतिकी है, आज की जाति व्यवस्था वही नहीं है जो आज से 2000 साल पहले थी। इवन आज की जाति व्यवस्था वो भी नहीं है जो आज से 50 साल पहले थी। इसमें एक परिवर्तन का भी तत्व है और इसमें एक निरंतरता का भी तत्व है। निरंतरता का तत्व यह है कि जाति व्यवस्था हर शासक वर्ग को एक ऐसी शासक विचारधारा, एक ऐसी वर्चस्व शील विचारधारा देती है जिसको हम ब्राह्मणवाद कह सकते हैं, जो कि शुद्धता और प्रदूषण, प्योरिटी और पॉल्यूशन के ऊपर आधारित है, जो गहराई के साथ पदानुक्रम, उच्चा नीच क्रम, हायरार्की के सिद्धांत को मानती है, और इस पदानुक्रम के सिद्धांत को जो कि शुद्धता और प्रदूषण के सिद्धांत पर आधारित है, यह ब्राह्मणवादी विचारधारा एक कॉन्स्टेंट है जो कि जाति व्यवस्था के शुरू से आज तक ये किसी न किसी रूप में मौजूद रही है और शासक वर्ग को अपने शोषण को, अपने उत्पीड़न को सही ठहराने का एक जबरदस्त उपकरण देती रही है। और यही कारण है कि तमाम जो अलग अलग एथनिक ग्रुप से आक्रांता आए, चाहे वो टर्किश हों, चाहे वो मुगल्स हों, उन्होंने कभी भी जाति व्यवस्था के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की, क्योंकि जाति व्यवस्था उनको अधिशेष विनियोजन का, सरप्लस एप्रोप्रिएशन का, सरल शब्दों में कहें तो मेहनत कश वर्ग द्वारा पैदा की गई पैदावार को हस्तगत करने, लूटने का और उस लूट को सही ठहराने का एक ऐसा उपकरण देती थी जो उनके पास नहीं था। वास्तव में जब टर्किश इन्वेडर्स आए और सिंध को उन्होंने जीता, तो टर्किश इन्वेडर्स का जो सेनापति था उसने कहा कि यह जो व्यवस्था है, हम लोग इस मामले में पिछड़े हुए हैं, यानी कि जो टर्किश इन्वेडर्स वहां की जो अपनी संस्कृति थी, उसने कहा कि हम लोग पिछड़े हुए हैं, यहां देखिए जो लोग लूट रहे हैं या लोग जो लोग दबे हुए हैं उनको दबाने का इतना जबरदस्त उपकरण यहां के शासक वर्ग ने पैदा किया है कि इसे हमें सीखना चाहिए। और वास्तव में उस टर्किश इन्वेडर ने बड़ी ईर्ष्या और जलने की भावना के साथ यहां की जाति व्यवस्था को देखा कि काश ऐसी कोई चीज हमारे पास होती। और जब उन्होंने हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत कायम भी कर ली तो उन्होंने किसानों की लूट और खासतौर पर भूमिहीन मजदूर, जो मुख्य तौर पर आज भी भूमिहीन मजदूर जितने हैं उसका 47% जो है वो दलित आबादी है, पहले ही और भी ज्यादा था, ये पिछले 50 सालों में ये 47% हुआ है। अगर आप पिछले 50 सालों के पीछे जाएं तो आधे से ज्यादा थे हमेशा भारतीय इतिहास में जो लैंडलेस लेबर था, जो भूमिहीन मजदूर था उसका बड़ा हिस्सा अछूत जातियों से, दलित जातियों से आता था, और वो जो है उसको लूटने का एक जबरदस्त उपकरण जो है वो ब्राह्मणवादी विचारधारा और जातिवादी व्यवस्था पूरी देती थी, और उसको हर नए शासक ने आके अपनाया और अपनी जरूरत के हिसाब से उसको सहयोजित किया और उसको एडजस्ट किया। जो भी नई व्यवस्था आई उसने उत्पादन के तौर तरीकों में जो बदलाव किए, उस बदलाव के वजह से जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था में आप परिवर्तन देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब शूद्र जातियां जो थी, शूद्र जातियां जब अस्तित्व में आई तो उसके बाद भी लंबे समय तक खेती का काम वैश्य करते थे। अगर आप प्राचीन ग्रंथ देखें तो जो खेती का काम था वो ट्रेडिशनली ब्राह्मण संहिताओं के मुताबिक वो वैश्य वर्ण को दिया गया था, लेकिन ये परिवर्तन होता है गुप्ता पीरियड में और खासतौर पर अनटचेबल्स की एक बड़ी आबादी के वैदिक सभ्यता में दलितों के तौर पर शामिल होने के बाद, कि शूद्र जो है वो निर्भर अथवा स्वतंत्र किसान आबादी में तब्दील हुए और खेती मुख्य तौर पर शूद्रों का काम बन गया। और उसी समय से आप देख सकते हैं कि आज भी भारत में जितनी भी प्रमुख किसान जातियां हैं, किसी ब्राह्मण से पूछा जाए कि ये वर्णाश्रम में किस पैणी पे आएंगे तो वो शूद्र बताएंगे, चाहे वो मराठा कुनबी हो, वो जाट हो, वो रेड्डी कम्मा हो, वो और भी इस तरह की तमाम जातियों का पूरे भारत में आप नाम ले सकते हैं। तो ये शूद्रों का प्रमुख काम बन गया और वैश्य आबादी ने अपना प्रमुख प्रोफेशन ट्रेड की तरफ, व्यापार की तरफ शिफ्ट किया। जो लोग, जो वैश्य व्यापार में नहीं जा पाए और कृषक बने रह गए, उनका कर्मकांडीय स्टेटस भी नीचे आ गया और उनको शूद्र आबादी में शामिल कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया के बारे में रामशरण शर्मा और सुवीरा जायसवाल दोनों ने ही लिखा है कि किस रूप में ब्राह्मण संहिताओं, वैदिक ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों में वैश्य का जो काम बताया गया था वो किस तरीके से वैश्य उस काम को छोड़ के दूसरा काम उन्होंने अपना लिया। श्रम विभाजन की जो दैवीय व्यवस्था बताई गई थी पुराणों में वो बदल गई, और जब परिवर्तन हुआ उत्पादन संबंधों में और उत्पादन व्यवस्था में, तो वर्ण व्यवस्था के भीतर भी एक परिवर्तन होता है। उसी प्रकार अगर आप देखें कि दिक और काल, टेम्पोरल और स्पेटियल तौर पर भी जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में तमाम परिवर्तन आते हैं। मिसाल के तौर पे पूरे के पूरे दक्षिण भारत में और उत्तर पूर्वी भारत में, उत्तर पूर्व को मैं बंगाल से गिन रहा हूं, इस पूरे इलाके में बीच के दो वर्ण हिस्टोरिकली थे ही नहीं, क्षत्रिय और वैश्य। ओरिजिनली वहां दो ही वर्ण थे, ब्राह्मण और शूद्र। वास्तव में साउथ इंडिया में जो, क्योंकि वैदिक सभ्यता का जब वहां विस्तार हुआ इन इलाकों में, तो उस समय तक जो कृषक आबादी थी वो शूद्र के तौर पे स्थापित हो चुकी थी, शूद्र जातियां ही कृषि का काम कर रही थी। वैदिक सभ्यता जब तक दक्षिण भारत पहुंची तब तक वहां के जो किसान जन समुदाय थे, जो किसान समुदाय थे, वो किसान समुदायों के भीतर से ही इस तरह के छोटी छोटी रियासतें पैदा हो चुकी, छोटे छोटे मतलब आप कह सकते हैं कि राज्य पैदा हो चुके थे, जिसमें राजा भी वही लोग थे जो शूद्र कृषक जातियों से निकले थे। और जब राजा वे बने तो एक तरीके से और वहां पर भी एक पुरोहित वर्ग था, लेकिन उन्होंने एक तरीके से उत्तर से ब्राह्मणों को आयात किया कि तुम यहां आकर हमारे शासन और हमारे वर्चस्व के लिए सिद्धांत रचो। तो तमाम ब्राह्मण, इसका एक एग्जाम्पल शिवाजी भी है। शिवाजी जब अपने किंगडम को स्थापित करते हैं तो छत्रपति की उपाधि लेने के लिए उन्होंने बनारस से एक ब्राह्मण को बुलाया, जो कि ब्राह्मण अंगूठे से तिलक करने को तैयार हुआ कि मैं छत्रपति के तौर पे आपका तिलक अंगूठे से करूंगा। वो पहली बार अंगूठे से हुआ, बाद में उन्होंने अपनी सेरेमनी फिर अलग से भी की जिसमें प्रॉपर उनका राज्याभिषेक दूसरे तरीके से किया गया, लेकिन जिस वक्त उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की, वो उपाधि धारण करने के लिए बनारस, जो कि ब्राह्मणों का एक मुख्य गढ़ था, वहां से एक ब्राह्मण को आयात करके वो रिचुअलिस्टिक स्टेटस, वो कर्मकांडीय स्थिति हासिल की शिवाजी ने, जो कर्मकांडीय स्थिति उनको अपने शासन को वर्चस्वशील बनाने और प्रभुत्वशील बनाने के लिए चाहिए थी। तो एक तरीके से ब्राह्मणवादी विचारधारा ने वहां जाकर एक शूद्र जाति से पैदा हुए एक राजा, जिस बाद में जब ये सब हो गया तो अब क्लेम करते हैं कि वो क्षत्रिय थे, वो किया जाता है क्लेम, वो हर जगह जहां जहां जो जातियां एसेंडेंसी, जिनकी मतलब जो गति ऊपर की ओर गतिशील थी और उन्होंने अपना प्रभुत्व आर्थिक और सामाजिक तौर पे स्थापित कर लिया, तो उनका मूल कुछ भी होता था तो वो क्षत्रिय स्टेटस में क्लेम करते थे और कई बार सफलतापूर्वक क्लेम करते थे, क्षत्रिय बन भी जाते थे। इसका एक उदाहरण है राजपुत्र, समुदाय जो कि राजपूत के नाम से बाद में जाना गया, उसके ऊपर भी बहुत सारे सोशियोलॉजिकल हिस्टोरिकल रिसर्च हुए हैं जिसमें दिखाया गया है कि वास्तव में राजपुत्र जो समुदाय था वो तमाम विदेशी तत्वों और देशी तत्वों के मिक्सचर से बना था, और जब वो आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक तौर पे एसेंडेंट प्रभुत्वशील बन गया उसके बाद क्षत्रिय जो जातियां थी उनके साथ उनका मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ, विवाह हुए बीच में, और वहां से राजपूतों को क्षत्रिय का वर्णीय दर्जा रिचुअलिस्टिक स्टेटस वो ब्राह्मणों ने ही प्रोवाइड किया। तो इस तरीके से जो अलग अलग ऊपर उठते समुदाय थे उन्होंने भी वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में अपने स्टेटस को बदला, जिसकी जैसी आर्थिक और सामाजिक शक्तिमत्ता थी उसने अपने कर्मकांडीय स्टेटस को भी बदला। आधुनिक भारत के बारे में भी यह बात कही जा सकती है। आधुनिक भारत में एक के बारे में एक पहांसू गांव के ऊपर, उत्तर प्रदेश में पहांसू गांव है, उसके ऊपर ग्लोरिया रहेजा नाम की एक समाज शास्त्री ने शोध किया, जिन्होंने अपनी थियरी दी, उसका थियरी का नाम है सेंट्रैलिटी ऑफ डोमिनेंट कास्ट, प्रभुत्वशील जाति की केंद्रीयता। तो उसने बताया कि गुर्जर इस गांव में वो प्रभुत्वशील जाति, तो हर प्रैक्टिकल पर्पज के लिए जो इवन क्षत्रिय या ब्राह्मण वर्ण से भी आने वाले लोग हैं वो उनका जजमान वही है गुज्जर, और वो सिर्फ दान दक्षिणा देता है, वो सिर्फ दान एक चीज का लेता है, कन्यादान, जो कि एक हाई रिचुअलिस्टिक स्टेटस की निशानी होती है, उच्च कर्मकांडीय स्थिति की निशानी होती है। तो आधुनिक भारत में भी ये देखा जा सकता है कि इस तरह की तमाम मध्य किसान जातियां जिनके भीतर एक धनी किसान वर्ग पैदा हुआ, एक कुलक वर्ग पैदा हुआ, उसने एक ऊंचा रिचुअलिस्टिक स्टेटस, एक ऊंचा धार्मिक स्थिति अपने लिए अप्रोप्रिएट की। जो है भुयारों के बारे में भी ये बात एक हद तक कही जा सकती है। भुयार जाति इस समय अपने आप को ठाकुर क्षत्रिय उसमें बताती है, लेकिन वास्तव में अगर भुयार जाति के उद्भव और विकास की पूरी प्रक्रिया देखी जाए तो बहुत जटिल है। उसमें बहुत सारे अन्य जातियों के लोग शामिल हुए, बंगाल और उत्तर प्रदेश और बिहार में कायस्थों का पैदा होना, जो कि बहुत सारे अलग अलग वर्णों से आए हुए तत्व जो कि स्क्राइब्स बने, लेखाकार, वो लेखाकार जो शासकों के लिए बने, क्लर्क मतलब आप समझ लीजिए एक तरीके से, जो बने वे जातियां, उन्होंने एक हायर स्टेटस क्लेम किया, और इस समय उत्तर भारत में कायस्थों को एक उच्च जाति माना जाता है। लेकिन ये सारे पहले से उस स्टेटस में नहीं थे। पूरा कहने का जो मेरा मतलब है वो ये है कि अगर आप पूरी जाति और वर्ण व्यवस्था के पूरे इतिहास को देखें तो यह स्थैतिक नहीं रही, यह स्थिर नहीं रहा, यह परिवर्तित होता रहा है, यह बदलता रहा है। पहली बात तो इसको समझना जरूरी है। दूसरी बात जिसे समझना जरूरी है वो ये है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि दूसरा एक सवाल पूछा जाना चाहिए कि बदलता क्यों रहा, इसके पीछे प्रेरक तत्व तो क्या रहे हैं, जो जाति वर्ण व्यवस्था में बदलाव आए हैं उसमें प्रेरक तत्व तो क्या रहे हैं। हाँ, एक चीज छूट गई जिसको बहुत दिलचस्प वो एक तथ्य है, उसको मैं जिक्र करके आगे बढ़ूंगा कि दक्षिण भारत में जब शूद्र किंगडम्स पैदा हुए, कृषक किंगडम्स पैदा हुए, तो उन शूद्रों ने भी ब्राह्मणों को इस्तेमाल किया, ब्राह्मणों को यह काम दिया, इस्तेमाल नहीं किया, ब्राह्मणों को यह काम दिया कि वो शूद्र किंगडम्स के लिए भी एक वैधिकरण का सिद्धांत रचे। वो वैधिकरण का सिद्धांत कैसे रचा गया? ब्राह्मण जब दक्षिण भारत गए तो उन्होंने दो तरह के शूद्रों की बात की कि शूद्र को दो हिस्सों में बांट दिया, सत शूद्र और असत शूद्र। और इसके लिए एक कारण उनके पास पहले से था, क्योंकि वैदिक सोर्स में भी हीन शूद्र और अहीन शूद्र की बात ब्राह्मणों ने लिखी थी कि कुछ शूद्र हीन होते हैं, जैसे कि चांडाल। चांडाल जाति अनटचेबल्स में बहुत बाद में शामिल हुई, ये शुरुआत में शूद्रों शूद्र वर्ण के एक जाति के तौर पे दर्ज है जो प्राचीन ग्रंथ है उन्हें, और बाद में उनको एक अनटचेबल का दर्जा दे दिया गया, उनको रिलीगेट कर दिया गया, नीचे धकेला गया। उसी प्रकार चर्मकार, जिनको आगे चमार बोला गया, वो चर्मकार जाति भी कोई अछूत जाति नहीं थी। वास्तव में सारे वैदिक यज्ञों के लिए यह नियम था कि वैदिक यज्ञों की जो भी सामग्री होती है वो चमड़े के झोलों में ही ले जाई जाएगी, और इसलिए चर्मकारों का एक रिचुअलिस्टिक स्टेटस था। लेकिन बाद में एक दौर में उनको अछूत और अनटचेबल के स्थिति में पहुंचाया गया। उसी प्रकार सत शूद्र और असत शूद्र के बीच में भी भेद पैदा किया गया दक्षिण भारत में। जो सत शूद्र थे उनका व्याख्या की गई दक्षिण भारतीय जो ब्राह्मणवादी ग्रंथ थे, उनको लिखा गया प्रोटेक्टर्स ऑफ ब्राह्मण्स। अब प्रोटेक्टर ऑफ ब्राह्मण जो है, यह शब्द नॉर्थ इंडिया में किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? क्षत्रिय के लिए। जो ब्राह्मणवादी ग्रंथ यहां के थे, नॉर्थ भारत के, उत्तरी भारत के, उसमें प्रोटेक्टर ऑफ यानी कि ब्राह्मण का संरक्षक, ब्राह्मण का संरक्षक शब्द क्षत्रिय के लिए इस्तेमाल हुआ है। यही शब्द ब्राह्मण जो है वो शूद्र राजाओं के लिए दक्षिण भारत के इस्तेमाल करते हैं सत, हालांकि बोलते उन्हें सत शूद्र ही है, लेकिन सत शूद्र के लिए प्रोटेक्टर्स ऑफ ब्राह्मण का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उन्हें एक तरीके से डिफैक्टो क्षत्रिय का दर्जा दिया जाता है वहां पर। इस तरह के मतलब हम आज देते जा सकते हैं उदाहरण, वी कैन गो ऑन एंड ऑन, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। जो मुख्य बात है वो ये है कि जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था कोई संहिता में जिस तरीके से संहिताओं में, पुराणों में, वेदों में बताया गया उसी तरह बनी हुई नहीं है, क्योंकि वो वेदों और संहिताओं से निकली नहीं है, जाति व्यवस्था से वेद और संहिता निकले। इसको सर के बल अगर खड़ा कर दिया जाएगा कि ब्राह्मणों ने एंडोगेमी को, सजातीय विवाह को स्थापित कर दिया बाकी समाज के वर्गों पर, उसके साथ जाति पैदा हुई, तो वही सवाल पूछना पड़ेगा कि ब्राह्मणों को किसने पैदा किया। इसलिए आपको जाति व्यवस्था को एक ऐतिहासिक नजरिए से देखना पड़ेगा कि किस प्रकार श्रम विभाजन के पैदा होने के साथ एक सामाजिक संस्तरीकरण पैदा हुआ, और जब अधिशेष पैदा होने, अतिरिक्त पैदावार की मंजिल आई उत्पादक शक्तियों के विकास के साथ और उत्पादन पद्धति में परिवर्तन के साथ, तो अतिरिक्त उत्पादन को जिन वर्णों ने हस्तगत या वर्गों, क्योंकि शुरू में वर्ण ही वर्ग थे, जिन वर्णों या ने हस्तगत किया या जिन वर्गों ने हस्तगत किया वो डोमिनेंट वर्ण और कास्ट बने। और यहां से आप देख सकते हैं, क्योंकि अलग से इसको डुअल्टी में देखना होगा, एक मायने में अंबेडकर ने सही कहा था कि जातियों को अलग से नहीं समझा जा सकता, जाति को एक सिस्टम के तौर पे समझा जा सकता है। लेकिन इसके जब वो मूल बताने जाते हैं तो मूल बताते वक्त वो ये कहते हैं कि ब्राह्मणों ने सजातीय विवाह पे बाकी समाज को कन्विंस कर दिया और वहां से जाति व्यवस्था पैदा हुई, तो उनकी बात में ही एक अंतर्विरोध नजर आता है। जो उसी पेपर में, जो कास्ट मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, जो उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक छात्र के रूप में पेश किया था, उसी पेपर में वो ये भी कहते हैं कि जातियों को अलग अलग नहीं समझ सकते आप, जातियों को एक व्यवस्था के तौर पर समझा जा सकता है। ब्राह्मण बिना शूद्र के नहीं हो सकता है, ब्राह्मण बिना, जो सबसे नीचे और सबसे ऊंचे वाला संस्तर है वो दो पोल की तरह है, जैसे मैग्नेट है वो मैग्नेट भी दो पोल्स के, एक पोल वाला कोई मैग्नेट नहीं होता है, हम लोग सब फिजिक्स में पढ़ते थे मैग्नेट को आप तोड़ दीजिए तो फिर से दो पोल बन जाते हैं, तो जाति व्यवस्था भी इन दो ध्रुवों के बिना अस्तित्व में अलग अलग जातियां नहीं पैदा हो सकती हैं, वो एक दूसरे से संघर्ष में ही पैदा होती हैं और एक दूसरे को विजित करने या विजयी होने के तौर पर ही पैदा हो सकती हैं। तो एक फ्रैगमेंट में अंबेडकर एक सही प्रेक्षण देते हैं और दूसरे ही क्षण वो एक उसके मूल की गलत व्याख्या करते हैं। लेकिन मूल बात यहां जो है वो ये है कि जाति और वर्ण व्यवस्था में ऐतिहासिक तौर पर जो परिवर्तन आए हैं वो सामाजिक आर्थिक संबंधों में जो बदलाव आए, यानी कि वही मार्क्स के शब्दों का इस्तेमाल करें तो उत्पादन और पुनरुत्पादन के संबंधों में जो बदलाव आए, उन बदलावों के साथ ही जाति व्यवस्था भी अपने आप को बदली। लेकिन चूंकि जाति व्यवस्था एक कर्मकांडीय अश्मीभूतीकरण है, जैसे मान लीजिए कि आज इस कमरे में जितने लोग बैठे हैं, आज हम आपसी एक कोई श्रम विभाजन करते हैं और उस श्रम विभाजन को हम एक धार्मिक ग्रंथ, जिस धर्म को हम सभी पवित्र मानते हैं, उस धार्मिक ग्रंथ में दर्ज कर देते हैं कि फलां व्यक्ति यही काम करेगा, फलां व्यक्ति यही काम करेगा, तो वो उसको रूढ़बद्ध बना देगी। इसीलिए अंबेडकर ने सही कहा था कि जाति व्यवस्था केवल श्रम का विभाजन नहीं है, ये श्रमिकों का विभाजन है, ये सिर्फ डिविजन ऑफ लेबर नहीं है, ये डिविजन ऑफ लेबरर्स है, और ये कोई आम डिविजन ऑफ लेबरर्स नहीं है, इसको उन्होंने कहा कि इसमें एक संस्तरीबद्ध असमानता है, ग्रेडेड इनइक्वालिटी, ग्रेडेड इनइक्वालिटी है इसमें, कि ये नीचे वाला यही काम करेगा इसकी सातों पुश्तें यही काम करेंगी, इसके ऊपर वाला यही काम करेगा इसकी सातों पुश्तें यही काम करेंगी, और इनमें कोई रोटी बेटी का रिश्ता नहीं होगा आपस में इन संस्तरों में। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये सिर्फ श्रम का विभाजन नहीं है, ये श्रमिकों का विभाजन है, और एक खास किस्म का श्रमिकों का विभाजन है जिसको अंबेडकर ने सही नाम दिया ग्रेडेड इनइक्वालिटी। लेकिन ये ग्रेडेड इनइक्वालिटी पैदा क्यों हुई? आदिम युग का एक वर्ग विभाजन जिसे धार्मिक और कर्मकांडीय तौर पर संहिताबद्ध कर दिया गया, कोडिफाई कर दिया गया, और संहिताएं बदलती नहीं है, संहिताएं वही रहती हैं। तो ऐसे में ये जो रूढ़ता और जड़त्व का तत्व आया, जड़ता का, जो इनर्शिया का तत्व आया, वो इनर्शिया का तत्व जाति व्यवस्था, जाति और वर्ग को की ओवरलैपिंग को उसने खत्म कर दिया। जो प्राचीन काल में वर्ण और वर्ग की पूर्ण आच्छादन था, अतिच्छादन था, ओवरलैपिंग थी, इस ओवरलैपिंग को समाप्त कर दिया और जातिगत विचारधारा, जाति व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था, उसके बीच में एक संगति का संबंध बन गया। यह भी आप नहीं कह सकते कि कास्ट और क्लास का कोई संबंध नहीं है। अगर ऐसा है तो क्या कारण है कि दलितों की 89% आबादी आज भी गरीब खेतिहर या शहरी मजदूर है। तो आपको आज भी जाति वर्गों जाति समूहों और वर्गीय समूहों में ओवरलैपिंग मिलेगी आंशिक तौर पे। बड़ी आबादी जो ब्राह्मणों की, आप ब्राह्मण कुल देश के 4% भी नहीं बैठते हैं, एग्जैक्ट फिगर भूल रहा हूं, 3-3.5% बैठते हैं। लेकिन अगर आप पूरे नौकरशाही कुल हैं, यानी कि जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें परसेंटेज को देखें, तो एकदम असमानुपातिक तौर पे वो जो है असमानुपातिक तौर पे उनका कहीं ज्यादा परसेंटेज है। पुलिस फोर्स में, नौकरशाही में, सरकारी नौकरियों में दलित कुल आबादी के करीबन 16% है, 16 से कुछ ज्यादा, 16 से 17 के बीच में अलग अलग इसके आकलन किए गए हैं। लेकिन उनको कितना हिस्सा मिला है शिक्षा में, रोजगार में, उनको कितना हिस्सा मिला है? शूद्र जातियों में से दो हिस्से बट गए हैं। शूद्र जातियों का एक छोटा सा, छोटा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक, एक कुलीन वर्ग पैदा हुआ है उसमें। वो कुलीन वर्ग विशेष तौर पे आपको धनी किसान आबादी में दिखता है, धनी किसानों के रूप में दिखता है। उस आबादी को छोड़ दिया जाए तो शूद्र जो ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको कितना प्रतिनिधित्व मिला है आर्थिक संसाधन में, उनकी कितनी हिस्सेदारी है नौकरशाही में, उनको कितने जॉब्स हैं सेना पुलिस में, उनको कितने जॉब्स हैं दलितों को, कितने जॉब्स हैं। तो जाति समूह और वर्ग समूह में अभी भी आंशिक अतिच्छादन है, अभी भी आंशिक ओवरलैपिंग है। आप ये कह सकते हैं कि दलित आबादी का बहुसंख्यक सर्वहारा वर्ग है, लेकिन सर्वहारा वर्ग का बहुसंख्यक दलित वर्ग नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं आंशिक अतिच्छादन, पूर्ण रूप से ओवरलैपिंग नहीं है, लेकिन एक आंशिक ओवरलैपिंग स्पष्ट तौर पर स्टैटिस्टिकली आंकड़े दिखा के साबित किया जा सकता है कि है। अगर जाति और वर्ग का कोई रिश्ता नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। वास्तव में जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था में आप यूं कह सकते हैं कि उत्पादन संबंध और उत्पादक शक्तियों और उत्पादन पद्धति का विकास एक ज्यादा डायनेमिक फैक्टर है, एक ज्यादा गतिमान फैक्टर है। और जाति, जब भी उत्पादन व्यवस्था में कोई बड़ा रेडिकल चेंज आता है तो उस रेडिकल चेंज के साथ जाति व्यवस्था में भी कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं, कुछ परिवर्तन आते हैं भीतरी। वो पदानुक्रम कायम रहता है, वो उच्चा नीच क्रम कायम रहता है। ब्राह्मणवादी विचारधारा का जो शुद्धता और प्रदूषण के आधार पर पैदा किया गया हायरार्की है वो कायम रहती है, लेकिन वो हायरार्की के चर राशियां, वेरिएबल्स बदल जाते हैं। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो जो डोमिनेंट नहीं था वो कई बार डोमिनेंट बन जाता है, और जो डोमिनेंट था वो कई बार डोमिनेंट नहीं रह जाता है। वास्तव में एक स्टडी है जो कि दान दक्षिणा लेने वाले ब्राह्मणों की ऊपर है, ब्राह्मण आबादी के ऊपर, उसमें एक अछूत ब्राह्मण आबादी भी पैदा हुई है उत्तर भारत में, जो दान दक्षिणा लेने वाले उनको नीचा करके देखा जाता है। और वे ब्राह्मण जो गुप्ता साम्राज्य के पैदा होने के साथ, जब ब्राह्मणों को पहले, जो वेद में दर्ज है, ब्राह्मणों को दक्षिणा केवल वस्तुओं के रूप में मिल सकती है। वेद में ब्राह्मणों को केवल इस बात के लिए इजाजत है कि वो अपने पुरोहिती के काम के लिए जो उनको रेम्यूनरेशन बदले में मिलेगा जजमान से, वो जजमान उनको केवल वस्तुओं में देगा और इसी की आज्ञा है। लेकिन गुप्ता साम्राज्य के पैदा होने के साथ जब सामंतवाद पैदा हुआ और खेती डोमिनेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी के तौर पर स्थापित हो गई, तो उसके बाद ब्राह्मणों को भी भूमि अनुदान दिए गए, लैंड ग्रांट्स दिए गए, और ब्राह्मणों का एक हिस्सा लैंडलॉर्ड के तौर पर पैदा हुआ, जो काम वेद उनको आज्ञा नहीं देते हैं करने का, लेकिन वो करते कर रहे थे। उसके हिसाब से नए ग्रंथ भी रच दिए जाते हैं, उसके हिसाब से ब्राह्मणवादी विचारधारा भी अपने आप को एडजस्ट करती है और अपने आप को परिवर्तित करती है। तो बेसिक चीज जो समझने की जरूरत है, नंबर एक, जाति वर्ण व्यवस्था कोई स्थिर स्थैतिक चीज नहीं है, यह भारतीय उपमहाद्वीप की कोई नैसर्गिक चीज नहीं है कि यहां ही पैदा हो गई और ये जैसी पैदा हुई सदा से वैसी रही है। इसका न तो कोई अनादि है और ना कोई अंत है, और ये चूंकि इसका कोई अनादि नहीं है इसलिए अंत भी नहीं है, ये खत्म भी नहीं हो सकती, ऐसी कोई चीज नहीं है। अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण आप अपनाएं तो आप पाते हैं कि जातिगत व्यवस्था में भी लगातार बदलते उत्पादन संबंधों, बदलती उत्पादन पद्धति के मुताबिक परिवर्तन होता आया है, और इसको समझना बहुत ही जरूरी है। यह कोई अकादमिक कवायद नहीं है, इसको समझना इसलिए जरूरी है कि अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आज के दौर में आप जाति उन्मूलन की कोई परियोजना भी नहीं बना सकते हैं। आपका विश्लेषण दुरुस्त होगा तो ही आपका समाधान दुरुस्त होगा, अगर आपका विश्लेषण ही गलत होगा तो आपका समाधान भी गलत होगा, अगर आपने रोग की जो पहचान की वो पहचान ही गलत है तो आपकी दवा भी गलत होगी। तो इसलिए जाति व्यवस्था को ऐतिहासिक तौर पे समझा जाना चाहिए, और यह समझा जाना चाहिए कि जाति और वर्ग में एक संगति का संबंध है, इक्वल टू नहीं है। कास्ट इज नॉट इक्वल टू क्लास। जाति ही वर्ग नहीं है, लेकिन जाति और वर्ग में कोई रिश्ता नहीं है, ऐसा नहीं है। वो रिश्ता क्या है? वो संगति का रिश्ता है। और इसमें अंतिम विश्लेषण में जो निर्धारक तत्व है वो क्या है? वो वर्ग है, वो बदलते उत्पादन संबंध है और वो बदलती उत्पादन पद्धति है। वरना आप ये बता नहीं पाएंगे कि दक्षिण भारत में वैसी वर्णाश्रम व्यवस्था क्यों नहीं पाई जाती है जैसी उत्तर भारत में पाई जाती है, उत्तर पूर्वी भारत में वैसी वर्णाश्रम व्यवस्था क्यों नहीं पाई जाती है जैसी कि गंगा के मैदानों में पाई जाती है, और तो और छोड़ दिया कश्मीर में वैसी जाति व्यवस्था क्यों नहीं पाई जाती है जैसे कि बाकी हिंदुस्तान में पाई जाती है। तो जाति व्यवस्था के इन कालिक और स्पेस वाइज, स्पेटियल और टेम्पोरल वेरिएशन, ये जो अंतर है, युग के हिसाब से भी जो परिवर्तन हो रहा है जाति में और स्थान के अनुसार भी जो परिवर्तन हो रहा है, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अगर ये संहिताओं से पैदा हुई चीज होती, संहिताओं को इसने पैदा किया और ये बदलते आर्थिक सामाजिक संबंधों के साथ इसमें परिवर्तन होते हुए आया है। अब हम दूसरे प्रश्न पे आ सकते हैं यहां से कि जाति व्यवस्था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे समाज का एक घृणित यथार्थ है जिसमें जन्म के आधार पे लोगों को के बारे में जजमेंट्स पास कर दिए जाते हैं। एक दौर में लंबे समय तक जो आनुवांशिक श्रम विभाजन भी था, वो आनुवांशिक श्रम विभाजन भी बहुत ही रिजिडिटी के साथ फॉलो होता था। यह केवल ब्रिटिश इंडिया का पीरियड था जिस पीरियड में आनुवांशिक श्रम विभाजन एक हद तक टूटा, और आजादी के बाद वो आनुवांशिक श्रम विभाजन और भी तेजी से टूटा। आनुवांशिक श्रम विभाजन मतलब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण का काम करेगा, चमार का बेटा चमार का काम करेगा, ये जो एक घृणित श्रम विभाजन, रिजिड श्रम विभाजन था, ये श्रम विभाजन काफी हद तक टूटा जब ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के आने के बाद, उपनिवेशवाद के आने के बाद एक सीमित शहरी विकास और सीमित औद्योगिक विकास हुआ, क्योंकि उद्योग में और शहरी जीवन में आप आनुवांशिक श्रम विभाजन को फॉलो नहीं कर सकते, वो हो ही नहीं सकता। इसलिए जैसे ही एक नया उत्पादन संबंध आया उद्योग और शहरीकरण के रूप में, वैसे ही जाति व्यवस्था की एक और चीज, एक रजिस्टर उसका, एक पंजी उसकी पतनशील हो गई, जिसको आप कह सकते हैं आनुवांशिक श्रम विभाजन। छुआछूत काफी हद तक है लेकिन काफी हद तक टूटी है। पूंजीवादी विकास होने के साथ, उद्योग धंधों के विकास होने के साथ, रेलवे पोस्टल टेलीग्राफ के विकास होने के साथ वो टूटी है, क्योंकि पूंजीवादी उत्पादन सभ्यता, जो उत्पादन पद्धति है, वो इस तरह के रिजिड लेबर डिवीजन, आनुवांशिक लेबर डिवीजन के साथ चली नहीं सकता है। तो जैसे ही पूंजीवादी उत्पादन संबंध विकसित हुए, तो अगर आप रेलवे के विकास की बात करें तो रेलवे के विकास में मॉरिस डी मॉरिस, बहुत पुराने एक वो है जिन्होंने भारत में इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के विकास पर लिखा, उन्होंने एक डेटा दिया कि महाराष्ट्र में जो रेलवे का विकास हुआ उसमें शुरुआती दौर में जो सबसे ज्यादा मजदूर आए वो महाड़ थे, एक दलित जाति जिस दलित जाति से अंबेडकर भी आते थे, महाड़ और मांग, महाड़ और मांग जाति के लेबरर्स मजदूर सबसे ज्यादा आए, जो अपना ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, जो उनका पारंपरिक पेशा था, वो पारंपरिक पेशा छोड़ के वो औद्योगिक मजदूर बने, और उस औद्योगिक मजदूर आबादी में अन्य जातियों के लोग भी थे जो अछूत नहीं थे, जो दलित नहीं थे, और वो एक साथ काम करते थे। इसलिए जो भी इस तरह का आनुवांशिक श्रम विभाजन या छुआछूत, कमेंसल प्रेजुडिस जिसको कहते हैं कि साथ में खाएंगे नहीं छुएंगे नहीं, ये कमेंसल प्रेजुडिस जो पूर्वाग्रह है छुआछूत खान पान के, ये आज भी कायम है लेकिन ये काफी हद तक टूटे हैं पूंजीवादी विकास होने के कारण। तो ब्रिटिश इंडिया में भी कास्ट के पूरे आप देख सकते हैं, ब्रिटिश इंडिया में जो उत्पादन की पद्धति में बदलाव आया, उत्पादन संबंधों में बदलाव आया, उसके कारण जाति व्यवस्था में भी बदलाव आया। इस बात को अंबेडकर ने भी मार्क किया था और अंबेडकर ने लिखा भी था, जिसमें अंबेडकर ने कहा कि जाति को खत्म करने के लिए उद्योग और शहरीकरण के विकास की बहुत जरूरत है। मार्क्स ने भी कहा था कि रेलवे और उद्योगों के विकास के साथ जाति का जो एंडोगामी, ये सॉरी आनुवांशिक श्रम विभाजन वाला पहलू है, ये टूटेगा। मार्क्स ने भी कही थी ये बात पहले, और बाद में अंबेडकर ने भी ये बात कही थी कि आनुवांशिक श्रम विभाजन टूटने का जो प्रमुख लीवर होगा, जो प्रमुख प्रेरक शक्ति होगी, वो औद्योगिकीकरण और शहरीकरण होगी। इसीलिए 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जब बनाई अंबेडकर ने, तो उसका जो आर्थिक कार्यक्रम पेश किया उसमें उन्होंने कहा कि सारे कुंजीभूत उद्योगों को वो सरकार को सौंप दिया जाना चाहिए, सरकार उनको चलाएगी, सारे कुंजीभूत उद्योग जो हैं उनको पूंजीपतियों से ले लिया जाना चाहिए, उसके बदले में उनको कंपनसेट करना चाहिए, लेकिन उनसे लेके और उसको जो है सरकार, क्योंकि इसके जरिए आर्थिक विकास तेज होगा, शहरीकरण तेज होगा, औद्योगिकीकरण तेज होगा, और अगर वो तेज होगा तो जाति का जो ये आनुवांशिक श्रम विभाजन वाला पहलू है ये टूटेगा। तो ये सच था, ये टूटा जब ब्रिटिश इंडिया में ही जितना हुआ, और उसके बाद आजाद भारत में जब बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, रेलवे का नेशनलाइजेशन हुआ, नए जो पूंजीवादी विकास की चीजें हुई, उसकी वजह से आनुवांशिक श्रम विभाजन कमजोर पड़ा, टूटा काफी हद तक। लेकिन ब्रिटिश पीरियड में वास्तव में कहा जाए कि जाति व्यवस्था के भीतर जो इंटरनल मोबिलिटी, जो आंतरिक गतिमानता थी, उसको एक तरीके से अंग्रेजों ने कम भी किया, जिस बात को अंबेडकर नहीं समझ पाए। वो अंबेडकर ब्रिटिश के केवल एक रोल को देखते थे कि उन्होंने स्कूल में पढ़ने की इजाजत दी दलितों को, शिक्षा तक उनकी पहुंच हुई, हालांकि बहुत ही कम था, उसका डेटा मैं आपको दे सकता हूं, बहुत ही कम ये काम हुआ था, कहीं कहीं अंग्रेजों ने किया था और उसमें उनकी जरूरत प्रमुख थी, उन्होंने दलितों का उत्थान या उद्धार करने के लिए स्कूल नहीं खोले थे, लेकिन स्कूल के दरवाजे उन्होंने खोल दिए दलितों के लिए, कम से कम कहने के लिए। बाद में जब वो लागू नहीं होता था तो स्वयं ब्रिटिश सरकार उसको लागू नहीं करवाती थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने कभी भी जो यहां के सामंती वर्ग था, जिसमें मुख्य तौर पर ब्राह्मण और क्षत्रिय थे, उनसे बैर मोल नहीं लिया। कॉलोनियल स्टेट ने अपने पूरे इतिहास में 150 साल के हमेशा उनके साथ सहयोग किया, जिसपे हम आगे अभी आएंगे। जैसे कि दो चीजें हम देख सकते हैं कि ब्रिटिश शासन ने किस तरीके से जाति को मजबूत बनाया। उसका एक था जो ब्रिटिश शासन ने भूमि व्यवस्था लागू की, लैंड सेटलमेंट, तीन प्रकार की भूमि व्यवस्था लागू की, जिसमें एक था जमींदारी सेटलमेंट, जिसको परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं, दूसरा था रैयतवाड़ी सेटलमेंट, और तीसरा था महालवाड़ी सेटलमेंट। ये तीनों लैंड्स, पहला लैंड सेटलमेंट इसमें 1793 में लागू हुआ, लॉर्ड कार्नवालिस ने लागू किया, जिसमें कि पहली बार जमीन में निजी संपत्ति की शुरुआत हुई। पहले सारे जमीन का मालिक राजा था, जो केंद्रीय राजा होता था वो था। इस लैंड सेटलमेंट ने जमींदारों को जमीन के मालिक के तौर पर मान्यता दी पहली बार, और 30 साल के लिए लैंड रेंट फिक्स कर दिया, भूमि का लगान फिक्स कर दिया। आप जो भी गांव ज्वार का आदमी है वो जानता है कि लैंड रेंट 30 साल के लिए फिक्स करने का क्या मतलब है। एक ऐसे समय में जब न तो नहरों का जाल था, पूरी तरह से प्रकृति के अराजकता पे खेती निर्भर करती थी, उस समय 30 साल के लिए आप लगान फिक्स कर दोगे तो जिस साल फसल तबाह होगी उस साल सबसे ज्यादा पिटेगा कौन, सबसे ज्यादा मरेगा कौन, वो लैंडलेस लेबर और गरीब किसान मरेगा। 1793 में जो लैंडलेस लेबर और गरीब किसान था उसकी 98% आबादी किस जाति से आती थी, शूद्र और दलित जाति से। तो ऐसे में स्थायी बंदोबस्त ने एक तरीके से जो जातिगत उत्पीड़न और जो आर्थिक शोषण जो दलित मजदूर आबादी का था, लैंडलेस लेबर का, उसको एकदम पेरेनियल बना दिया, एकदम रिजिड, स्थायी और पेरेनियल बनाने का काम किया, उसको क्या बोलेंगे दीर्घकालिक बना दिया, पेरेनियल से मतलब है, और उस चीज को एकदम जड़ उसकी गहरे स्थापित कर दी। महालवाड़ी सेटलमेंट में जो विलेज कम्युनिटी था उसको भूमि के पुनर्वितरण का काम दिया गया। हम सभी जानते हैं कि सारे गांव में प्रधानी किसके पास थी, 16वीं 17वीं शताब्दी की चाहे बात कर लीजिए आप या आज की बात कर लीजिए, वो प्रधानी हमेशा सवर्ण जातियों के पास थी। तो अगर सवर्ण जाति के जो विलेज कम्युनिटी का प्रधान है उसके पास भूमि वितरण का विशेषाधिकार है तो इसमें दलितों को क्या मिलेगा, मिला भी नहीं। रैयतवाड़ी सेटलमेंट नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर जो था, जिसमें उस समय ये राज्य तो इस तरीके से बने नहीं थे जिस तरह से हमारे राज्य आज हैं, उसमें एक हरियाणा का हिस्सा आता था, पंजाब आता था, नॉर्थ राजस्थान आता था और गुजरात का कुछ हिस्सा आता था, जिसमें रैयतवाड़ी सेटलमेंट लागू। रैयतवाड़ी सेटलमेंट में जो शेयर क्रॉपर था, क्या बोलेंगे बटाईदार, जो बटाईदार और पट्टेदार था, बटाईदार और पट्टेदार को भूमि का स्वामी बनाया गया। तो उस समय भी बटाईदार और पट्टेदार दलित जातियां नहीं थी, शूद्र जातियां थी। तो इसी वजह से पंजाब हरियाणा और नॉर्थ राजस्थान के कृषि के मामले में आगे निकल जाने का एक कारण यह भी था कि अंग्रेजों ने अपने तीनों भूमि व्यवस्था में जो सबसे प्रगतिशील भूमि व्यवस्था थी वो इस इलाके में लागू की थी, रैयतवाड़ी। हालांकि उससे भी दलितों को ज्यादा कुछ नहीं मिला, लेकिन हाँ, शूद्र जातियों के बीच से एक मध्य जातियों का, किसानों की मध्य जाति एक पूरी पैदा हुई जो अपने आप को असर्ट कर सकती थी। उसके मूल अगर देखने हैं तो आपको रैयतवाड़ी सेटलमेंट में जाना पड़ेगा। रैयतवाड़ी सेटलमेंट से अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तब आप समझ सकते हैं कि ये जो अपवर्ड मोबाइल किसान जातियां हैं जिनमें एक धनी किसानों का पूरा वर्ग पैदा हुआ, इस प्रक्रिया की शुरुआत वास्तव में अंग्रेजों के समय में रैयतवाड़ी सेटलमेंट के टाइम में हुई थी। तो एक तो लैंड सेटलमेंट के जरिए दलितों के आर्थिक शोषण और उनके सामाजिक उत्पीड़न दोनों को ही अंग्रेजों ने रूढ़ बनाने का काम किया, पहली चीज। दूसरी चीज, पहली बार दलित कौन है इसको परिभाषित करने का सरकारी तौर पे, राजकीय तौर पे काम अंग्रेजों ने किया। 1881 में एचएच रिजले के नेतृत्व में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता ने पहला सेंसस किया और वो कास्ट बेस्ड सेंसस था, जाति आधारित जनगणना थी। पहली बार शेड्यूल्ड कास्ट का कैटेगरी इन्वेंट की गई और जो अंग्रेजों का एक कहा जा सकता है एक फेटिश थी, एक अंधभक्ति थी चीजों को क्लासिफाई करने और चीजों को काउंट करने, चीजों को गणना करने, गणना करके उनको वर्गीकृत करने, क्योंकि उनका एक पुराना सिद्धांत था कि भारत को अच्छी तरीके से शासन उस पर करने के लिए भारत को अच्छी तरह जानना होगा। इसलिए अंग्रेज जब आए ही तो उन्होंने 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स के नेतृत्व में ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ इंडिया का स्थापना की। ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ इंडिया का काम क्या था, जितने भी भारत के धार्मिक पुराण और ग्रंथ थे उनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना और भारत की एथनोग्राफिक अध्ययन करना, जातीय है ना, क्षेत्रीय, भाषाई, इसका अध्ययन करना। और पहली बार वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का ट्रांसलेशन जो है इंग्लिश में, वो ओरिएंटल सोसाइटी ने ही इस काम को शुरू किया। और उसमें किनको हायर किया गया अंग्रेजों द्वारा, किनको किराए पर रखा गया ये काम करने के लिए, ब्राह्मणों और मौलवियों को। जो मुसलमान ग्रंथ थे उनको, इस्लामिक ग्रंथ थे उसके लिए मुसलमानों को, और जो हिंदू ग्रंथ थे उनके लिए ब्राह्मणों को। तो शुरू से ही अंग्रेजी सत्ता ने भारत को समझने के लिए जो चश्मा पहना था वो ब्राह्मणवादी चश्मा था, उसी चश्मे से वो चीजों को अंत तक देखते रहे। और इसी वजह से कोई कारण था ना, जैसे अगर अंग्रेज दलितों के उद्धारक थे और ब्राह्मणवाद के विरोधी थे तो क्या कारण था कि जब अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे थे तो उनके पास भारत छोड़ के न जाने के लिए एक पिटीशन लेके लोग प्रार्थना पत्र लेके गए थे। वो कौन लोग थे, वो सारे राजे रजवाड़े और ब्राह्मण थे जो प्रार्थना पत्र लेके गए थे, ब्राह्मण जमींदार और राजे रजवाड़े, कि आप छोड़ के मत जाइए भारत, माई बाप आप यहीं रहिए, आप यहां से चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। क्योंकि वास्तव में कोई एक वर्ग जो भारत में अंग्रेजों के आने के बाद से अंग्रेजों का सबसे मजबूत एलाई था, वो एलाई था ब्राह्मण वर्ग, ब्राह्मण वर्ग और क्षत्रिय जमींदार वर्ग। तो इसलिए ब्रिटिश, इसके बारे में भी ये जो मूल्यांकन कई बार आता है कि ब्रिटिश लोगों ने बहुत उद्धार किया, ऐसा कुछ नहीं है। उसका एग्जैक्ट डेटा जो है, शिवानी तुम्हारे पास एक किताब रखी होगी क्रिस्टोफ जेफरलॉट की, उसका एग्जैक्ट डेटा मैं अभी कोट कर देता हूं थोड़ी देर में, कि अंग्रेजों ने अपने पूरे शासनकाल में कितने दलितों के लिए स्कूल खोले और उसमें कितने दलित प्रशिक्षित हुए, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि वरना आदमी सोचता है कि अंग्रेजों ने दलितों तक शिक्षा पहुंचा के कोई भयंकर क्रांतिकारी काम कर दिया। निश्चित तौर पर कुछ फायदा हुआ और अंग्रेज सरकार ने जितना किया उससे ज्यादा जो है वो शिवानी एक बार हाशिए पे दर्ज है, इसको देखो हाशिए पे दर्ज है डेटा। तो ये जो सोचा जाता है ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा भ्रम है जिसको जितनी जल्दी तोड़ दिया जाए उतना अच्छा है। निश्चित तौर पे कुछ स्कूल खोले उससे कुछ फायदा पहुंचा दलितों को, लेकिन अगर ये देखा जाए कि अंग्रेजों ने ज्यादा फायदा पहुंचाया या ज्यादा नुकसान दलितों के इमेंसिपेशन, उनके मुक्ति के कार्य को, तो निश्चित तौर पर ज्यादा नुकसान पहुंचाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। वास्तव में एक हिस्टोरियन है निकोलस डर्क्स, उनकी एक किताब है कास्ट्स ऑफ माइंड, उस किताब में वो तो यहां तक कहते हैं कि जाति को, जाति एक औपनिवेशिक निर्मिति है, यानी कि जाति को अंग्रेजों ने ही पैदा किया। ये बात गलत है, क्योंकि अगर आप ऐसा कहेंगे कि जाति को अंग्रेजों ने पैदा किया तो इसका मतलब अंग्रेजों के आने से पहले के भारत को आपने दोष मुक्त कर दिया, ब्राह्मणवाद दोष मुक्त हो गया, जातिवाद दोष मुक्त हो गया, ये तो मूर्खतापूर्ण बात है। लेकिन निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है और पूरे बल के साथ कहा जा सकता है कि औपनिवेशिक शासन ने दलितों के उत्पीड़न को ज्यादा रिजिड बनाने का काम किया, उनको ज्यादा रूढ़ बनाने का काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पर हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में बातचीत और भी कर सकते हैं, अगर किसी का प्रश्न हो तो डेटा और आंकड़ों के साथ बातचीत की जा सकती है। 1911 के सेंसस में, 1842 में टोटल ऐसे स्कूल जिसमें दलितों को पढ़ने की आज्ञा थी वो थी 16, जिसमें कुल मिला के 564 शिष्य थे, विद्यार्थी थे। ये महाराष्ट्र का डेटा है, सेंट्रल प्रोविंस और महाराष्ट्र, मतलब आज का मध्य प्रदेश का बेरार और मध्य प्रदेश का एक हिस्सा और पूरा का पूरा महाराष्ट्र, उसका ये डेटा है। 1921 और इस पूरे प्रयास की वजह से 1911 तक टोटल जो एजुकेटेड पब्लिक थी उसमें दलित आबादी का परसेंटेज 1 था, 1%, और जो टोटल ऐसी साक्षर आबादी थी जो अंग्रेजी जानती थी उसमें दलित आबादी का हिस्सा था 0.01%। तो यह है अंग्रेजों का योगदान। तो इसलिए हाँ, इस की वजह से एक इंटेलिजेंसी आप जरूर पैदा हुआ, यह अंग्रेजों का योगदान था कि दलित आबादी के बीच एक बौद्धिक वर्ग पैदा हुआ जिसने ज्योतिबा फुले को भी पैदा किया, जिसने अंबेडकर को भी पैदा किया। और इस तौर पे एक पार्शियल योगदान था उपनिवेशवाद का, एक आंशिक योगदान था, लेकिन इस योगदान से ज्यादा नुकसान था। और उस नुकसान को आप लैंड सेटलमेंट और सेंसस, ये दो चीजें हैं जिसमें देख सकते हैं। वास्तव में कई जगहों पे जो दलितों के लिए जहां पर एंट्री थी, उस जगह जब दलित एंट्री करते थे और वहां के सवर्णवादी और ब्राह्मणवादी दलितों के साथ मारपीट करते थे या उन्हें घुसने नहीं देते थे, और फिर जब दलित गवर्नर या किसी अंग्रेज अधिकारी के पास जाते थे तो अंग्रेज अधिकारी उसमें कोई मदद नहीं करते थे। इसका भी विवरण आपको दो किताबों में मिल सकता है, क्रिस्टोफ जेफरलॉट की किताब है डॉक्टर अंबेडकर इन अनटचेबिलिटी, और एक आनंद तेलतुंबड़े की किताब है महाड़ द मेकिंग ऑफ फर्स्ट दलित रिवोल्ट। इन किताबों में बाकायदा उसका विवरण आप देख सकते हैं। तो इसलिए जो ये पूरा, अब अगर हम इस चर्चा पे अब थोड़ा विराम लगा के आगे बढ़ते हैं कि जाति व्यवस्था का जो पूरा ऐतिहासिक विकास किस तरीके से हुआ, इंडिपेंडेंट इंडिया में भी किस तरीके से आनुवांशिक श्रम विभाजन टूटा लेकिन साथ में एंडोगेमी बरकरार रही, क्योंकि एंडोगेमी पूंजीवादी निजी संपत्ति को उससे भी ज्यादा पवित्र बना देती है जितना पवित्र खुद पूंजीवाद बना देता है। तो जो चीज पूंजीवाद से कॉन्ट्रडिक्शन जिस चीज का नहीं है, पूंजीवाद उसको प्यार से अपनाता है। और एकदम जो आईटी बीपीओ सेक्टर में काम करने वाला सबसे एडवांस्ड मॉडर्न एक पूंजीपति वर्ग है, वो भी जब अपना मैट्रिमोनियल छपवाता है तो यही छपवाता है कि एक ब्राह्मण लड़के के लिए एक ब्राह्मण लड़की चाहिए। तो वो एक तरफ एकदम एडवांस्ड उसमें का, तो पूंजीवाद के साथ इसका कोई वो नहीं है, कंट्राडिक्शन नहीं है, लेकिन वो ऑफिस में बैठ के एक दलित को वर्कर के साथ काम करेगा, साथ में हो सकता है खाने वाने से बचे लेकिन उसके साथ काम में उसके साथ एक लेवल पे बैठेगा क्योंकि उसके नौकरी का सवाल है, वो और कुछ कर ही नहीं सकता है, उसमें उसकी चाहत की बात ही नहीं है। और थ्रू जनरेशंस कई पीढ़ियों में जब ये पूंजीवादी विकास हुआ है तो वो चीज टूटी है। कास्ट एंडोगेमी भी थोड़ी टूटी है जातिगत, अब जैसे जाति तोड़ के विवाह हो रहे हैं लेकिन बहुत कम है, अभी बहुत कम है, वो अपवाद उनको ज्यादा माना जाएगा, नियम कम माना जाएगा। आमतौर पर वो शहरों में हो रहे हैं, शहरे पढ़े लिखे वर्ग के बीच में हो रहे हैं। अब ये परिघटना पिछले 10-12 साल में देखने में आई है कि गांवों में भी जाति तोड़ के ज्यादा विवाह हो रहे हैं, थोड़े बढ़े हैं, पहले होते थे तो एकदम उस पर बदले की कार्रवाई जिस तरीके से होती थी, आज भी होती है बदले की कार्रवाई, लेकिन पहले से वो कम हुई है। अब वो रिपोर्ट ज्यादा हो रहा है केस, इसलिए पता लग जाता है कि हाँ जाति तोड़ के किसी ने विवाह किया तो उसके साथ किस तरह का बर्ताव किया गया। पहले तो रिपोर्ट ही नहीं होता था, लेकिन पहले उसकी संख्या बहुत ज्यादा थी। दूसरे मजदूर बस्तियों में आपको ऐसे एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं जहां पे जाति तोड़ के विवाह हो रहे हैं, तो ये चीजें हो रही लेकिन बहुत कम। अभी कहा जाए कि मुख्य तौर पे सजातीय विवाह की जो जातिवादी ब्राह्मणवादी परंपरा है वो बरकरार है, वो टूटी नहीं। अब हम आते हैं जाति विरोधी आंदोलनों पे, क्योंकि आज हम अगर किसी जाति विरोधी आंदोलन को खड़ा करने की बात कर रहे हैं तो आज ही खड़े होकर नए सिरे से हम कुछ आविष्कार नहीं करेंगे, हमें पहले के जाति विरोधी आंदोलन से भी सीखना पड़ेगा। उसमें बहुत से लोगों का नाम आता है जिसमें ज्योतिबा फुले हैं, पेरियार हैं, अय्यंकली हैं, अंबेडकर हैं, और इसके साथ ही साथ कम्युनिस्ट भी हैं। हम इनके मूल्यांकनों पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे, थोड़ा डिटेल में हम अंबेडकर के प्रश्न पे चर्चा करेंगे, क्योंकि एक सिंबल आज, एक कोई प्रतीक कि दलितों की मुक्ति के लिए लड़ने वाला कोई एक व्यक्ति, जिस प्रतीक को इवन सरकार और व्यवस्था ने भी अपना लिया है और उसके कलेक्टेड वर्क छाप सकती है व्यवस्था, उसमें उसको भगत सिंह के नहीं छापेगी कभी कलेक्टेड वर्क, भारत सरकार नहीं छाप सकती है भगत सिंह के कलेक्टेड वर्क, लेकिन कुछ लोग के छाप सकती है। तो एक जो सबसे डोमिनेंट सिंबल है दलित मुक्ति के आंदोलन का, वो आज अंबेडकर है, इसलिए ज्यादा वक्त मैं अंबेडकर पर खर्च करूंगा। इसलिए थोड़ा बहुत ही संक्षेप में मैं फुले की चर्चा करूंगा। ज्योतिबा फुले स्वयं माली जाति से आते थे, आप लोगों को पता ही होगा, वो शूद्र जाति से आते थे, स्वयं दलित नहीं थे, लेकिन और एक मिशनरी स्कूल में शिक्षित हुए थे। मिशनरी स्कूल में शिक्षित होने की प्रक्रिया में जो पाश्चात्य जनवाद, समानता, भ्रातृत्व का जो आदर्श था उससे काफी प्रेरित थे। टॉमस पेन उनके एक सबसे कहा जाए कि नायकत्वपूर्ण फिगर थे, जिसको बहुत मानते थे वो और उन विचारों को भी मानते थे। उन्होंने जाति के खिलाफ एक लड़ाई शुरू की। शुरुआत में जब आप उनकी 1873 की पहली रचना पढ़ें गुलामगिरी, तो गुलामगिरी में अभी वो इन टर्म्स में बात कर रहे हैं, इन शब्दों में बात कर रहे हैं कि जो दलितों को मुक्त करने का काम जो है वो ईसाई लोग करेंगे, अंग्रेज करेंगे। क्यों? और जीसस क्राइस्ट को भी वो काफी वो मानते थे, बड़ा मानते थे अपने उसको, उनके प्रिय एक फिगर्स थे। और गुलामगिरी में उन्होंने ये लिखा कि जीसस बलि राजा थे। बलि राजा का एक वो पूरा लेजेंड रचते हैं, एक काल्पनिक कथा रचते हैं कि बलि राजा जो है वो यहां के मूल बाशिंदों के वो असली किंग थे, वही जीसस हैं, वही वहां गए और जीसस के रूप में फेमस हुए, तो उससे भी जोड़ते हैं। लेकिन मुख्य चीज उनका जो था कि उनका एक पूरे विचार में आप एक यात्रा देख सकते हैं। 1873 में जो गुलामगिरी लिखते हैं उसमें वो ये मानते हैं कि दलितों के उद्धारक हैं अंग्रेज और अंग्रेज दलितों का उत्थान करेंगे। उसके बाद ये उनकी जो उम्मीद है, क्योंकि वो मिशनरी स्कूल में पढ़े थे, अंग्रेजों के बीच पढ़े थे, तो अंग्रेजों के प्रति उनका एक बहुत ही सकारात्मक सोच थी शुरुआत में। बाद में ये सोच बदलनी शुरू होती है। 1879 में हंटर आयोग, जो कि एजुकेशन पे बनाया था अंग्रेजों ने, उसके सामने फुले टेस्टिमनी पेश करते हैं जिसमें वो इस चीज पे आश्चर्य पेश करते हैं कि आप लोग, यानी कि अंग्रेज, आप लोग अपनी नौकरशाही में अपने पूरे जो आप आईसीएस वगैरह का सिस्टम आपने बनाया, सिविल सर्विसेज का सिस्टम बनाया है, उसमें आप दलितों को प्राथमिकता देने के बजाय ब्राह्मणों को प्राथमिकता क्यों दे रहे हैं? और ये सवाल वो काफी मतलब वंडर करते हुए, चकित होते हुए पूछते हैं कि आप तो वो लोग हैं जो लोग स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व के उसूलों को मानते हैं। आप लोग तो उस जगह से आए हैं जहां पे आप लोगों ने भूमि सुधार किए हैं, आप लोगों ने जो है वोट देने का अधिकार दिया है, समानता की बात की है। तो इस देश में जो सबसे दमित, उत्पीड़ित और यहां तक कि नागरिक अधिकारों, सिविल राइट्स से भी जो वंचित आबादी है, उसका उत्थान करने, उसको एजुकेट करने के लिए आप लोग पर्याप्त प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? और जो एजुकेटेड हैं इस दलित आबादी और पिछड़ी शूद्र आबादी के बीच में, उनको आप नौकरियां देने में, अपनी राज्य सत्ता में प्राथमिकता क्यों नहीं दे रहे हैं? यह सवाल उन्होंने हंटर आयोग के सामने जो अपनी टेस्टिमनी दी उसमें पूछा। यहां से ज्योतिबा फुले क्वेश्चन करना शुरू कर रहे हैं। अब अंग्रेजी सत्ता के इरादों, मंशाओं और उसकी भूमिका को प्रश्न के दायरे में ज्योतिबा फुले लाना शुरू करते हैं। और 1883 आते आते जब वो अपनी एक प्रसिद्ध रचना लिखते हैं किसान का कोड़ा, तो उसमें वो ये कहते हैं कि ठीक है, अंग्रेज सरकार में ये सारी चीजें हैं, वो स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व को मानती है, लेकिन वास्तव में जो पूरा अंग्रेज अधिकारी वर्ग है भारत में, अगर आप किसी अंग्रेज अधिकारी की चमड़ी निकालोगे, उतारोगे, तो आपको उसमें ब्राह्मण खून मिलेगा। तो ये गौर करने वाली थोड़ी बात है। फुले ये कह रहे हैं कि आप अंग्रेज अधिकारी की चमड़ी उतारोगे तो आपको उसमें ब्राह्मण खून मिलेगा, क्योंकि यहां से थोड़ा क्रिटिकल होना शुरू कर दिए थे। अभी मुझे फुले की आगे के 7 वर्षों की रचनाओं का अध्ययन करना है क्योंकि वो उपलब्ध नहीं हो रही है कहीं पर, लेकिन इतना स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि 1873 में गुलामगिरी लिखने और उसके पहले वो कुछ साहित्यिक रचनाएं उन्होंने जाति व्यवस्था पे चोट करते हुए लिखी थी, उस समय से लेकर 1883 तक ज्योतिबा फुले के विचारों के विकास की जो दिशा है, जो ट्रेजेक्ट्री है, वो ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज शासन के प्रति आलोचक बनते जाने की है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि ज्योतिबा फुले अंग्रेजों के खिलाफ किसी बगावत या अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई को शुरू करने या रेडिकल तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि ज्योतिबा फुले लगातार आलोचनात्मक एक दृष्टिकोण अपना रहे थे। आखिरी 7 साल में अगर उनके विचारों की यही ट्रेजेक्ट्री रही होगी, जो कि ज्यादातर अभी मराठी में उपलब्ध है रचनाएं, वो हम लोग ने अपने मराठी साथियों से, मैंने अपने मित्रों से कहा है कि वो पढ़ के बताएं कि उसमें ज्योतिबा फुले का नजरिया क्या है इस प्रश्न पर, तो हम ज्योतिबा फुले की एक विचार यात्रा को समझ सकते हैं। जितना स्रोत सामने है उससे इतना स्पष्ट है कि अंग्रेज सत्ता के प्रति उनके आलोचना का रवैया बढ़ रहा था। दूसरी चीज, ज्योतिबा फुले सामाजिक परिवर्तन के लिए मुख्य शक्ति सरकार को नहीं मानते थे। ज्योतिबा फुले सामाजिक परिवर्तन के लिए मुख्य शक्ति जनबल को मानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी मुहिम शुरू की। जब सार्वजनिक समाज की रचना की उन्होंने, उसके बाद उसको लेकर स्कूल्स को खोलने का काम दलितों के लिए, शूद्रों के लिए, लड़कियों के, सावित्रीबाई फुले उनकी जो जीवन संगनी थी उन्होंने लड़कियों के लिए पहली बार स्कूल खोला, उनके बीच में कला का कला संस्कृति और शिक्षा का प्रचार प्रसार करने में वो मुख्य तौर पर जनबल और अपने इनिशिएटिव पे भरोसा रखते थे, ना कि राह अगोरना जिसको कहते ना कि सरकार आके करेगी, वो करने के बजाय इस सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा संस्कृति के प्रचार के लिए भी वो जनता की पहलकदमी में ज्यादा भरोसा रखते थे। और इस रूप में फुले की अगर कुल मूल्यांकन किया जाएगा तो कुल मूल्यांकन मेरे विचार में सकारात्मक मूल्यांकन होना चाहिए, और फुले की कुल विचार यात्रा को, उनके विचारों के विकास की पूरी दिशा को देखा जाना चाहिए। केवल एक रचना गुलामगिरी को देखकर तय नहीं होगा, जो कि हिंदू धर्म का जबरदस्त एक्सपोजर है और हिंदू धर्म में जो तमाम रूढ़ियां और अंधविश्वास है उनका जबरदस्त भंडाफोड़ है, लेकिन साथ में उसकी एक ये कमी है कि वो इस चीज को बदलने और दलितों के उत्थान और शूद्रों के उत्थान के लिए अंग्रेजों को बोलते कि ये करेंगे उत्थान, लेकिन बाद में प्रैक्टिस में खुद ज्योतिबा फुले वो स्कूल स्थापित कर रहे हैं, तमाम एक लगातार सामाजिक गतिविधियों का एक सघन दौर उनका पूरे जीवन में देखा जा सकता है। फुले के बाद जो बड़ा पेरियार भी थे, पेरियार का पूरा मानना यह था कि वास्तव में जब तक भौतिकवादी जीवन दृष्टि और नास्तिकता ये समाज में स्थापित नहीं होगी तब तक जाति व्यवस्था नहीं खत्म हो सकती। मैं बहुत संक्षेप में पेरियार की बात रख रहा हूं क्योंकि हम लोग के पास वक्त कम है और उसमें हम लोग को थोड़ी सी बातें अभी बाकी रहती हैं करनी। तो वो पूरी तरीके से धर्म के उन्मूलन पर रिड्यूस कर देते हैं, जाति के उन्मूलन को। लेकिन आज के समाज को देख के बताया जा सकता है, बहुत सारे आपको ऐसे नास्तिक मिल जाएंगे जो जाति मानते हैं, अपने आप में नास्तिकता जाति का उन्मूलन कर देगी, ये आनुभविक तौर पे और तथ्यगत तौर पे ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है, ऐसा साबित नहीं होता है। और इसलिए पेरियार की ये एक पॉजिटिव बात थी कि उन्होंने इस बात को पहचाना, जैसा कि अंबेडकर ने भी पहचाना, आप हिंदू धर्म के उसमें ही आपको जाति व्यवस्था के मूल को तलाश करना पड़ेगा, हिंदू धर्म से अलग हटके ही जाति व्यवस्था का उन्मूलन की बात की जा सकती है, इतना उन्होंने पहचाना। लेकिन सिर्फ इतना करके भी जाति का उन्मूलन नहीं हो सकता है, वरना आप ये कैसे बताएंगे कि मुसलमानों के बीच भी जाति पैदा हो गई, बुनकर कमीन जातियां जो जिनको बोलते हैं वो पैदा हो गई, जातिगत विभेद जो भारत में मुसलमान बसे उनमें भी पैदा हो गया, यहां तक कि सिख आबादी में भी पैदा हो गया, जो कन्वर्ट्स हुए, जो दलित कन्वर्ट हुए सिख आबादी में, उनके अलग गुरु, उनके अलग पूजा अर्चना स्थल, उनका अलग सामाजिक सांस्कृतिक जीवन होता है। तो वो जाति प्रविष्ट कर गई क्योंकि जाति एक, वही जो हमने पहले बात की, एक ऐसी विचारधारा है जो सभी समुदायों के शासक वर्ग को शासन का एक बेहतरीन विचारधारात्मक उपकरण देती है, और इस वजह से सिर्फ धर्म के नाश से जाति का नाश नहीं हो सकता, यह भी स्पष्ट रहना चाहिए। यहां पर पेरियार का एक, जो मुझे लगता है कि एक कमी मुझे नजर आती है कि पूरी तरह से धर्म के विश्लेषण पे उसको अपचयित कर देते हैं, जाति के विश्लेषण को। अब आते हैं अंबेडकर के प्रश्न पे। सबसे पहले तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि अंबेडकर का योगदान था जाति उन्मूलन के पूरी लड़ाई में। सबसे पहले उन योगदानों की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा योगदान यह था कि समूची दलित आबादी में आत्म गरिमा बोध को स्थापित करना, जो कि किसी भी दमित आबादी का पहला स्टेप होता है, जो सबसे दबे हुए लोग, चाहे वो ब्लैक्स हो अमेरिका में, उनका पहला स्टेप होता है अपने आप को रिकॉग्नाइज करना, अपनी अस्मि, अस्मिता शब्द वहीं से निकला है, अस्मि, मैं को पहचानना, और उस अस्मिता के आधार पर अपनी अस्मिता को एसर्ट करना एक मानवतावादी तरीके से, कि हम भी इंसान हैं और हमें अगर बराबर के अवसर मिले तो हम किसी से कम नहीं है। ये जो आत्म गरिमा बोध, अपनी क्षमताओं में एक आत्मविश्वास, एक सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना, ये पैदा करने में इन सब का योगदान था। फुले का भी योगदान था, पेरियार का योगदान था, अंबेडकर का भी इसमें एक अहम योगदान था, एक केंद्रीय योगदान था, और इसमें योगदान कम्युनिस्टों का भी था। कम्युनिस्ट पार्टी ने भी अपने समय में निश्चित तौर पे जाति प्रश्न को कम्युनिस्ट आंदोलन भारत का समझ नहीं पाया, जाति प्रश्न का उसने कोई ऐतिहासिक विश्लेषण नहीं किया, और चूंकि उसका कोई ऐतिहासिक विश्लेषण नहीं किया इसलिए उसका कोई समाधान पेश करने में भी कम्युनिस्ट आंदोलन भारत का असफल रहा। लेकिन भारत का कम्युनिस्ट आंदोलन सिर्फ जाति का समाधान देने में असफल नहीं रहा, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी 1925 तक बनी और 1951 तक भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के पास भारत की क्रांति का कोई कार्यक्रम नहीं था। 1925 में बनी कम्युनिस्ट पार्टी के पास 1933 तक कोई नेतृत्व नहीं था, नेतृत्वकारी निकाय नहीं था, उन्होंने अपनी सेंट्रल कमेटी तक नहीं चुनी थी। 1936 तक उनका कोई महासचिव नहीं था, 1936 में पहले महासचिव बने पीसी जोशी। तो भारत का कम्युनिस्ट आंदोलन पर यह जो उस समय के, कम से कम 1950 के पहले तक के, ये जो आरोप लगाया जाता है कि ये ब्राह्मणवादी था, ब्राह्मणवादी होने से के वैसे कहा जाए कि अवचेतन मस्तिष्क पे जातिवाद और ब्राह्मणवाद का प्रभाव होने से हम में बैठा यहां कोई व्यक्ति इंकार नहीं कर सकता कि हमारे अवचेतन मस्तिष्क पे जातिगत विचारधारा का प्रभाव होगा कि नहीं। लेकिन सचेतन तौर पे कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर ब्राह्मणवाद और जातिवाद की सोच का असर और अपने जीवन शैली में जातिवाद को लागू करने की घृणास्पद और अवसरवादी प्रवृत्ति, ये कम्युनिस्ट पार्टी में 1950 के दशक के उत्तरार्ध में पैदा हुई जब कम्युनिस्ट पार्टी क्रांति के रास्ते से भटक चुकी थी सीपीआई। लेकिन उसके पहले अगर किसी एक पार्टी ने सबसे ज्यादा दलित भूमिहीन मजदूरों के संघर्ष लड़े, किसान सभा का पूरा जो एक्सपेरिमेंट किया जिसमें नाम के आगे लगाए जाने वाला जातिगत शीर्षक एक पूरे इलाके से हटवा दिया उन लोगों ने, इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, और आजादी के बाद जो नई कम्युनिस्ट पार्टी जिनको नक्सलाइट पार्टी कहा गया, उन्होंने, उनकी लाइन गलत थी, वामपंथी दुस्साहसवादी थे, जनता की ताकत से ज्यादा बंदूक की ताकत पर भरोसा करते थे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ही, चाहे वो जहानाबाद हो, पटना हो, आरा का इलाका हो, इन सब जगहों पर, आरा भोजपुर के इलाके से लेकर और बंगाल तक और दंडकारण्य तक, अगर दलित भूमिहीन मजदूरों को लेकर सशस्त्र हथियारबंद करके किसी ने लड़ाई लड़ी तो वो कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में लड़ी गई। लेकिन इन सब के बावजूद इतना मानना पड़ेगा कि जाति व्यवस्था के पूरे प्रश्न को ऐतिहासिक तौर पर समझने में भारत की कम्युनिस्ट आंदोलन की असफलता रही, वो नहीं समझ सकी, और इस वजह से वर्ग और जाति के रिश्ते के बारे में भी उनकी बहुत ऊटपटांग सोच अलग अलग समय पर आती रही, और इस गलत विश्लेषण के कारण ही जाति व्यवस्था के खिलाफ एक वर्ग आधारित लड़ाई किस तरीके से लड़ी जाए, जाति के प्रश्न को किस तरीके से प्रोमिनेंट तरीके से एजेंडे पे रखा जाए, इस चीज को समझने में भारत का कम्युनिस्ट आंदोलन असफल रहा। लेकिन हां, इतना जरूर है कि दलित अस्मिता को एस्टैब्लिश करने के में, दलित अस्मिता और दलित गरिमा बोध को स्थापित करने में तमाम शक्तियों, तमाम शख्सियतों का योगदान था, जिसमें फुले, पेरियार, अंबेडकर के साथ निश्चित तौर पे कम्युनिस्ट पार्टी को भी जोड़ा जाना चाहिए, नहीं जोड़ना बेईमानी होगी, इतिहास के साथ दुराचार होगा। तो अंबेडकर का जो सबसे पहला और बड़ा योगदान था मेरे विचार में, वो ये था कि दलित आबादी के बीच एक आत्मगरिमा बोध को स्थापित करना। दूसरा जो बड़ा योगदान मुझे लगता है वो ये था कि राष्ट्रीय एजेंडे पे जाति प्रश्न को इतनी केंद्रीयता और जोर के साथ स्थापित करने का काम अंबेडकर ने मुख्य तौर पे किया राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में, और कांग्रेस को मजबूर होके अपने एजेंडे में जाति प्रश्न को शामिल करना पड़ा, बहुत देर में शामिल किया उन्होंने अपने एजेंडे में, और उसमें दोनों का ही योगदान था, एक तरफ क्योंकि कम्युनिस्टों ने 1920 के दशक में ही, 1926-27 में ही अपने कार्यक्रमों में, अपने अधिवेशनों में जाति प्रश्न को अपने एजेंडे पे रखा था, लेकिन उस जोर के साथ नहीं रखा था, अंबेडकर ने इसको पूरे जोर के साथ रखा, और इन दो ताकतों को के द्वारा जाति के प्रश्न को एजेंडे पे रखने के कारण बाध्य होकर कांग्रेस को जाति प्रश्न को अपने एजेंडे पे रखना पड़ा। तो इस तौर पे पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के एजेंडे पर जाति के प्रश्न को पूरे अपनी गंभीरता और केंद्रीयता के साथ स्थापित करने में निश्चित तौर पर अंबेडकर का योगदान था। इन दो योगदानों के साथ हम अब आगे बढ़ते हुए इस चीज की बात कर सकते हैं कि अंबेडकर के जाति उन्मूलन की पूरी कार्यदिशा और सोच क्या थी। अब किसी भी सामाजिक एक्टिविस्ट, चिंतक, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, उसके विचारों का विश्लेषण करना हो तो दो चीजों पे बातचीत नहीं की जानी चाहिए। एक, उसकी मंशा पे बात नहीं की जानी चाहिए कि मंशा अच्छी थी या अच्छी नहीं थी, क्योंकि मंशा पे वैज्ञानिक बात नहीं कर सकते हैं। समाज वैज्ञानिक हमेशा इस चीज पर बात करते हैं कि किन्हीं का, किसी भी ऐसे पार्टी का, व्यक्ति का, किसी आंदोलन की राजनीति क्या थी। हमें नहीं पता अन्ना हजारे ईमानदार हैं कि बेईमान है, जो भी, उससे फर्क क्या पड़ता है, और हमें भी नहीं पता कि गांधी ईमानदार थे या बेईमान थे, इस बहस में जाना ही बेकार है। मुख्य पहलू यह है कि उनकी राजनीति और उनके दर्शन का चरित्र क्या था, यह देखा जाना चाहिए, और ये देखने से ही किसी भी दार्शनिक, किसी भी पार्टी, किसी भी व्यक्ति के विचारधारा, उसके राजनीतिक कर्म यानी कि उसके पॉलिटिकल एक्टिविज्म, उसका विश्लेषण किया जाना चाहिए। अब अगर हम अंबेडकर के दार्शनिक मूल और उनकी राजनीतिक विचारधारा की बात करें तो अंबेडकर जिस एक विचारधारा से सबसे ज्यादा प्रभावित थे और जिस विचारधारा को उन्होंने अपने पूरे जीवन में ईमानदारी के साथ लागू किया, वो थी व्यवहारवाद की विचारधारा। यह व्यवहारवाद की विचारधारा अमेरिका में पैदा हुई थी। 1860 के दशक से इस विचारधारा के पैदा होने की शुरुआत देखी जा सकती है और इसका विकास की प्रक्रिया मुख्य तौर पे 1940 के दशक द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति तक चलती रही। इसी बीच अंबेडकर का अध्ययन और शोध के लिए अमेरिका में प्रवास भी हुआ था, जिस वक्त एक प्रमुख व्यवहारवादी चिंतक या कहा जाए कि शीर्षस्थ, इसमें वाकई में कोई दो राय नहीं है कि वे ही व्यवहारवादी दार्शनिकों में उनका शीर्षस्थ स्थान है, जॉन ड्यूई उनके संपर्क में आए जो कि उनके शिक्षक थे, और जॉन ड्यूई के जरिए ही वो व्यवहारवादी विचारधारा के संपर्क में आए। व्यवहारवादी विचारधारा को जॉन ड्यूई ने अपने तरीके से आगे विकसित किया था, जिसको ड्यूइयन प्रैग्मेटिज्म या इंस्ट्रूमेंटलिज्म या प्रोग्रेसिव एक्सपेरिमेंटेशन कहा जाता है, उपकरणवाद या प्रगतिवादी प्रयोगवाद कहा जाता है। ये व्यवहारवादी विचारधारा के ही दो हिस्से हैं, इन पे हम अभी आएंगे कि व्यवहारवाद क्या होता है और किस तरीके से अंबेडकर ने उसको समझा और भारत में जाति उन्मूलन के अपने पूरे आंदोलन में और अपने पूरे पॉलिटिकल एक्टिविज्म में, अपने राजनीतिक कर्म में उसको किस तरीके से उतारा व्यवहारवाद को। व्यवहारवादी विचारधारा की शुरुआत जो है अमेरिका में, जैसा कि मैंने कहा, 1860 के दशक में होती है, लेकिन उसके मूल पहले से ही मौजूद थे। अमेरिकी स्वतंत्रता की जो लड़ाई हुई 1776 में, अमेरिकी क्रांति जो हुई, उस समय अमेरिकी राष्ट्र की एक तरीके से नींव पड़ी। अमेरिकी राष्ट्र एक बड़ा विशिष्ट किस्म का राष्ट्र है, देश है। यह देश स्थापित ही उस समय हुआ जब पूरी दुनिया में मुख्य जो उत्पादन पद्धति थी वो पूंजीवादी उत्पादन पद्धति, यूरोप से मेरा मतलब है, यूरोप में मुख्य उत्पादन पद्धति जो है वो पूंजीवादी उत्पादन पद्धति बन चुकी थी, और यूरोप में उसके खिलाफ फ्रांसीसी क्रांति 13 साल बाद अमेरिकी क्रांति के बाद हुई 1789 में। लेकिन इस क्रांतिकारी विचारधारा के मूल आप एनलाइटेनमेंट में देख सकते हैं, प्रबोधन में, इसमें वॉल्टेयर, दीद्रो, रूसो, इस तरह के जो क्रांतिकारी बुर्जुआ दार्शनिक थे, जो पूंजीवादी क्रांतिकारी दार्शनिक थे, उन्होंने व्यक्ति के आजादी के सिद्धांत पेश किए, व्यक्तिवाद का सिद्धांत, राज्य सत्ता के सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत लॉक और रूसो ने पेश किया, इस तरह के तमाम सेक्युलर डेमोक्रेटिक सिद्धांत पेश किए गए जिसमें व्यक्ति की आजादी को रेखांकित किया गया, सामंती उत्पीड़न का नकार किया गया, सामंती जो परजीविता थी, चर्च और वहां के सामंत वर्ग का जो पूरा परजीवी जीवन था उसका निषेध किया गया, और उसके आधार पे ये बात की, ये नारा दिया गया कि एक ऐसा समाज होना चाहिए जो कि समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व पर आधारित हो। यही वो तीन नारा जो था, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी, जिसके आधार पे फ्रांसीसी क्रांति आधारित थी, जिसके आधार पे थॉमस पेन ने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन लिखा था, मनुष्य के अधिकारों की घोषणा, और उसी से ये दो महान क्रांतियां उस समय प्रेरित हुई थी, अमेरिकी क्रांति भी और फ्रांसीसी क्रांति भी। लेकिन फ्रांस का एक लंबा सामंती अतीत था, उस सामंतवाद के खिलाफ फ्रांस में क्रांति हुई। अमेरिका में जिस दौर में ये देश पैदा हुआ, ये पैदा ही एक पूंजीवादी देश के तौर पे हुआ, इसका कोई लंबा सामंती इतिहास नहीं था, इसका कोई ऐसा इतिहास लंबा नहीं था जहां पे चर्च और जागीरदारों के वर्ग ने एक बहुत बड़ी आबादी को बुनियादी आजादी से भी रिक्त रखा हो, उसको उससे वंचित रखा हो, और उसके ऊपर आर्थिकेतर शोषण और सामाजिक उत्पीड़न का एक पूरी लादी लाद रखी हो कई सदियों तक, ऐसा कोई अमेरिका का इतिहास नहीं था। अमेरिका की स्थापना एक पूंजीवादी देश, एक पूंजीवादी राष्ट्र के तौर पे हुई, और अमेरिका जिस तरह का कॉन्टिनेंट भी था, वहां पर जबरदस्त इंटरनल और एक्सटर्नल विस्तार की संभावनाएं थी। अमेरिका देश जो है वो एक महाद्वीप जितना बड़ा है, और उसके पूर्वी कोस्ट पे यूरोपीय जो नेशंस थे वो उतरे, सबसे पहले स्पेनिश और बाद में अंग्रेज और फ्रांसीसी, और उन्होंने अपने विस्तार को वेस्टवर्ड, जो नारा वेस्टवर्ड हो, जो नारा ये वहीं से निकला है, एक पश्चिमी विस्तार अमेरिकी सभ्यता का, क्रांति के बाद जो वहां पूंजीवादी व्यवस्था आई उसका एक पश्चिमी विस्तार लंबे समय तक जारी रहा, वो करीबन 100 सालों तक, पश्चिम के बहुत सारे 100 सालों से भी ज्यादा समय तक, वहां के बहुत सारे रेड इंडियन ट्राइब्स थे जिनको अभी कॉन्कर, उनको अभी विजित नहीं कर पाई थी अमेरिकी जो पूंजीवादी व्यवस्था थी, वो 100 साल तक वो वेस्टवर्ड एक्सपेंशन चलता रहा, संसाधनों का एक अपार भंडार पूरा अमेरिकी महाद्वीप, और संसाधनों का भंडार होने के साथ वहां जो एक सेटलर आकर बस गई यूरोपीय कम्युनिटी थी उसके सामने अवसरों का एक विस्तार था, इसीलिए उसको लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी और लैंड ऑफ फ्रीडम कहा जाता था, कि यहां हर कोई, जिसके लिए एक नारा दिया गया था परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, खुशी मतलब आनंद हासिल करने की पूरी आजादी हर इंडिविजुअल को होनी चाहिए, और उसके लिए अवसरों का एक व्यापक दायरा मौजूद था, जिसकी वजह से अमेरिका एक लैंड ऑफ फ्रीडम, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी और परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस की आजादी देता था। एक ऐसी जमीन, एक ऐसा ऐसा देश जो कि अवसरों को अवसरों की आजादी देता था, जो कि पूरी आजादी देता था कि आप अपने आप को अमीर बनाएं, आप अपने आप को आनंद और खुशी में पहुंचाएं। और उसके वेस्टवर्ड एक्सपेंशन यानी कि पश्चिमी विस्तार की जो संभावनाएं थी, उसकी वजह से काफी लंबे समय तक अमेरिकी समाज में मजदूर वर्ग और पूंजीपति वर्ग का अंतर्विरोध उभर के साथ ऊपर नहीं आ पाया। बहुत लंबे समय तक मजदूर वर्ग भी इस वेस्टवर्ल्ड एक्सपेंशन, जो पाश्चात्य विस्तार हो रहा था उससे, और शुरू से ही अमेरिका एक साम्राज्यवादी देश भी था। अमेरिका के बनने के बाद ही मेक्सिको के साथ उसकी लड़ाई हुई, क्यूबा को के ऊपर उसने अपना पपेट बैठाया, निकारागुआ और पूरे लैटिन अमेरिका में अपने प्रभुत्व क्षेत्र को कायम किया, ब्लैक्स को गुलाम बनाया, अन्य ऑप्रेस्ड नेशनैलिटीज को गुलाम बनाया, और शुरू से उसका ईस्टवर्ड एक्सपेंशन यानी कि एक्सटर्नल एक्सपेंशन और इंटरनल एक्सपेंशन, दोनों की ये जो अपार संभावनाएं थी, इसकी वजह से अमेरिका में वर्ग अंतर विरोधों के सतह पर उभर के आने में काफी वक्त लगा। हर किसी को इस अपॉर्चुनिटी के लैंड में अपना परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस करने का काफी अवसर मिलता रहा। 1860 के दशक में आकर यह प्रक्रिया जो है वो बाधित होती है, जब अमेरिका मुक्त व्यापार पूंजीवाद से वो इजारेदारी की तरफ जाता है। पहली बार इस तरह की बड़ी और विशालकाय कंपनियां पैदा होती हैं, जो कि तमाम छोटे उद्यमियों, छोटे ये जो टकपुंजिया वर्ग होता है उसको निगलना शुरू करती है, और इस इजारेदारीकरण के खिलाफ वहां एक पूरा आंदोलन खड़ा होता है, जो कि कोई मजदूर आंदोलन नहीं था, ये छोटे मालिकों का आंदोलन था। छोटे मालिकों के आंदोलन का एक प्रादुर्भाव होता है, और उसके साथ 1880 के दशक और 1890 के दशक में वहां एक पॉपुलिस्ट मूवमेंट पैदा होता है और एक पॉपुलिस्ट पार्टी बनती है। उस पॉपुलिस्ट पार्टी के मूवमेंट और पार्टी के पीछे जो है जो मुख्य प्रेरणा थी, वो पहले व्यवहारवादी दार्शनिक थे, चार्ल्स पियर्स। चार्ल्स पियर्स और विलियम जोन्स ये कुछ शुरुआती प्रमुख व्यवहारवादी दार्शनिक थे, जो कि अपनी प्रेरणा किससे लेते थे, अमेरिकी पूंजीवाद के उस दौर से, जब वो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी था, जब अभी वहां मोनोपोलीज, बड़ी कंपनियां और इजारेदारी पैदा नहीं हुई थी, जब छोटे मालिकों के खत्म होने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी, तब उस दौर को वो नॉस्टैल्जिया के साथ याद करता था, और नॉस्टैल्जिया के साथ याद करते हुए ये उम्मीद करता था कि वापिस वैसा मुक्त व्यापार पूंजीवाद आ जाएगा जिसमें सब छोटे मालिक स्वतंत्रता पूर्वक अपना परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस करेंगे, स्वतंत्रता पूर्वक वो धनी होने की अपनी चेष्टाओं पर अमल करना जारी रख पाएंगे। वो दौर अब खत्म हो चुका था, पूरा पॉपुलिस्ट मूवमेंट एक उजड़ते हुए छोटे मालिक वर्ग का नॉस्टैल्जिया था, और उसका प्रेरक तत्व तो वही राइट्स ऑफ मैन जो टॉम पेन का था वो, और 1860 में जिसको द्वितीय अमेरिकी क्रांति कहा जाता है, सिविल वॉर, जिसमें साउथ अमेरिका हारता है और इंडस्ट्रियल नॉर्थ अमेरिका जीतता है, स्लेवरी खत्म होती है, लिंकन का पीरियड, उस दौर में दूसरा जो एक बड़ा फिगर था इमर्सन, जो कि ट्रांसेंडेंटल फिलोसफी को मानते थे, कांट की, उसका यह मानना था कि अतीत का बोझ पीठ पे नहीं होना चाहिए, इतिहास और अतीत का कोई बोझ नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअल इस अतीत के बोझ से दब जाता है, उसको अपने परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस के लिए पूरे दोनों हाथ उसका खुला होना चाहिए, पूरा उसको विस्तार मिलना चाहिए, पूरी आजादी मिलनी चाहिए। इमर्सन का ये कांटियन ट्रांसेंडेंटलिज्म था, और राइट्स ऑफ मैन टॉमस पेन का, और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अमेरिका की, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र, और इमर्सन का जो ट्रांसेंडेंटलिज्म था, इसके लिए मुझे कोई सही हिंदी शब्द नहीं मिला। तो ये जो विचारधाराएं थी, इनसे प्रेरणा लेते हुए व्यवहारवादी विचारधारा पैदा हुई, और उस व्यवहारवादी विचारधारा के ही तीसरे बड़े दार्शनिक थे जॉन ड्यूई। 1890 के दशक के अंत की तरफ जो पॉपुलिस्ट पार्टी इस विचारधारा को लेकर बनी थी, और छोटे मालिकों का बड़े मालिकों के खिलाफ एक बगावत भी नहीं कहेंगे, उसका एक विरोध आंदोलन थी, प्रतिरोध आंदोलन थी, वो पॉपुलिस्ट पार्टी विघटित होती है। पॉपुलिस्ट पार्टी में बहुत सारी मजदूर आबादी भी शामिल थी, और बहुत सारे छोटे मालिकों और टटपुंजिया आबादी भी उसमें शामिल थी। तो जो उसमें टटपुंजिया आबादी थी, निम्न पूंजीवादी आबादी थी, वो डेमोक्रेटिक पार्टी, जो आज की ओबामा की पार्टी है, उसकी तरफ ड्रिफ्ट करके चली गई, शामिल हुई, और जो वर्किंग क्लास शामिल था पॉपुलिस्ट पार्टी में, वो उस समय ही, कुछ समय बाद वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी बनी 1920वीं सदी के शुरुआती दशक में, तो उसमें शामिल हुई। और इसके साथ पॉपुलिस्ट पार्टी खत्म हुई। डेमोक्रेटिक पार्टी में भी अभी तक एक पॉपुलिस्ट ट्रेंड है, वो पॉपुलिस्ट पार्टी से ही आता है, जो कि ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट जो चला था आज से कुछ साल पहले अमेरिका में, उसमें भी वो प्रकट हुआ था, लेकिन अभी हम उस पर विस्तार में चर्चा नहीं कर सकते। तो जो व्यवहारवादी दर्शन था वो एक प्रक्रिया में पैदा हुआ, छोटे मालिकों का एक प्रतिरोध आंदोलन के रूप में पैदा हुआ, और उसका जो गाइडिंग फिलॉसफी थी वही व्यवहारवादी दर्शन था। उसके तीसरे बड़े फिगर जॉन ड्यूई थे, उन्होंने व्यवहारवाद को और विकसित किया और उसको अपना एक संस्करण उसका पैदा किया जिसको इंस्ट्रूमेंटलिज्म उपकरणवाद, प्रोग्रेसिव एक्सपेरिमेंटेशन प्रगतिवादी प्रयोगवाद ये भी नाम दिया गया है, ऑपरेशनलिज्म भी नाम दिया है कुछ लोगों ने उसे। इसके अब बुनियादी चीजें क्या थी इसकी? इसकी पहली चीज ये थी, किसी भी चीज का, चाहे वो प्रकृति में हो या समाज में हो, किसी भी परिघटना का कोई भी सामान्य सिद्धांत नहीं रचा जा सकता है। सामान्यीकरण गलत है, सामान्य सिद्धांत किसी चीज का कोई यूनिवर्सल सिद्धांत नहीं रचा जा सकता है। तो पहला उसका यह था कि कोई थियरी नहीं हो सकती किसी चीज की, केवल मेथड हो सकता है। वो ये कहता है कि हम पास्ट का अध्ययन करके वर्तमान के बारे में कुछ नहीं जान सकते हैं। ड्यूई ने भी इस बात को कहा कि पास्ट जो है वो प्रेजेंट को पैदा नहीं करता है, पास्ट का अपने आप में वो प्रेजेंट को निर्धारित करने में उसकी कोई भूमिका, अतीत की वर्तमान को निर्धारित करने में कोई भूमिका नहीं होती है। और चूंकि अतीत की वर्तमान को निर्धारित करने में कोई भूमिका नहीं होती है, इसलिए अतीत में क्या हुआ इसको जानकर, इसका अध्ययन करके और उसका सामान्यीकरण करके कोई सिद्धांत नहीं निकाला जा सकता है, यह हो ही नहीं सकता है। तो किसी भी चीज का, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो, प्रकृति विज्ञान का क्षेत्र हो, उसमें कोई सामान्य सिद्धांत नहीं हो सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, और इसलिए वो बोलता है कि एक व्यवहारवादी को क्या करना चाहिए, एक व्यवहारवादी चीज को ऑब्जर्व करता है, किसी भी जो चीज हो रही है वर्तमान में उसको ऑब्जर्व करता है, एक टेंटेटिव आइडिया, एक आरजी विचार विकसित करता है, उस आरजी विचार के तौर पे, के आधार पे, अस्थाई विचार के रूप के आधार पे वो एक प्लान ऑफ एक्शन बनाता है और उस प्लान ऑफ एक्शन पे अमल करता है। वो प्लान ऑफ एक्शन अगर सफल हुआ तो उसको वो अपनाता है, अगर नहीं सफल हुआ तो फिर से नया ऑब्जर्वेशन करता है, फिर से एक आरजी विचार विकसित करता है, उसके आधार पर एक नया प्लान ऑफ एक्शन विकसित करता है, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। यानी कि ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर के जरिए आप अतीत से कुछ नहीं सीख सकते, आप वर्तमान में जो हो रहा है उसका प्रेक्षण करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उस ऑब्जर्वेशन के आधार पे आप एक आरजी विचार विकसित करते हैं, उस आरजी विचार के आधार पे आप एक प्लान ऑफ एक्शन, एक कार्यनीति विकसित करते हैं, और उसके आधार पे आप उसको अमल में लाते हैं, वो सफल होती है तो आप उसको अपनाते हैं, सफल नहीं होती तो आप फिर से नए सिरे से उस असफलता को स्टडी नहीं करते हैं, आप नए सिरे से एक नया प्रेक्षण करते हैं, नया प्रेक्षण करके आप एक नया टेंटेटिव आइडिया डेवलप करते हैं, उस नए टेंटेटिव आइडिया के आधार पर आप एक नई कार्य नीति डेवलप करते हैं, और इस तरीके से आप ट्रायल एंड एरर करते हुए आप अलग अलग स्ट्रेटजीज लगाते चलते हैं। लेकिन आप कोई जनरल थियरी नहीं होनी चाहिए इस तौर पर, यह विज्ञान एक विज्ञान विरोधी सोच थी, क्योंकि विज्ञान में आप हमेशा जनरल थ्योरी, विज्ञान का काम ही यही होता है, वो चीजों के बारे में सामान्यीकरण करता है, उसकी जनरल थ्योरी विकसित करता है। और व्यवहारवाद, क्योंकि सोशियोलॉजिज्म का भी एक असर व्यवहारवाद का उसके ऊपर जबरदस्त है, समाजशास्त्र में भी यही होता है, परिघटनाओं की सूची बनाई जाती है कि ये हुआ, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, डेवलपमेंट्स को और परिघटनाओं को रिकॉर्ड किया जाता है, उसकी लिस्ट तैयार की जाती है, लेकिन उसके आधार पर कोई सामान्य सिद्धांत विकसित नहीं किया जाता है। तो सिद्धांत के प्रति उसका एक शत्रुता है व्यवहारवाद की, कि कोई आम सिद्धांत नहीं होना चाहिए किसी चीज का। जो दूसरा प्रमुख, अच्छा हाँ, ये चीज किससे ली थी ड्यूई ने? ये चीज उन्होंने ली थी ह्यूम और कांट से। ह्यूम और कांट का जो एग्नोस्टिसिज्म था, उस एग्नोस्टिसिज्म की अतीत अज्ञेय है, कोई सामान्यीकरण नहीं हो सकता, आप एक टेंटेटिव आइडिया लेकर कुछ काम कर सकते हैं बस, तो ये ह्यूम और कांट से उन्होंने लिया था, ह्यूम और कांट के क्रिटिकल थॉट, क्रिटिकलिज्म और एग्नोस्टिसिज्म से, अज्ञेयवाद और आलोचनात्मक सिद्धांत से। दूसरा जो प्रमुख आप कह सकते हैं बुनियादी गुण था व्यवहारवाद का, वो ये था कि समाज और प्रकृति में कोई भी बदलाव वो क्रमिक होता है, समाज और प्रकृति में होने वाले बदलावों में कभी कोई लीप नहीं लगती है, छलांग नहीं लगती है, वो हमेशा क्रमिक तौर पे थोड़ा थोड़ा होता रहता है, उसमें कोई बड़ा क्वालिटेटिव लीप, कोई गुणात्मक छलांग समाज और प्रकृति के विकास में कभी नहीं लग सकती है। ये चीज उन्होंने ली थी डार्विन के एवोल्यूशन के सिद्धांत से। डार्विन ने कहा था कि प्रकृति में छलांगें नहीं लगती, देयर आर नो लीप्स इन नेचर। तो डार्विन के इस सिद्धांत और डार्विन का एवोल्यूशन का सिद्धांत भी यही था, जो लोग बायोलॉजी पढ़ते होंगे या मेडिकल प्रोफेशन में होंगे, जो शुरुआती एवोल्यूशनिस्ट थियरी थी वो ये थी कि एक प्रजाति से दूसरे प्रजाति में संक्रमण कैसे होता है, जो जीन्स होते हैं वो म्यूटेट होते हैं और म्यूटेट होने के साथ साथ नए ट्रेट्स, नए गुण जो है वो स्पीशीज ग्रहण करती जाती है, और इस प्रक्रिया में क्रमिक तौर पे एक प्रजाति से दूसरे प्रजाति में विकास होता है। ये जीव जंतुओं में भी होता है और ये पेड़ पौधों में भी होता है। बाद में हुए वैज्ञानिक शोध ने दिखाया कि ऐसा होता नहीं है, प्रकृति और विज्ञान दोनों में ही छलांगे लगती हैं। आज की जो एवोल्यूशनिस्ट थियरी है वो बताता है इस चीज को कि नियंडरथल, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस और उसके बाद होमो सेपियंस सेपियंस के आने की प्रोसेस में जेनेटिक म्यूटेशंस के साथ ट्रेट्स जब इकट्ठा होते जाते हैं तो पुराने शेल में यानी पुराने प्रजातीय रूप में वो बाधित होने लगते हैं। वहां से कोई एक एब्रप्ट चेंज आता है, जैसे अचानक नाक लंबी हो गई एक किसी एक जेनरेशन में, या भौहें गायब हो गई, या कान छोटे हो गए, इस तरह का कुछ होता है, तो वो एक लीप लगता है, क्योंकि जो जेनेटिक म्यूटेशंस के जरिए जो नए गुण एकत्र होते हैं वो पुराने रूप में अब अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर सकते, तो वो रूप जैसे शेल फाड़ के बाहर आ जाता है, नया जो कंटेंट होता है, जो नई अंतर्वस्तु होती है वो पुराने रूप की शेल को, उसके जैसे अंडे का छिलका होता है उसको फोड़ के वो बाहर आ जाता है। तो इस रूप में छलांगे इतिहास में भी लगती हैं, समाज में भी लगती हैं और प्रकृति में भी लगती हैं। आप पानी उबालते हैं तो वो एक क्रमिक प्रक्रिया से उसका टेम्परेचर बढ़ते जाता है, लेकिन जैसे ही वो 100 डिग्री पे पहुंचता है एक क्वालिटेटिव लीप लगती है, लिक्विड वेपर में तब्दील हो जाता है। तो हर प्रक्रिया में आप समाज में प्रकृति में देख सकते हैं कि क्रमिक विकास तो ऑब्वियसली होता है, लेकिन क्रमिक विकास एक प्रक्रिया के बाद जाकर संतृप्त बिंदु पे पहुंच जाता है, सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाता है, और वहां पर एक लीप लगती है। लेकिन व्यवहारवाद का ऐसा मानना नहीं था, व्यवहारवाद का मानना था कि हमेशा क्रमिक परिवर्तन ही होता है, क्रमिक परिवर्तन ही प्रकृति में भी होता है, समाज में भी होता है, उसमें कभी कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हो सकता। यानी कि समाज के रूप में इसका नतीजा क्या है कि समाज में कभी कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हो सकता, छोटे छोटे सुधारों के जरिए परिवर्तन होता रहता है, हमेशा छोटे छोटे सुधारों के जरिए क्रमिक परिवर्तन होता रहता है। तीसरी चीज जो प्रमुख गुण था व्यवहारवाद का, यह कार्य कारण के सिद्धांत में यकीन नहीं करता है, कार्य कारण सिद्धांत मतलब कॉजेशन के प्रिंसिपल, कॉज एंड इफेक्ट के प्रिंसिपल में यकीन नहीं करता है। यह मानता है कि जो भी परिघटना होती है उसका कारण संधान असंभव है, उसका कारण नहीं बताया जा सकता है। जो परिघटना होती है, और जब इसी से पहली चीज जुड़ती भी है, जब किसी परिघटना का कारण नहीं बताया जा सकता है तो उसके अतीत का अध्ययन करना व्यर्थ है, इसलिए बस आप वर्तमान में टेंटेटिव अपना एक आइडिया लेकर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, प्रयोग करते जाते हैं बस, क्योंकि कोई कॉजेशन हो नहीं सकता, इसलिए आप एक असफल प्रयोग का कोई कारण भी नहीं, कारण की व्याख्या करने की भी आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई कारण होता नहीं है, कोई कॉजेशन होता नहीं है, सामाजिक परिघटना में कारण नहीं होता है, सामाजिक परिघटना होती जाती है। तो यह तीसरा बड़ा व्यवहारवाद का सिद्धांत था। चौथा सिद्धांत यह था जो ड्यूई ने समाज की अवधारणा दी। ड्यूई ने जो समाज की अवधारणा दी वो ये था कि ड्यूई ने कहा कि समाज डिस्पेरिट को क्या बोलेंगे, असमान या असंगत समूहों का एक कलेक्शन होता है। ड्यूई ने बोला कि सोसाइटी इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्पेरिट ग्रुप्स, असमान असंगत समूहों का एक समुच्चय होता है। अगर आपने एनिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ी है तो अंबेडकर ने भी यही लिखा है एनिलेशन ऑफ कास्ट में, और इस डिस्पेरिट ग्रुप्स में सब कोई आता है, इसमें एक बेसबॉल क्लब आता है, इसमें एक गैंग ऑफ रॉबर्स आता है, एक लुटेरों का गिरोह आ सकता है, इसमें एक ट्रेड यूनियन आ सकती है, इसमें एक पॉलिटिकल पार्टी आ सकती है, इसमें एक क्लब आ सकता है, इसमें सब कुछ आता है, एक एसोसिएशन आ सकता है कैपिटलिस्ट का, कुछ भी आ सकता है। तो ये इसीलिए डिस्पेरिट ग्रुप्स है, तो डिस्पेरिट ग्रुप्स का कलेक्शन है। ड्यूई के सिद्धांत का मकसद क्या था, समाज को किसी भी रूप में वर्ग विश्लेषित करने के वो खिलाफ थे, वो मानते थे कि समाज में वर्ग विश्लेषण के जरिए समाज को नहीं समझा जा सकता है, इसलिए वो बोलते थे कि समाज असमान समूहों का एक समुच्चय, डिस्पेरिट ग्रुप्स का कलेक्शन, और इनके बीच में कोई रियल कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो सकता है। रियल शब्द पे यहां गौर करने की जरूरत है, उनका कहना था कि इनके बीच में कोई वास्तविक अंतर विरोध नहीं होता है, इनके बीच में परसीव्ड अंतर विरोध होता है, परसीव्ड मतलब प्रतीतिगत, ऐसा लगता है कि अंतर विरोध है। मिसाल के तौर पर ड्यूई कहते हैं कि मजदूर और पूंजीपति में कोई रियल कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, उनके बीच में प्रतीतिगत अंतर विरोध है, और उस अंतर विरोध को सुलटाने के लिए किसकी जरूरत होती है, द ग्रेट मीडिएटर। यहां से हम पांचवें सिद्धांत पे आते हैं व्यवहारवाद के, वो कहते हैं कि ये ग्रेट मीडिएटर कौन है, महान मध्यस्थकर्ता, ये महान मध्यस्थकर्ता कौन है, वो है राज्य सत्ता, सरकार। हम लोग फर्क करते हैं सरकार और राज्य सत्ता में, लेकिन ड्यूई उसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। राज्य सत्ता या सरकार वो ग्रेट मीडिएटर है, या वो सबसे जिसको उन्होंने कहा मोस्ट रैशनल एक्टर, सर्वाधिक तार्किक अभिकर्ता। समाज में सर्वाधिक तार्किक शक्ति क्या है, वो सरकार है, राज्य सत्ता है। और समाज में ये जो प्रतीतिगत अंतर्विरोध है इनको हल करने के लिए जो राज्य सत्ता है वो मीडिएशन करती है, मध्यस्थता करती है। इसलिए वो कभी भी ड्यूई रेडिकल मजदूर आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, वो ट्रेड यूनियन बनाने के पक्ष में थे, लेकिन ट्रेड यूनियन बस मालिकों के साथ नेगोशिएट करेगी और उस नेगोशिएशन में मध्यस्थता सरकार करेगी और उसके जरिए इसको बिना इस प्रतीतिगत अंतर्विरोध को सुलटा दिया जाएगा। यानी कि वर्ग अंतर्विरोध नहीं, वर्ग संघर्ष नहीं, बल्कि असमान समूहों के बीच मौजूद एक प्रतीतिगत अंतर्विरोध, जिसे कि हल करने के लिए एक महान मध्यस्थकर्ता के रूप में सरकार रहती है, वो सरकार हल करेगी। इसके संघर्ष के रूप में या अंतर्विरोध के रूप में समाज को नहीं समझा जा सकता है। देर आर नो रियल कॉन्ट्रडिक्शंस, वास्तविक अंतर्विरोध होते ही नहीं। तो ये यहां से ये, क्योंकि पांचवा ये जो गुण है व्यवहारवाद का, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप डॉक्टर अंबेडकर के पूरे पॉलिटिकल प्रैक्टिस को समझना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो गुण है वो ये है कि राज्य सत्ता सर्वाधिक तार्किक अभिकर्ता होती है और समाज में हर विकास, हर परिवर्तन ये राज्य सत्ता के जरिए होता है। इसको अंबेडकर ने महाड़ सत्याग्रह के वक्त उन्होंने इसको लिखा भी था, अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में बोला भी था। एक सेकंड, वो मैं आपको कोट सुनाना चाहूंगा जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा। ये इंग्लिश में मैं अनुवाद करके बोल रहा हूं इसलिए थोड़ी थोड़ी रफ्तार धीमी होगी मेरी। एक और कारण, यहां से मैं कोट कर रहा हूं अंबेडकर को, ये पहला महाड़ सम्मेलन जो हुआ था मार्च 1927 में, उसमें उनका अध्यक्षीय भाषण का हिस्सा है। एक और कारण जिसके कारण मैं कहता हूं कि अछूत लोगों को व्हाइट कॉलर्ड नौकरियां अपनानी चाहिए, वो ये है कि सरकार सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली संस्था होती है। जिस रूप में सरकार सोचती है उसी रूप में चीजें समाज में होती हैं। लेकिन हमको यह भूलना नहीं चाहिए कि सरकार की जरूरतें पूरी तरीके से सरकार के कर्मचारियों पर निर्भर करती है। सरकार का दिमाग वास्तव में इसके कर्मचारियों का दिमाग होता है। इससे एक बात स्पष्ट तौर पर निकलती है कि अगर हम सरकार के जरिए कुछ करवाना चाहते हैं तो हमें अपने आप को सरकारी सेवा में रत करना चाहिए, सरकारी सेवा में जाना चाहिए। ये ड्यूवियन प्रैग्मेटिज्म जो अंबेडकर यहां बोल रहे हैं, और उनके जो एक अंबेडकरवादी जो उनके बायोग्राफर थे खैरमोड़े, जिन्होंने 14 वॉल्यूम में अंबेडकर की जीवनी लिखी है, उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि अगर आपको अंबेडकर के राजनीतिक विचारधारा और दर्शन को समझना है तो आपको ड्यूई को समझना पड़ेगा। बिना जॉन ड्यूई को समझे हुए आप अंबेडकर को नहीं समझ सकते, क्योंकि अंबेडकर के पूरे पॉलिटिकल प्रैक्टिस में बहुत अनिरंतरता है। कभी वो कोई बात कहते हैं, कभी वो कोई बात कहते हैं, कभी वो कोई बात कहते हैं। तो कई लोग इसलिए अनजाने में अंबेडकर पे अवसरवाद का आरोप लगा देते हैं कि अंबेडकर अवसरवादी थे। एक बार उनको कहा गया कि आपके अंदर कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, तो अंबेडकर ने जवाब दिया कंसिस्टेंसी गधे की खासियत होती है, इंसान कंसिस्टेंट नहीं होता, गधे कंसिस्टेंट होते हैं। तो एक मामले में, लेकिन अगर देखा जाए कि अंबेडकर की पूरी पॉलिटिकल प्रैक्टिस को अगर आप ड्यूई का व्यवहारवाद समझ लें तो आप पाएंगे कि अंबेडकर की पूरी राजनीतिक प्रैक्टिस बहुत ही कंसिस्टेंट थी, वो कभी भी व्यवहारवाद के दायरे से आगे नहीं गए, जिस पर मैं आगे आऊंगा। लेकिन अभी मैं आखिरी गुण पे आता हूं व्यवहारवाद के। व्यवहारवाद का आखिरी गुण यह है कि राज्य सत्ता या सरकार अपने प्रयासों के जरिए समाज में जो अंतर्विरोधों का निवारण करती है और समाज में जो अपने अफर्मेटिव एक्शन के जरिए प्रगति या विकास करती है, उसके बाद भी समाज में सारे जो अंतर्विरोध होते हैं, जो सारे प्रतीतिगत अंतर्विरोध जो होते हैं, वो प्रतीतिगत अंतर्विरोध खत्म नहीं होते हैं। व्यक्ति से व्यक्ति के रिश्ते में जनवाद का तत्व हो, व्यक्ति से व्यक्ति के रिश्ते में मानवतावाद हो, इसके लिए जरूरी है कि पूरे समाज का एक कॉमन फेथ होना चाहिए, एक साझा धर्म होना चाहिए। वो साझा धर्म कौन सा होना चाहिए? वो साझा धर्म वो होना चाहिए जो समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व पे यकीन करता हो। यहां एक बार फिर, अगर आपने एनिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ा है अंबेडकर का, तो आपको याद होगा कि उसमें अंबेडकर एक जगह बात करते हैं कि दो प्रकार के धर्म होते हैं। एक होता है हैबिचुअल धर्म, जो कि रूल्स पे आधारित होता है, कि धर्म के संहिता में कुछ लिखा हुआ है, आप आदतन उस नियम को बस लागू करते चलते हैं। और एक धर्म जो होता है वो बौद्धिकता पूर्ण तरीके से, वो मानवतावाद, जनवाद और वो मॉरल प्रिंसिपल्स को मानता है। तो दूसरा होता है सिद्धांत आधारित धर्म। तो सिद्धांत आधारित धर्म जो होता है वो डॉगमा पे आधारित नहीं होता है, वो किसी धर्म संहिता के लिखे हुए जड़ित पत्थर की लकीर जैसे नियमों पे आधारित नहीं होता है, जिसको कि लोग आदतन फॉलो करते हैं, ये डॉक्सा पे आधारित होता है, प्रिंसिपल्स पे आधारित होता है। और ये इसलिए मानवतावादी हो सकता है, जनवादी हो सकता है और वैयक्तिक स्वतंत्रता को मान सकता है। इसलिए अंबेडकर कहते हैं कि मैं, जब वो लिखते हैं पूरा हिंदू धर्म का नकार करते हैं तो आखिरी में वो स्पष्ट करते हैं अंबेडकर कि मैं धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि धर्म होना चाहिए। एक और जगह उन्होंने कहा, इट पेन्स मी टू, मुझे ये देख के बहुत दुख होता है कि आज जो नौजवान आबादी है वो धर्म से दूर जा रही है, क्योंकि धर्म के बिना कोई भी नागरिक सरकार, सिविल गवर्नमेंट संभव नहीं है। ये अंबेडकर का कोट है। और अंबेडकर ने इसी रूप में एनिलेशन ऑफ कास्ट में भी कहा कि एक नियम आधारित या डॉगमा आधारित धर्म नहीं, जिसको लोग आदतन आंख मूंद के फॉलो करें, बल्कि एक सिद्धांत आधारित धर्म जो कि मानवतावादी और जनवादी हो। इस तौर पे जो छठा टेनेट है ड्यूयन प्रैग्मेटिज्म का, वो ये है कि राज्य सत्ता के तमाम प्रयासों के बावजूद समाज में जो प्रतितिगत अंतर्विरोध बचे रह जाते हैं उसको खत्म करने के लिए, जिसको एक शब्द दिया जॉन ड्यूई ने, एंडोस्मोसिस। इस शब्द को भी एनिलेशन ऑफ कास्ट अगर आप पढ़े तो आपको याद होगा अंबेडकर ने भी इस्तेमाल किया है, एंडोस्मोसिस, कि एंडोस्मोसिस होनी चाहिए। दो चीज को वो रखते हैं कि एक होता है समाज में अलग अलग ये जो डिस्पेरेट ग्रुप्स हैं इनमें आपसी सहकार और संवाद हो, ये है एंडोस्मोसिस। और एक होता आइसोलेशन, जिसमें ग्रुप्स बटे रहते हैं और आपस में उनके कोई संवाद का सेतु नहीं होता है। तो वो कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, एंडोस्मोसिस होनी चाहिए सोसाइटी में। अगर एंडोस्मोसिस नहीं होगी तो इसी प्रकार की वर्ण और जाति व्यवस्था पैदा होगी, जो क्लोज्ड क्लास होंगे, बंद वर्ग होंगे। तो यहां से वो कहते कि इस एंडोस्मोसिस को किस तरीके से पैदा किया जाए। ये सच है कि सरकार ही सबसे तार्किक अभिकर्ता है, लेकिन सरकार अपने तमाम प्रयासों के बावजूद इस एंडोस्मोसिस को नहीं पैदा कर सकती है, इसके लिए कॉमन फेथ की जरूरत है। ये कॉमन फेथ शब्द कहां से आया? ड्यूई ने 1897 में एक लेख लिखा था जिसका नाम था कॉमन फेथ, जिसमें ड्यूई कहते हैं कि मेरी किसी पराभौतिक सत्ता में मेरी आस्था नहीं है, मैं नहीं मानता हूं कोई, मुझे नहीं पता कि कोई पराभौतिक सत्ता है या नहीं, लेकिन इससे मैं ये नतीजा नहीं निकालता हूं कि धर्म नहीं होना चाहिए। धर्म होना चाहिए, धर्म इसलिए होना चाहिए कि वो समाज में मानवतावादी, जनवादी, समानता मूलक संबंध व्यक्तियों के बीच में बने, इसके लिए एक मानवतावादी धर्म की जरूरत है। तो ये छह बेसिक गुण हैं व्यवहारवाद के, जिन पर अंबेडकर ने हमेशा अमल किया। इसको अब अंबेडकर की प्रैक्टिस से हम देख सकते हैं। अंबेडकर ने मुख्य तौर पर चार रणनीतियों का इस्तेमाल किया अपने पूरे राजनीतिक जीवन में। 1916 में लिखे उनके कास्ट के पेपर, हालांकि वो अकादमिक काम था, लेकिन हर अकादमिक काम राजनीतिक होता है, चाहे उस अकादमिक व्यक्ति को यह पता हो या ना हो, लेकिन हर अकादमिक काम का एक राजनीतिक चरित्र होता है। 1916 में जो उन्होंने पेपर लिखा कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, कास्ट मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, और वहां से लेकर 1956 में धर्म परिवर्तन और उसके बाद उनकी मृत्यु तक, जो 40 वर्षों का अंबेडकर का राजनीतिक जीवन था, उस राजनीतिक जीवन में उन्होंने बहुत सारी चीजें की, लेकिन उनको मुख्य तौर पर चार रणनीतियों में बांट सकते हैं। जो पहली रणनीति थी वो थी आइडेंटिटी बिल्डिंग, अस्मिता निर्माण। अंबेडकर के अकादमिक काम, जिसमें उन्होंने कास्ट का मूल बताया है कि कास्ट कैसे पैदा हुई, शूद्र, हु वर द शूद्रास, हु वर द अनटचेबल्स एंड हाउ डिड दे बिकम अनटचेबल, ये सारी रचनाओं में अंबेडकर ने जो विश्लेषण पेश किया है, निश्चित तौर पे तमाम अकादमिकों ने उसका खंडन भी किया है और दिखलाया है कि ऐतिहासिक प्रमाणों के तौर पे वो सिद्धांत सही नहीं ठहरता, लेकिन ऐसे अकादमिक लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि अंबेडकर का मकसद कोई अकादमिक रचना लिखना नहीं था। अंबेडकर का एक पॉलिटिकल मकसद था, और वो पॉलिटिकल मकसद था आइडेंटिटी बिल्डिंग। अंबेडकर ने जो ग्रेडेड इनइक्वालिटी का सिद्धांत दिया था कि जाति व्यवस्था में एक संस्तरीबद्ध असमानता है, तो ये संस्तरीबद्ध असमानता ऐसी है जिसकी वजह से जो नीचे है वो भी कास्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसके नीचे भी कोई है। इसलिए शूद्र कास्ट सिस्टम के खिलाफ नहीं लड़ेगा क्योंकि उसके नीचे अछूत है, वैश्य कास्ट सिस्टम के खिलाफ नहीं लड़ेगा, हालांकि वो भी ब्राह्मणवाद के उत्पीड़न का शिकार है, शूद्र भी ब्राह्मणवाद के उत्पीड़न का शिकार है, वो नहीं लड़ेगा वैश्य क्योंकि उसके नीचे शूद्र और दलित है, और क्षत्रिय तो उनके साथ गठबंधन ही रहा है, क्षत्रिय और ब्राह्मण जो वर्ग ऊपर था शुरू से। तो अंबेडकर कहते हैं कि ये ग्रेडेड इनइक्वालिटी ऐसी है, इस ग्रेडेड इनइक्वालिटी के कारण कास्ट सिस्टम के जो लोग विक्टिम हैं, जो उसके शिकार हैं, वो भी उसके खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट नहीं हो पाते हैं। इसके लिए जरूरी यह है कि उनकी एक साझा पहचान। तो इसलिए साझा पहचान का निर्माण करने के लिए अंबेडकर ने सबसे पहले बात की बहुजन समाज की, जिसमें उन्होंने दलितों और शूद्र जातियों की एकजुटता की बात की। उसके बाद उन्होंने जो हूवर द शूद्रास किताब लिखी, उसमें कहा कि शूद्र वास्तव में पहले क्षत्रिय थे, कुछ क्षत्रियों को ब्राह्मणों ने नीचे धकेल दिया और उन्हें शास्त्रीय दर्जा उनका नीचे कर दिया और इसकी वजह से वो शूद्र बन गए, वरना ओरिजिनली वो क्षत्रिय थे। ऐतिहासिक तौर पर यह गलत है, लेकिन यह एक आइडेंटिटी बिल्डिंग करता है। हु आर द अनटचेबल्स किताब में वे लिखते हैं कि अनटचेबल्स कौन थे, वो थे ब्रोकन मैन। दलित शब्द का यही अर्थ होता है, दलित मतलब टूटा हुआ, ब्रोकन मराठी में। तो दलित ब्रोकन मैन, ये ब्रोकन कैसे हुए? अंबेडकर ने कहा कि भारत के ऊपर मुस्लिम विजय या ब्रिटिश विजय के बहुत पहले भारत की एक हिंदू विजय हुई, हिंदू सभ्यता, आर्यन सभ्यता ने भारत को विजित किया और उसने जो है यहां के मूल जो आबादी थी उसको पेरिफेरलाइज किया, उसको अधीनस्थ किया, उसको परिधिगत बनाया और वो जो कम्युनिटीज थी वो विघटित हो गई, विखंडित हो गई, जिसकी वजह से वो ब्रोकन मैन, इधर उधर रोम करने वाले, घूमने वाले, वो ब्रोकन मैन में तब्दील हो गए। और जब वैदिक सभ्यता ठीक से स्थापित हुई और सीडेंटराइज हुई, यानी कि एक जगह बस गई, तो उसके साथ अपने गांवों के इर्द के पेरिफेरी पे इन्हीं ब्रोकन मैन या दलित आबादी को वैदिक आर्यंस ने बसाया। किस लिए? ताकि जो कबीले अभी वैदिक आर्यंस जीत नहीं पाए थे उनके हमलों से रक्षा की जा सके। ये ब्रोकन मैन ही जब 5th century BC, 6th century BC में बुद्धिज्म और ये जो मोनोथिस्टिक धर्म थे, जैनिज्म बुद्धिज्म, इनका उभार हुआ, तो सबसे पहले बुद्ध के फॉलोअर जो है वो ये ब्रोकन मैन ही बने और एक समय के लिए बुद्ध धर्म जो है वो विजयी हुआ और बुद्ध धर्म के विजयी होने के साथ ये ब्रोकन मैन और शूद्र ये जीत गए। और उन्होंने कहा कि जो मौर्य किंगडम था वो वास्तव में शूद्र, अशोक को बताते हैं कि अशोक शूद्र था, मौर्यन एम्पायर शूद्र एम्पायर थी। अभी इसके इतिहास पे मत जाइएगा, ये ऐतिहासिक तौर पे ये बात कहीं सही नहीं ठहरती है, लेकिन अंबेडकर का जो प्रोजेक्ट था आइडेंटिटी बिल्डिंग का, उसके तहत वो हिस्ट्री लिख रहे थे और उसमें वो लिखते हैं कि ये नागा किंग था अशोका और उस दौरान जो है वो बुद्धिज्म की पताका चारों तरफ फहराई गई। उसके बाद एक ब्राह्मणिकल रिएक्शन हुआ जिसमें कुछ ब्राह्मणवादी सेक्ट पैदा हुए जिन्होंने बुद्ध की टीचिंग से पॉजिटिव्स को चुरा लिया, जिसमें गौहत्या, जीव हत्या, ये सारी चीजें थी, और उसको चुरा के वैष्णव, इस तरह के सेक्ट्स पैदा हुए जो उससे भी ज्यादा वेहमेंटली, यानी कि बुद्धिज्म से भी ज्यादा मजबूती से निरामिष भोजन का प्रचार करने लगे, गौ हत्या का विरोध करने लगे, जीव हत्या का विरोध करने लगे, यहां तक कि वो उसको एक नए एक्सट्रीम पे लेते गए। और इसके साथ ब्राह्मणिकल एक रिएक्शन हुआ, उसके बाद वापिस एक अच्छी खासी आबादी हिंदुइज्म के फोल्ड में लौटी, लेकिन ब्रोकन मैन नहीं लौटे, दलित नहीं लौटे। दलित चूंकि नहीं लौटे इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों को, चूंकि उन्होंने भी, दोनों चीज लिखते हैं अंबेडकर, वो कहते हैं कि दलितों ने भी ब्राह्मणों को एक तरीके से अपने फोल्ड से बाहर कर दिया था, वो अपनी सेरेमनीज में कभी ब्राह्मणों को नहीं बुलाते थे, कुछ नहीं करते थे, क्योंकि वो बुद्धिस्ट उसको पूरी तरीके से मानते थे, और ब्राह्मण जो थे वो दलितों के बुद्धिस्ट से वापिस हिंदू न बनने के कारण उन्होंने उनके ऊपर अनटचेबिलिटी थोप दी, उनको अछूत घोषित कर दिया। ये अछूत प्रथा के पैदा होने का अंबेडकर का विश्लेषण है। निश्चित तौर पे विश्लेषण सही नहीं है, ऐतिहासिक तौर पे यह तथ्यतः सही नहीं ठहरेगा, लेकिन इसके पीछे का पॉलिटिकल कारण समझना जरूरी है। अंबेडकर के जीवन काल में ही जो महाराष्ट्र की ही तमाम दलित जातियां थी उनमें ही आपस में काफी कॉन्ट्रडिक्शन रहते थे, जैसे मांग और महाड़ों में झगड़ा होता था, चंभारों और महाड़ों में झगड़ा होता था, अलग अलग ये जो दलित जातियां थी वो भी आपस में लड़ती रहती थी। तो इसकी वजह से उनका यह था कि पूरी जो दलित अछूत आबादी है उसको एक सिंगुलर आइडेंटिटी दी जानी चाहिए और वो आइडेंटिटी उन्होंने अनटचेबल्स, हु आर दे एंड हाउ दे बिकेम अनटचेबल में दी, जिसमें उन्होंने कहा ये बुद्धिस्ट, ये प्राचीन काल से बुद्ध के फॉलोअर रहे हैं और आज तक ये उसी तौर पे उनकी आइडेंटिटी बननी चाहिए। इस तौर पे एक प्रोजेक्ट ये था जो कि आप कह सकते हैं कि अंबेडकर का एक आइडेंटिटी बिल्डिंग का, अस्मिता निर्माण का प्रोजेक्ट था। और गेल ओमवेत एक लेफ्ट अंबेडकराइट इंटेलेक्चुअल, उन्होंने कहा कि अंबेडकर अपने मृत्यु से कुछ वर्ष पहले एक कास्ट की ग्रैंड थ्योरी पे काम कर रहे थे, एक व्यापक थ्योरी पे काम कर रहे थे जो कि रेशियल एथनिक थ्योरी थी, जो कि हालांकि शुरू से अंबेडकर ने रेशियल थ्योरी का विरोध किया था, क्योंकि शुरू में जो अंग्रेज आए थे उन्होंने ये थ्योरी दी थी कि कास्ट रेशियल फर्क से पैदा हुआ है, नस्ली चीज, जाति। अंबेडकर ने शुरू से इसका विरोध किया था, लेकिन अपने जीवन के अंतिम समय में वे स्वयं एक रेशियल एथनिक नस्ली जातीय थियरी पे काम कर रहे थे कि कास्ट किस तरीके से पैदा हुई, जिसमें उन्होंने पहली बार यह बात बोली कि हिंदू एक कॉन्क्वेस्ट हुआ था, ब्रिटिश या मुसलमान विजय से पहले एक हिंदू कॉन्क्वेस्ट हुआ था भारत का। तो यहां से मतलब आप कह सकते हैं कि एक आइडेंटिटी बिल्डिंग का पूरा प्रोजेक्ट अंबेडकर ने हाथ में लिया था, जिसका मकसद था ग्रेडेड इनइक्वालिटी से लड़ना। दूसरा जो उनका राजनीतिक एक्टिविज्म था, जिसका एक हिस्सा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स था, उस पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे, जिसकी शुरुआत 1919 में हुई जब अंबेडकर भारत लौट आए थे। बाद में फिर गए ब्रिटेन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने, लेकिन जिस वक्त वो भारत में थे 1919 में साउथ बोरो कमेटी आई थी, जिसका काम था भारत में चुनाव के कॉन्स्टिट्यूएंसी को, इलेक्टोरल फ्रेंचाइज को निर्धारित करना। उसी के आधार पर बाद में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुए थे। उससे पहले साउथ बोरो कमेटी आई थी स्टडी करने के लिए कि इलेक्टोरेट कैसे बांटा जाए, किस तरीके से, जैसे कम्युनल अवार्ड देने के लिए कि मुसलमानों का अपना सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, सिखों का अपना सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, हिंदुओं का अपना सेपरेट इलेक्टोरेट होगा। तो वो इलेक्टोरेट कैसे डिफाइन किया जाए, उसको परिभाषित कैसे किया जाए, इन्हीं चीजों का अध्ययन करने के लिए साउथ बोरो कमेटी आई थी और उसके सामने टेस्टिमनी देने के लिए अंबेडकर को बुलाया गया। अंबेडकर ने उस टेस्टिमनी में दो बातें रखी। उन्होंने कहा कि या तो पहली बात उन्होंने ये रखी कि भारत में हिंदू समाज का जो बंटवारा है वो बंटवारा ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण के बीच का बंटवारा उसमें प्रमुख नहीं है, प्रमुख बंटवारा है टचेबल और अनटचेबल, स्पृश्य और अस्पृश्य के बीच का बंटवारा, और इसलिए अस्पृश्य जो है वो एक अलग कम्युनिटी बनते हैं और उनको कम्युनल अवार्ड मिलना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने दो चीजें कही कि या तो आप दलित आबादी को सेपरेट इलेक्टोरेट दो और या फिर उनको रिजर्व सीट दो। अभी ये दोनों ऑप्शन लेके अंबेडकर चल रहे थे। इसके बाद 1924 में अंबेडकर जो है वो बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाते हैं। बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाने के बाद वो साइमन कमीशन उस समय आता है भारत, और साइमन कमीशन के सामने वो एक प्रपोजल रखते हैं बहिष्कृत हितकारिणी सभा के साथ की तरफ से। उस प्रपोजल में वो रखते हैं कि आप हमें रिजर्व सीट दो, लेकिन रिजर्व सीट पे हम तभी मानेंगे जब आप दलितों को सार्विक मताधिकार दो, पूरी जनता को नहीं लेकिन सिर्फ दलितों को आप सार्विक मताधिकार प्लस आरक्षित सीट दो, और अगर आप सार्विक मताधिकार और आरक्षित सीट देने को दलितों को तैयार नहीं है तो आप हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दो। साइमन कमीशन ने यह बात मानी कि वो आरक्षित देने सीट देने को तैयार हो गया, कि आरक्षित सीट जो है वो दलितों को दी जाएगी, लेकिन सार्विक मताधिकार देने के लिए साइमन कमीशन तैयार नहीं हुआ। साथ में साइमन कमीशन ने यह भी कहा कि रिजर्व सीट पे जो दलित कैंडिडेट खड़ा होगा चुनाव लड़ने के लिए, उस दलित कैंडिडेट को पहले अपनी अपने लिए एक योग्यता का प्रमाण पत्र लेना होगा जो प्रांत का गवर्नर है उससे, राज्यपाल से। तो राज्यपाल से जो दलित योग्यता का प्रमाण पत्र लेके आएगा वही इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। क्लियर है? योग्यता का प्रमाण पत्र में किस आधार पर दिया जाएगा? उसका मूल आधार था संपत्ति, जिसके पास निजी संपत्ति है वही खड़ा हो पाएगा। इससे अंबेडकर काफी नाराज हुए, लेकिन वो कभी भी सरकार के प्रति कोई कन्फ्रंटेशनल अप्रोच नहीं अपनाते थे, मतलब कोई ओपन विरोध का अप्रोच सरकार, चाहे वो कोई सरकार हो, चाहे वो ब्रिटिश सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, चाहे कोई सरकार हो, उससे कभी ओपन कन्फ्रंटेशन नहीं लेते थे, क्योंकि ड्यूवियन प्रैग्मेटिज्म का बुनियादी पूर्वाग्रह ही यही है कि सरकार सबसे तार्किक अभिकर्ता है। ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हैं कि सरकार का आप मन चेंज करें। मन किससे चेंज करेंगे? आप अपनी कम्युनिटी के बौद्धिक वर्ग को, बुद्धिजीवी वर्ग को सरकार की सर्विस में भेजिए। इसीलिए अंबेडकर की हर राइटिंग में आप पाएंगे कि इंटेलेक्चुअल्स की भूमिका पे बहुत जोर होता था। एनिलेशन ऑफ कास्ट में भी वो कहते हैं कि, उनका एक कोट है जिसमें वो कहते हैं कि आप जो है, एक सेकंड बताता हूं, वो काफी इल्यूमिनेटिंग कोट है। मैं ढूंढ के आपको बता दूंगा अभी, उसको मेरे को याद ही है कोर्ट में, आपको बता देता हूं। वो बताते हैं कि यह बात सच है कि इतिहास व्यक्ति अकेला नहीं बनाता, लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि इतिहास निर्माता की भूमिका में हमेशा समाज का बुद्धिजीवी वर्ग होता है। बुद्धिजीवी वर्ग ही वैंगार्ड होता है समाज का। वो इस संदर्भ में बात कर रहे थे कि हिंदू धर्म के भीतर रहते हुए जाति नहीं टूट सकती क्योंकि ब्राह्मण इसके लिए तैयार नहीं होंगे, और ब्राह्मण ही जो कि सामाजिक सुधार आंदोलन के नेतृत्व में है, इसलिए कोई भी सामाजिक सुधार हिंदू धर्म में ऐसा नहीं हो सकता जिससे जाति खत्म हो, क्योंकि ब्राह्मण ही बुद्धिजीवी वर्ग है और वही नेतृत्व करेगा, क्योंकि हर समाज में बुद्धिजीवी वर्ग ही नेतृत्व करता है और सरकार का के दिमाग का काम वही करता है। इसलिए बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका पे उनका एक अनालोचनात्मक भरोसा था। हालांकि यह भरोसा उनका 1955-56 में टूटा था जब उन्होंने कहा मेरे अपने ही लोगों ने मुझे धोखा दिया, जब वो रेफर कर रहे थे कि वे लोग जो सत्ता में पहुंच गए दलित जातियों से, जो कि ब्यूरोक्रेट बन गए, वो अब दलित जाति की मुक्ति से उनका कोई रिश्ता नहीं रह गया, वो उसको पूरी तरह से भूल चुके हैं और वो अपने स्वार्थ के आधार से सारा काम कर रहे हैं। बहरहाल, तो साइमन कमीशन ने जब उनके प्रस्ताव को नहीं माना और अधूरे तौर पर बस माना, तो उसका कोई कन्फ्रंटेशन अंबेडकर ने नहीं किया। इसी बीच मार्च 1927 में आरबी मोरे नाम के एक दलित एक्टिविस्ट थे, उनके पहलकदमी पे और वहां के महाड़ के कई अन्य दलित नेताओं की पहलकदमी पे महाड़ में एक कॉन्फ्रेंस हुई, बैकवर्ड क्लासेस कॉन्फ्रेंस हुई मार्च में, पहली कॉन्फ्रेंस जो हुई। उस कॉन्फ्रेंस में वो अंबेडकर को बुलाकर सम्मानित करना चाहते थे और अंबेडकर से चाहते थे कि वे अध्यक्षता करें सम्मेलन की। उसके लिए वो प्रस्ताव को लेकर 1923-24 में ही अंबेडकर के पास गए थे, लेकिन अंबेडकर तुरंत इस बात पर निर्णय नहीं ले पा रहे थे। उसके कई कारण थे, उन कारणों में मैं अभी नहीं जाऊंगा, अगर डिस्कशन में आएगा तो उन कारणों पर चर्चा कर लेंगे। लेकिन उस पर 1927 में जाके अंबेडकर तैयार हुए और मार्च में फिर वो महाड़ गए। उसकी कहानी सबको पता है, महाड़ का सम्मेलन जो हुआ उसमें दूसरे दिन जो है, उस समय 1924 में एक बोले रेजोल्यूशन पास हुआ था वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्बे के, बोले रेजोल्यूशन में यह पास हुआ था कि सभी जगह जो सार्वजनिक पानी पीने की जगह है, सार्वजनिक रोड है, सारी इस तरह की जगह है, वहां पर दलितों को चलने की पूरी आजादी होनी चाहिए। उसको कोई ये नहीं कह सकता कि तुम यहां नहीं आ सकते हो, सार्वजनिक जगह पे उनको पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इस बोले रेजोल्यूशन को लागू करने के लिए महाराष्ट्र में स्वतस्फूर्त तरीके से कई जगह दलितों ने प्रयास शुरू कर दिए थे। एक जगह खुद ही क्रॉफर्ड वेल, शायद उसका नाम था क्रॉफर्ड वेल, पे आरबी मोरे के नेतृत्व में उन्होंने पानी निकाल के पिया था, अंबेडकर के चावदार तालाब के पानी पीने से पहले की बात है ये। तो आखिरी दिन महाड़ के उसमें ये तय हुआ सम्मेलन, पहले महाड़ सम्मेलन के आखिरी दिन, कि सम्मेलन का समापन करने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता है कि हम जाके चावदार तालाब, जो कि एक सार्वजनिक वाटर बॉडी है, वहां से सारे दलित जाके सामूहिक तौर पर जल ग्रहण करें। फिर अंबेडकर के ये प्रस्ताव जो है रखा था चित्रे ने, अनंत भाई चित्रे ने, और उस पे फिर अंबेडकर के नेतृत्व में जितने भी वहां आबादी इकट्ठा हुई थी, करीबन 5-6 हजार महाड़ जाति के ज्यादातर लोग थे, कुछ मांग और चम्हार जाति से भी लोग थे, लेकिन मैक्सिमम महाड़ जाति के लोग थे, वो लोग एक जुलूस की शक्ल में चावदार तालाब गए। वहां उन्होंने पानी पिया, अंबेडकर ने सबसे पहले पानी उठाकर पिया और चावदार तालाब का जो सवर्णवादी ब्राह्मणवादी रेस्ट्रिक्शन का नियम था उसको तोड़ा। उसके बाद जब वहां से लौट रहे थे दलित, तो उन पर जो है हमला हुआ। ज्यादातर हमलावर मराठा जाति से आते थे, शूद्र जातियों से, ब्राह्मण उसमें बहुत कम थे। ब्राह्मणों ने भड़काने का काम किया था, एक ब्राह्मण पुरोहित जो मंदिर का था उसने भड़काने का काम किया कि ये जब अब मंदिर में भी घुसने वाले हैं, अभी इन्होंने पानी पी के अपवित्र कर दिया तालाब को, अब ये मंदिर में घुसने वाले हैं, और पूरे शहर में उसने घूम घूम के इसका प्रचार किया। उसके बाद लौटते हुए दलितों पे हमला हुआ। महाड़ तालुका बहुत छोटा सा था, वहां की कुल आबादी कुछ हजार थी, 2-2.5 हजार टाइप, मतलब वहां पे मराठा आबादी रहती थी, और महाड़ के सम्मेलन में जो दलित इकट्ठा हुए थे वो 5 हजार इकट्ठा हुए थे। उन दलितों में से ज्यादातर ऐसे दलित थे जो पहले मिलिट्री सर्विस दे चुके थे, जो मार्शल ट्रेनिंग के साथ। जब हमला हुआ तो उसके बाद पंडाल पे वापस जो दलित इकट्ठा हुए थे, और वहां पास में डाक बंगला था, वहां अंबेडकर रुके थे, वहां पर भी दलित वहां पहुंच के इंतजार कर रहे थे जो हमला जिनके ऊपर हुआ था। जब अंबेडकर आए तो वो तैयार थे कि अब हमें जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए, और वो कर सकते थे उस समय, ज्यादा मराठा कुछ कर नहीं पाते क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा थी महाड़ों की, सीधे डबल ट्रिपल की संख्या बैठती थी। वो जवाबी कार्रवाई करने के लिए एकदम तैयार खड़े थे कि आप हमें बस एक बार आदेश कीजिए, हम वापस इनको मजा चखा सकते हैं। लेकिन अंबेडकर ने उन्हें रोक दिया कि कानून व्यवस्था हाथ में नहीं ली जानी चाहिए। इसके लिए भी उन्होंने कानूनी रास्ता अपनाया कि इसके लिए फिर केस किया, उस केस में कुछ लोग को थोड़ी बहुत सजा भी हुई आगे चल के। लेकिन इस घटना के बाद अंबेडकर ने तय किया कि इस चावदार तालाब को के फिर से नियम को तोड़ने के लिए एक सत्याग्रह किया जाएगा, और अंबेडकर ने उस समय एक रेडिकल निर्णय लिया कि दिसंबर में हम लोग जो है फिर से करेंगे। उस समय दिसंबर नहीं तय किया था, अप्रैल में जाके तय किया कि दिसंबर में करेंगे उस समय, लेकिन यह तय कर लिया था कि करेंगे, एक और सम्मेलन करेंगे, सत्याग्रह के रूप में करेंगे, और उस सत्याग्रह में फिर से ब्राह्मणवादी ताकतों को चुनौती देते हुए चावदार तालाब का नियम तोड़ेंगे। दिसंबर में हुई कॉन्फ्रेंस, उसमें और बड़ी भीड़ जुटी, करीबन 9-10 हजार लोग जुटे उसमें, और पहले ही मराठा समाज ने, क्योंकि इस बीच काफी कुछ हुआ था, तो मराठा समाज के जो प्रमुख संगठन थे उन्होंने लिखित में दे दिया था कि अगर आप लोग चाबदार तालाब पानी पीने जाएंगे तो हमारी तरफ से कोई बाधा नहीं है, हम नहीं रोकेंगे। कई लोगों ने इस तरह का वो कर दिया था। जब कुछ ब्राह्मण थे उन्होंने क्या किया कि उस सत्याग्रह के पहले स्टे ले लिया, स्टे ऑर्डर ले लिया कि चाबदार तालाब पब्लिक वाटर बॉडी है ही नहीं, ये प्राइवेट वाटर बॉडी है। पब्लिक वाटर बॉडी है ही नहीं, ये तो निजी वाटर बॉडी है, इसलिए यहां पर दलित नहीं पी सकते हैं। उसके बाद फिर स्टे ब्राह्मणों को तुरंत स्टे दे दिया। ब्रिटिश कोर्ट ने ब्राह्मणों को स्टे देने में देर नहीं की। हाँ, जब पहली बार अंबेडकर ने उन लोगों को सजा दिलाने के लिए दलितों पे जिन्होंने हमला किया था तो उसको देने में कई महीने का टाइम लगा था, कुछ महीने, 2-3 महीने का टाइम लग गया था। लेकिन ब्राह्मणों ने जब स्टे मांगा तो वो 24 घंटे के भीतर मिल गया स्टे उनको कि हाँ ये प्राइवेट वाटर बॉडी है, इससे दलित पानी नहीं पी सकते। लेकिन सत्याग्रह का आह्वान तो कर दिया गया था, और सत्याग्रह का मतलब ही होता है सत्य के लिए आग्रह, अगर वो बने हुए कानून के खिलाफ जाता हो तो भी। और इस समय गांधी को अपने एक तमाम मास्टर्स में से एक मास्टर गांधी को भी मानते थे अंबेडकर, तो सत्याग्रह के उसी लॉजिक के साथ अंबेडकर चल रहे थे। दूसरे दिन, आखिरी दिन, जो जिस दिन यह तय हुआ कि अब सत्याग्रह किया जाएगा और जाके हम पिएंगे पानी, हालांकि कोर्ट ने स्टे दे दिया है, उसके पहले मजिस्ट्रेट ने अंबेडकर को बुलाया, नहीं मजिस्ट्रेट ने नहीं, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने अंबेडकर को बुलाया बातचीत करने के लिए। और अंबेडकर को बुला के कहा कि देखिए, अंबेडकर तब तक ये मान के चल रहे थे कि हम तो बोले रेजोल्यूशन को लागू करेंगे और हमको कोई रोकेगा तो ये पुलिस का काम है कि वो हिंसा होने से रोके, हम तो सत्याग्रह करते हुए जाएंगे जो है पानी पिएंगे। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, उल्टे अगर आप पानी पीते हैं तो आप कानून तोड़ रहे होंगे क्योंकि ब्राह्मणों ने स्टे ले लिया है, तो इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि तोड़िएगा नहीं आप ये नियम, अन्यथा हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई हमें आपके ऊपर करनी पड़ेगी। अंबेडकर वहां से लौट के आए, और उस समय से जो पिछले दिन अंबेडकर खुद ही कह रहे थे कि हमें एकदम चाहे कोई भी रोके कोई भी टोके हमें सत्याग्रह करके पानी पीकर चाबदार तालाब का नियम तोड़ना है, उससे पलट के वो थोड़ा अब ये बात करने लगे कि नहीं इस पे सोच लिया जाए। और उन्होंने कहा कि सभी लोग इस चीज के लिए क्या तैयार हैं कि अगर जेल जाना पड़े तो जेल जाएंगे, लाठी खानी पड़े तो लाठी खाएंगे, गोली चले तो गोली चले। तो सभी लोग ने महार लाठी उनका लेके चलने का परंपरा होती है, तो लाठी उठा के उन्होंने पूरे सम्मेलन ने कहा कि हम तैयार हैं इसके लिए। कुछ महाड़ों ने यह कहा कि जब हम यहां आए थे तो हम अपने पति पत्नी का सिंदूर पोंछ के आए थे, अब या तो अपने आत्मसम्मान की लड़ाई को आखिर तक ले जाएंगे और नहीं तो यहीं खत्म हो जाएंगे। और उन्होंने कहा, तब भी अंबेडकर ने कहा कि नहीं, फिर उन्होंने एक प्रायर कंसेंट फॉर्म बनाया, एक फॉर्म बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि आप सब लोग लिखित में दीजिए कि ऐसा ऐसा हो सकता है, हम जेल जा सकते हैं, लाठी चल सकती है, गोली चल सकती है, और ये जानते हुए भी हम ये कर रहे हैं। तो उसको लेकर फिर फॉर्म भरवाना शुरू हुआ, 3,500 फॉर्म तक भरा था, तो कोई ये लिख ही नहीं रहा था कि नहीं हम तैयार नहीं है, सभी लोग लिख रहे थे कि हम तैयार हैं। तो उसके बाद फॉर्म भरवाना रोक दिया गया, फॉर्म भरवाना रोक दिया गया, और एक्टिविस्ट ने आके बताया कि सभी लोग तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इतने में वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस आया वहां जहां सम्मेलन हो रहा था, और सम्मेलन में आके मंच से आकर उसने एक भाषण दिया जिसको आतंकित करने वाली एक धमकी बोला जाना चाहिए, भाषण नहीं, उसने स्पष्ट तौर पर बोला कि करोगे अगर तो फिर देख लेना, फिर कुछ भी हम करने के लिए किसी भी हद तक हम जा सकते हैं, इसलिए हम यही सलाह देंगे कि आप सरकार को नाराज ना करें, सरकार आपसे हमदर्दी रखती है, लेकिन अगर आप सरकार के स्टे का आप वो तोड़ोगे तो फिर हम नहीं वो करेंगे। और अंत में अंबेडकर ने कहा कि हम नहीं करेंगे। सारे वहां पे जो लोग थे सम्मेलन में उसके खिलाफ थे, वो तब भी जाना चाहते थे, वो उस धमकी से डरे नहीं थे, लेकिन अंबेडकर ने एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं बस ये देखना चाहता था, मैं ये टेस्ट कर रहा था कि आप में वो साहस है, आप में वो ताकत है कि नहीं, कि आप कानून को भी तोड़ के सत्याग्रह करके पानी पियोगे चाबदार तालाब से। अब जबकि मैंने देख लिया है कि आप में वो ताकत है, अब जबकि मैंने देख लिया है कि आप में वो बहादुरी है, तो अब इस ताकत को इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं, मैं बस टेस्ट कर रहा था, इसलिए अब हम चाबदार तालाब का पानी नहीं पियेंगे। और अंत में उन्होंने चाबदार तालाब के इर्द गिर्द ही एक जुलूस निकाल के कार्यक्रम समाप्त कर दिया। उसके बाद उस स्टे के खिलाफ अंबेडकर लड़े कोर्ट में, और स्टे के खिलाफ 10 साल तक लड़े। 10 साल बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि नहीं नहीं चाबदार तालाब पब्लिक वाटर बॉडी ही है, डॉक्टर अंबेडकर सही थे। लेकिन तब तक आंदोलन खत्म हो चुका था, तब तक आंदोलन बैठ चुका था। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि अंबेडकर स्टेट के खिलाफ कभी नहीं जाते, उनका स्पष्ट तौर पर मानना था कि स्टेट सबसे तार्किक अभिकर्ता है, उसके खिलाफ नहीं जाया जाना चाहिए। इसका एक दूसरा भी एग्जाम्पल था, नासिक में मंदिर प्रवेश आंदोलन हुआ था 1930 में, यह भी बहुत प्रसिद्ध आंदोलन है, जिसमें कि मंदिर प्रवेश आंदोलन के लिए वहां पर एक गायकवाड़ थे, उसके नेता थे, उन्होंने शुरू किया था, उन्होंने आमंत्रित किया अंबेडकर को कि आप इसका नेतृत्व कीजिए। अंबेडकर पहले तैयार नहीं हुए, बाद में वो तैयार हुए, और तैयार होने के जब तैयार नहीं हो रहे थे तो उन्होंने क्या कहा था, वो भी इस किताब में कोट है, आप देख सकते हैं, कि इस आंदोलन की वजह से सरकार और हम में कड़वाहट पैदा हो सकती है, और अगर सरकार हमारी दुश्मन बन गई तो दिक्कत होगी, इसलिए सरकार के खिलाफ नहीं जाया जाना चाहिए। लेकिन फिर अंत में वो माने, नेतृत्व करने आए, उसके बाद एक समझौता हुआ जिसके तहत ये तय हुआ कि हाँ चलो मंदिर में एंट्री दी जाएगी, लेकिन उस पूजा के प्रक्रिया में रथ को खींच के ले जाना होता है, तो रथ को खींचने का काम पारंपरिक तौर पे इजाजत नहीं थी कि उसके वो रस्से को पकड़ के दलित खींचेंगे, तो चूंकि समझौता हुआ था इसलिए दलित जो आबादी वहां गई थी उसने खींचने के लिए पकड़ा, और उस पर जो है सवर्णों ने वहां पे हमला किया, और सवर्णों के साथ जब वो थोड़ा गुत्थम गुत्थम मुठभेड़ टाइप होने लगी तो अंग्रेज पुलिस ने दलितों पे लाठीचार्ज कर दिया, दलितों पे हमला कर दिया, अंग्रेज ऑफिसर के ही आदेश पे दलितों पे हमला किया, और उसके बाद अंबेडकर ने इस प्रकरण में क्या रास्ता अपनाया, अंबेडकर ने जो इसके लिए शिकायत पत्र हायर अथॉरिटीज को लिखा उसमें उन्होंने कहा कि जो हमला करने वाले पुलिस वालों में जो भारतीय थे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भारतीय सवर्णवादी मानसिकता के होते उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें भी कहीं भी अंग्रेज जो प्रशासन था, इंग्लिश कॉलोनियल प्रशासन था, उसको कहीं कटघरे में नहीं खड़ा किया। कोई कैसे, बहुत लोग इसको इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं कि अंबेडकर बेईमान थे, अवसरवादी थे, बात यह नहीं है। इसीलिए मैंने उतनी लंबी चर्चा व्यवहारवादी दर्शन पे की ताकि अंबेडकर की इस पॉलिटिकल प्रैक्टिस को समझा जा सके। अंबेडकर की पॉलिटिकल प्रैक्टिस का पीछे का जो गाइडिंग थॉट, मार्गदर्शक सिद्धांत था, वो उनको सरकार के विरोध में जाने से रोकता था, और इसलिए अंबेडकर कई आंदोलनों में जहां पे एकदम रेडिकल पॉइंट पे आंदोलन पहुंच जाता था और अब सरकार कटघरे में खड़ी हो जाती थी, वहां से अंबेडकर बैक ऑफ कर जाते थे, चाहे वो महाड़ का सत्याग्रह हो, चाहे वो नासिक के मंदिर प्रवेश का आंदोलन हो, ऐसे और बहुत से एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं जहां यही हुआ। तो खैर ये मेरे इसमें हो रहा है क्या, नहीं उनके भी हो रहा है, कोई बात नहीं। 1927 में साइमन कमीशन ने जो है वो रिजर्व सीट दी, लेकिन उस पर कांग्रेस राजी नहीं हुई क्योंकि कांग्रेस साइमन कमीशन का बहिष्कार कर रही थी, भगत सिंह भी साइमन कमीशन के खिलाफ लड़ रहे थे, आपको पता होगा भगत सिंह और एचएसआरए एनबीएस इसके खिलाफ लड़ रहा था, और उसके अलावा लाला लाजपत राय पे जो लाठीचार्ज वगैरह हुआ जिसके लिए उनकी, जिसके कारण चोट की वजह से बाद में मौत हुई, जिसके बाद वो बदला लेने का, वो आप कहानी जानते हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। लेकिन साइमन कमीशन में जो दो मतलब पार्टियां शामिल हुई थी नेगोशिएट करने में, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, अंबेडकर, ये लोग साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं कर रहे थे, उससे नेगोशिएट कर रहे थे, और उससे नेगोशिएट करने में फिर चूंकि इस नेगोशिएशन में रिजर्व सीट दलितों को दी गई इसलिए कांग्रेस ने इसका बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस के बहिष्कार करने के कारण सवर्णवादी थे, गांधी का कारण यह था कि हिंदू सोसाइटी डिसइंटीग्रेट कर जाएगी अगर दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा, तो उनके तो सवर्णवादी कारण थे, लेकिन यह भी मांग मेरे हिसाब से अनुचित थी कि सेपरेट, ये पूरी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स थी, अस्मितावादी राजनीति थी, जिस अस्मितावादी राजनीति का खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं, सांप्रदायिकता के रूप में भी और चुनावी पॉलिटिक्स में होने वाले ब्राह्मणवाद और जातिवाद के रूप में भी। लेकिन खैर उस समय सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया लेकिन कांग्रेस ने उसको स्वीकार नहीं किया, फिर एक बहस हो गई, उस बहस को रिजॉल्व करने के लिए 1930 और 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी सहमति नहीं बन पाई, लेकिन 1932 में ब्रिटिश सरकार ने अपनी तरफ से सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया दलितों को। जब दे दिया 1932 में तो उस समय सिविल डिसोबीडियंस के बाद गांधी पूना की जेल में थे, शायद येरवडा जेल थी उसमें थे, वहां पे उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया, उस आमरण अनशन के कारण अंबेडकर अपने उस मांग से पीछे हट गए। गांधी ने कहा कि आप 71 सेपरेट इलेक्टोरेट जो अंग्रेज सरकार आपको दे रही है उसके बजाय आप 148 रिजर्व सीट लीजिए और उन जगहों पर रिजर्व सीट लीजिए जहां पर दलित आबादी बहुसंख्यक है या उसकी साइजेबल आबादी है, उन चुनाव क्षेत्रों में आप रिजर्व सीट ले लीजिए। उसके लिए अंबेडकर तैयार हो गए। बहुत से बात के अंबेडकरवादी और अलग अलग लोगों ने कहा कि अंबेडकर उसके लिए इसलिए तैयार हुए क्योंकि अगर गांधी मर जाते आमरण अनशन के उसमें तो एक हिंदू रिएक्शन होता दलितों के खिलाफ। यह मुख्य कारण था नहीं, हिंदू रिएक्शन होना होता तो पहले ही होता, जब उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा था होता रिएक्शन, थोड़ा बहुत होता, कहीं हमले होते हैं थोड़ी वो होता, लेकिन वो तो वैसे भी कर रहे थे सवर्णवादी, वो तो वैसे भी रोजमर्रा के आधार पे दलितों का उत्पीड़न इस तरीके से होता ही था, उन पे हमले होते थे, तो कुछ उसमें बहुत बड़ा इजाफा नहीं हो जाता। क्रिस्टोफ जेफरलॉट, जो कि खुद भी अंबेडकर के प्रति हमदर्दी रखने वाले एक समाजशास्त्री हैं, वो बताते हैं कि मूल कारण जिसकी वजह से अंबेडकर गांधी की बात मान गए वो ये था कि उस समय अंबेडकर से ज्यादा दलित गांधी के पीछे थे। कांग्रेस में और कम्युनिस्ट पार्टी में दलित ज्यादा मेंबर्स थे बनिस्पत अंबेडकर के बहिष्कृत हितकारिणी सभा में, तो इस वजह से अंबेडकर के सामने और कोई उस समय ऑप्शन नहीं था, वो रिजर्व सीट के उसको मान गए। लेकिन रिजर्व सीट के उस पर मानने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि अब कोई ऐसी पार्टी बनाकर ही वो चुनाव में शिरकत कर सकते हैं जो पार्टी केवल दलित पार्टी ना हो, उसकी पहचान दलित पार्टी के रूप में ना हो, बल्कि वो एक व्यापक पार्टी हो। इसलिए 1936 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, क्योंकि रिजर्व सीट पे कोई भी पार्टी अपना दलित कैंडिडेट खड़ा कर सकती थी और वोट सब लोग करते जो नॉन दलित भी होते, इसलिए जो भी दलित कैंडिडेट जीतता उसकी जवाबदेही सिर्फ दलितों के प्रति नहीं होती बल्कि पूरे चुनाव क्षेत्र के प्रति होती, पूरी आबादी के प्रति होती। और इसलिए आप कोई ऐसी पार्टी बनाकर अगर चुनाव लड़ेंगे तो आप उस चुनाव में कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। इसलिए 1936 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, जिसके इकोनॉमिक प्रोग्राम में उन्होंने एक कल्याणकारी राज्यवादी कार्यक्रम रखा, जिसमें जिसको उन्होंने बेसिकली लेबर पार्टी जो ब्रिटेन की थी उससे लिया था कि सारे कुंजीभूत उद्योग जो है वो सौंप दिए जाने चाहिए सरकार को और शहरीकरण होना चाहिए, औद्योगिकीकरण होना चाहिए। उसमें उन्होंने यह भी लिखा कि भारत में और कहीं पर भी अलग से उसके मैनिफेस्टो में, जो उसका जाहिरनामा था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का, कहीं से भी अलग से दलितों की बात नहीं की थी, जहां भी दलितों की बात की थी वो भारत के मेहनतकश वर्ग के हिस्से के रूप में दलित की बात की थी। तो उन्होंने कहा कि जो भारत का मेहनतकश वर्ग है उसके दो दुश्मन है, भांडवलशाही और ब्राह्मणशाही। भांडवलशाही मतलब पूंजीवाद, पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद जो है भारत के मेहनतकश वर्ग के दो दुश्मन है। तो इससे कई लोग को ये आज भी भ्रम होता है कि अंबेडकर मार्क्सवाद की तरफ झुक रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। आईएलपी उनके लिए एक इलेक्टोरल स्ट्रेटजी थी, एक चुनावी स्ट्रेटजी थी, और अगर वो मार्क्सवाद की तरफ झुक रहे होते तो 1942 में वो शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन नहीं बनाते। वास्तव में अगर आप 1936 के ही अंबेडकर को एक भाषण को देखें तो कहते हैं कि जातिगत यथार्थ भारतीय समाज का मूल यथार्थ है, यहां पे वर्ग विश्लेषण से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जातियों का आर्थिक संसाधन में कितनी हिस्सेदारी किसकी है इससे जाति का कोई रिश्ता नहीं है। जाति का कोई आर्थिक भौतिक चरित्र नहीं है, जाति एक एकदम ऑटोनोमस यथार्थ है, एक स्वायत्त यथार्थ है, इसका आर्थिक संसाधनों या उत्पादन के साधनों तक पहुंच से कोई रिश्ता नहीं है। तो इसलिए अंबेडकर की पर्सनल थिंकिंग नहीं बदली थी, उनकी पर्सनल फिलॉसफी या पॉलिटिकल थॉट में कोई परिवर्तन नहीं आया था। कई लेफ्ट अंबेडकराइट्स अंबेडकर और मार्क्सवाद के बीच में सेतु तैयार करने के चक्कर में वो ये तथ्यों के साथ थोड़ा खिलवाड़ करते हैं। बहरहाल उसके बाद इलेक्शंस में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का। उसके खराब परफॉर्मेंस से अंबेडकर इस नतीजे पे पहुंचे कि वापस उन्हें अपने आप को एक दलित नेता के तौर पे एस्टैब्लिश करना चाहिए, और 1942 में उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बनाया। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बनाने के बाद 1944 में वो क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन के सामने अंबेडकर ने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की तरफ से एक प्रस्ताव रखा, जिसमें उन्होंने दो मांग तो वही रखी जो वो पहले से रख रहे थे। एक मांग उन्होंने ये रखी कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, दूसरी मांग उन्होंने ये रखी कि हमको नौकरशाही में प्रतिनिधित्व चाहिए, सरकारी नौकरियां जो है उसमें प्रतिनिधित्व चाहिए। तीसरी मांग बड़ी अजीब थी, तीसरी मांग ये थी कि ब्रिटिश सरकार भारत को आजाद करने से पहले, ब्रिटिश जो उपनिवेशवादी है वो दलित गांव बसाए। और उन्होंने बेवरली निकोलस नाम के एक अंग्रेज अधिकारी को पत्र लिखा कि हर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में, यानी कि क्षेत्रीय चुनाव क्षेत्र में, दलित माइनॉरिटी है, तो ऐसे में हमको सारे दलितों को एकजुट करके कुछ ऐसे निश्चित इलाकों में दलित गांव बनाने चाहिए, और इसके लिए अंग्रेज सरकार हमें अगर आज्ञा दे, अंग्रेज सरकार इजाजत दे हमें, तो ऐसे गांव बनाए जा सकते हैं और उसे बनाने चाहिए, और इसके लिए अगर जोर जबरदस्ती करके भी बड़े पैमाने का दलितों का प्रवास कराना पड़े तो आपको कराना चाहिए। इस समय तक यह दिखने लगा था कि अभी तक की स्ट्रेटजीज की असफलता से एक डेस्परेशन अंबेडकर के उसमें आ रहा है, अंबेडकर के पॉलिटिकल जो रणनीति निर्माण है उसमें एक डेस्परेशन, एक हताशा का तत्व आ रहा है, जिसकी वजह से ये, क्योंकि ये प्रस्ताव बेहद ही इम्प्रैक्टिकल प्रस्ताव था। दलित आबादी जो कई सौ सालों से जिन इलाकों में रह रही है, तो कम से कम जो कॉमन्स होते हैं उनपे उनका हक था, कॉमन्स जैसे कि कॉमन चरवाह ये होते हैं, अरे जो ग्रेजिंग ग्राउंड क्या बोलेंगे उसको, हाँ, जो शामलात जमीन होती है उस पर उनका जो एक क्लेम होता है वो भी खत्म हो जाएगा, और वो जिस नई जगह जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वहां पर उनको कौन से नए अधिकार इस तरह के मिलेंगे। तो ऐसे में ये चीज ही असंभव हो ही नहीं सकता था। लेकिन इस समय तक अंबेडकर का एक डेस्परेशन पॉलिटिकल स्ट्रेटेजाइजिंग में, राजनीतिक रणनीति निर्माण में, वो एक हताशा का भाव दिखने लगता है। 1945-46 में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, जो अंग्रेजों के भारत छोड़ने से पहले आखिरी जो चुनाव वो करवाया, उसमें शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन को काफी पराजय का सामना करना पड़ा। खुद अंबेडकर बॉम्बे में खड़े हुए थे, वो हार गए। एक सीट हैदराबाद से शायद जीती और एक सीट बॉम्बे के ही उसमें प्रेसिडेंसी भी जीती। दो सीट बस एससीएफ जीत पाया। उसका एक कारण यह भी था कि एससीएफ का कोई काडर बेस ज्यादा था नहीं, ज्यादातर काम अंबेडकर को खुद अकेले करने पड़ते थे और उसका कोई सांगठनिक ढांचा बड़ा नहीं था। लेकिन उस हार के बाद एक तरीके से धनंजय कीर को उन्होंने बताया, जिन्होंने की सबसे प्रसिद्ध बायोग्राफी अंबेडकर की लिखी है, धनंजय कीर को बताया कि इस हार के बाद मैं भारत के राजनीतिक जीवन में परिधि पे चला गया था, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था। उस समय एक तरीके से कांग्रेस वापस अंबेडकर को मेन स्ट्रीम में ले आई, जब गांधी के कहने पर उनको कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर पहले बनाया गया और फिर चेयरमैन बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सदस्य बनाया गया और ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। ये गांधी के कहने पर हुआ। और यहां पर आप देख सकते हैं कांग्रेस ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, मतलब जो एक दलित विरोध का स्वर था उसको कोऑप्ट कर लिया। और अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कांग्रेस की प्रशंसा में कम से कम 20-25% समय कांग्रेस को धन्यवाद ज्ञापन और उसके प्रशंसा में खर्च किए। उसके बाद संविधान निर्माण का वो आता है। उस संविधान निर्माण में भी अंबेडकर को कई समझौते करने पड़े, जैसे कि बहुत सारे लड़े भी अंबेडकर लड़ के उन्होंने बहुत सारे हक भी दिलाए, लेकिन उसमें हम आगे आते हैं। ये जो इलेक्टोरल और उनका राजनीतिक एक स्ट्रेटजी थी उसका ये पूरी यात्रा रही, जिसमें आप ड्यूयन प्रैग्मेटिज्म को अमल में आते हुए देख सकते हैं। तीसरी जो चीज थी वो उनकी ड्यूयन प्रैग्मेटिज्म की सबसे प्रमुख चीज थी, जो तीसरी रणनीति उनकी थी। पहली थी आइडेंटिटी बिल्डिंग, दूसरा था इलेक्टोरल स्ट्रेटजी, और तीसरी जो थी स्ट्रेटजी वो थी जो भी शासन में था राज्य सत्ता के साथ कोलैबोरेशन, चाहे राज्य सत्ता में ब्रिटिश होते चाहे राज्य सत्ता में कांग्रेस होती, उसके साथ कोलैबोरेट करना। इस प्रक्रिया की शुरुआत वास्तव में हम पहले ही देख चुके हैं कि 1930 में और 1927 में महाड़ के उस वक्त भी उन्होंने कोऑपरेट किया था स्टेट के साथ, और जहां स्टेट ब्राह्मणवाद की रक्षा करने आ गया तो स्टेट को उन्होंने कटघरे में नहीं खड़ा किया। इस पे आनंद तेलतुंबड़े बहुत आश्चर्य प्रकट करते हैं। मुझे इस बात पे आश्चर्य होता है कि आनंद तेलतुंबड़े को आश्चर्य क्यों हो रहा है, और मुझे लगता है कि आनंद तेलतुंबड़े जहां तक गए हैं अपनी लेटेस्ट पुस्तक में, तो उनसे यही कहने का मन करता है कि साथी आनंद तेलतुंबड़े, आपको थोड़ा और आगे जाने की जरूरत है। वो इस पे आश्चर्य प्रकट करते हैं कि 1927 का अनुभव अंबेडकर का, 1930 का अनुभव अंबेडकर का ब्रिटिश सत्ता के बारे में, उसके बाद भी कभी वो समझ क्यों नहीं पाए कि ब्रिटिश सत्ता के बूते ब्राह्मणवाद ताकतवर है और राज्य सत्ता में जो भी रहा है वो ब्राह्मणवाद की ताकत बना है, उसने ब्राह्मणवाद के साथ गठजोड़ किया है, सरकार चाहे किसी की रही हो, और उसने गठजोड़ करके ब्राह्मणवाद को प्राण संचार किया है, वरना इतने लंबे समय तक इतने वर्चस्व को कायम रख पाना बिना राज्य सत्ता के राजनीतिक समर्थन के संभव नहीं है, असंभव है। तो ये सवाल पूछते कि क्यों नहीं समझ पाए, हम पूछते हैं कि आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि अंबेडकर का दार्शनिक मूल क्या था। दार्शनिक मूल ड्यूयन प्रैग्मेटिज्म था, जो उनको सरकार और राज्य सत्ता के खिलाफ जाने से ही रोक देता था। इसलिए जहां पर भी सरकार राज्य सत्ता से टकराहट की मंजिल आती थी अंबेडकर बैक ऑफ करते थे, वहां से पीछे हटते थे तुरंत। और यही चीज आप उनके कोलैबोरेटिंग विद द रूलर्स यानी शासक वर्ग के साथ कोलैबोरेट करने की जो उनकी रणनीति थी उसमें भी सामने आता है। 1941 में पहली बार डायरेक्ट कोलैबोरेशन होता है, जब वॉर द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय युद्ध परिषद बनाई एक ब्रिटिश सरकार ने, जिसका मकसद था कि भारत के सैनिकों को द्वितीय विश्व युद्ध में भेजने के लिए भारत में सहमति बनाई जा सके। इसमें भी तीन ही शक्तियों ने पार्टिसिपेट किया था, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और अंबेडकर। तो ये तीन शक्तियों ने पार्टिसिपेट किया, अंबेडकर ने भी उसमें योगदान किया। 1942 में फिर वो वायसराय के काउंसिल में शामिल हुए, मेंबर ऑफ लेबर बने। मेंबर ऑफ लेबर के तौर पे उन्होंने कुछ योगदान किए बड़े, जैसे 1945 में उन्होंने ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट एक्ट एक पास करवाया, जिसके अनुसार हर फैक्ट्री मालिक के लिए ये ऑब्लिगेटरी है, बाध्यताकारी हो गया कि वो अपने फैक्ट्री में एक ट्रेड यूनियन को मान्यता देगा। दूसरा उन्होंने जो काम किया, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में 8.3% और आर्म्ड फोर्सेस में, सशस्त्र बलों और नौकरशाही में 8.3% का आरक्षण दलित जातियों के लिए निर्धारित करवाया, और तीसरा बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने मेंबर ऑफ लेबर के तौर पे वायसराय के काउंसिल के ये किया कि उन्होंने ब्रिटेन के प्रोफेशनल और टेक्निकल कॉलेजेस में कुछ सीटें जो है वो दलित जातियों के छात्रों के लिए रिजर्व करवाई। और इवन प्रैग्मेटिज्म भी इतना तो कंट्रीब्यूशन कर सकता है, वो जाति उन्मूलन का कोई रास्ता नहीं बता सकता, लेकिन जो भी ये सोचेगा कि तात्कालिक तौर पे वॉट एवर वर्क्स शुड बी इंप्लीमेंटेड, जो कारगर लग रहा हो तात्कालिक तौर पे वो करना चाहिए। अगर इस मेथड को भी आप लंबे समय तक लागू करते रहे तो कुछ पीसमील रिफॉर्म्स, कुछ भूले छिटके हुए सुधार तो आप हासिल कर ही लेंगे, और वो अंबेडकर ने किया हासिल दलित आबादी के लिए, इसमें कोई दोराय नहीं है, और ये कंट्रीब्यूशन था उनका। और उस समय वास्तव में रिजर्वेशन की मांग एक डेमोक्रेटिक डिमांड थी, एक डेमोक्रेटिक डिमांड के तौर पे एक सही मांग थी उस समय। और उस तौर पे वायसराय के मेंबर ऑफ लेबर के तौर पे उन्होंने ये योगदान किए। इसके बाद वही 1945-46 के चुनाव में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन हारी, अंग्रेज 47 पे जाते हैं, कांग्रेस अंबेडकर को, क्योंकि अंबेडकर खुद हार गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव, इसलिए कांग्रेस अपने एक व्यक्ति से और जहां से वो मनोनीत किए गए थे वो जगह जो है वो ईस्टर्न पाकिस्तान में चली गई। तो बंगाल का एक कांग्रेस के प्रतिनिधि ने अपनी सीट छोड़ के अंबेडकर को कोऑप्ट करवाया और उसके साथ अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए और वहां पर फिर उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन भी बनाया गया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में भी अंबेडकर उस समय जो कांग्रेस एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स मुख्य ताकतवर शासक पार्टी थी और कांग्रेस पार्टी के भीतर एक ऐसा बड़ा हिस्सा था जो एक्स फ्यूडल लॉर्ड्स थे, भूतपूर्व जागीरदार जमींदारों का एक वो था जो कि अब पूंजीवादी में भूस्वामियों में तब्दील हो चुके थे, उनकी एक बहुत बड़ी लॉबी थी जो किसी भी किस्म के प्रगतिशील कदम को वीटो कर रही थी। तो उनपे कई चीजों पर अंबेडकर ने सरेंडर किया और कई चीजों को अंबेडकर ने खुद अपनी इच्छा से भी शामिल करवाया कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसपे आज सवाल उठता है कि क्यों ऐसा हुआ। जैसे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का ही एक संशोधित रूप है। अगर आप 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ेंगे और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी सिमिलैरिटीज मिलेंगी। उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ही कुछ और देशों के संविधानों से कुछ चीजें ग्रहण की गई और उनको मिलाकर ही भारत का संविधान तैयार हुआ। और चूंकि इस संविधान में हर जोड़ के लिए एक तोड़ है, तोड़ के लिए मरोड़ है, हर अधिकार के लिए एक अधिकार हनन करने का रास्ता दिया गया है, इसलिए इतना मोटा संविधान है, दुनिया का सबसे मोटा संविधान, मतलब आप किसी को खींच को मार दें तो इंजर्ड हो जाएगा वो। बाकी आप देखिए यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी थोड़ी ज्यादा हेल्दी रूप में आई थी, उसके कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है कि वो वेबस्टर डिक्शनरी के अपेंडिक्स के तौर पर आ जाता है। वेबस्टर डिक्शनरी आप बड़ी वाली खरीदें तो उसके पीछे अमेरिका का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन होता है। सोवियत यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन इतना पतला था क्योंकि सीधे सीधे आपको बोलना है कि तुमको ये हक है तो ये आप 20 पेज में बोल सकते हैं कि तुमको ये हक है। यहां क्या था, तुमको ये हक है, इसमें तुमको की परिभाषा ये है, हक की परिभाषा ये है। आपने लॉ की अगर किताब पढ़ी हो कि तुमको की परिभाषा ये है, हक की परिभाषा ये है, और तुमको और हक की परिभाषा स्पष्ट करने के बाद बताया जाता है कि तुमको ये हक इन इन अपवाद स्वरूप स्थितियों में नहीं मिलेगा, तो वो भी बता दिया गया है। और वो अपवाद स्वरूप स्थितियां कौन तय करेगा, सरकार। तो इसलिए इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगाने के लिए कोई संविधान में संशोधन नहीं करना पड़ा, बिना संशोधन किए इमरजेंसी लगाई, क्योंकि संविधान में उसका प्रावधान पहले से है। ये एक बहुत ही ऑप्रेसिव संविधान है, बहुत ही एक दमनकारी संविधान है। इसमें डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट शामिल है, डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट जिसका आज इस्तेमाल किया जाता है उत्तर पूर्व और कश्मीर में जनता के दमन के लिए और छत्तीसगढ़ में जनता के दमन के लिए। इसमें आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट अमेंडमेंट 1958 का है, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट अमेंडमेंट जिस एक्ट पे बना है वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में था, उसको भी शामिल किया गया। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को शामिल किया गया क्योंकि अंबेडकर का मानना था कि ट्राइब्स जो है वो सिविलाइज्ड नहीं है, उनको सिविलाइजेशन में लाना पड़ेगा, जो आदिवासी है वो सभ्य लोग नहीं है और उनमें हैबिचुअल क्राइम की प्रवृत्ति और ये चीजें होती है। आदिवासियों के बारे में निहायत ही आपत्तिजनक विचार है अगर वैसे देखा जाए, तो उसको शामिल किया गया क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को। और जब मैं बहुत सारी चीजें गिनाई, धारा 144, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो पहला था 1919 में ही जो संशोधन हुआ था पहला वाला जो था उसी में 144 लागू आ गई थी। अब आज 144 के आधार पर हम लोग को यहां से उठवाया जा सकता है अगर ये फांसीवादी शासन बढ़ता जाता है, और जैसा कि लग रहा है कि मोदी अगर हारता है उत्तर प्रदेश में तो बाकी दो साल अडानी अंबानी ने इसे जो काम दिया है करने के लिए, जिस वजह से इसे सत्ता में पहुंचवाया है, वो काम धक्का पेल के करेगा मोदी। उसके बाद कोई जनवादी अधिकार, मजदूर अधिकार, सिविल राइट सब भूल जाइए। तो यहां बैठना भी मुश्किल हो सकता है। इसकी संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि मोदी सरकार का स्वरूप और अधिक से अधिक फांसीवादी तानाशाही जैसा होता जाए। तो ऐसे में 144 लगा के आपको यहां से उठाया जा सकता है। क्यों? हमें आशंका है कि अशांति हो सकती है। क्यों आशंका है यह बताना आप जरूरी नहीं समझते। यह सरकार से आप यह नहीं पूछ सकते, यह पूछने का प्रावधान ही नहीं है कि आशंका किस आधार पर आपको है कि यहां अशांति फैल सकती है। उनको बस लगता है तो फैल सकती है। एकदम एक डिस्पोटिक निरंकुश किस्म का संविधान है जिसमें, और ओरिजिनली जो संविधान था उसमें राइट टू लिव वो नहीं था फंडामेंटल राइट में, जीने का अधिकार बुनियादी अधिकार में नहीं था, वो इंदिरा गांधी के पीरियड में संपत्ति का अधिकार बुनियादी अधिकार था। जो संविधान तुरंत बना था 1950 में, बन के पास हुआ, उसमें जीने का अधिकार बुनियादी अधिकार नहीं था, संपत्ति का अधिकार बुनियादी अधिकार था। मैं आपको मार सकता हूं, इस पे आपका फंडामेंटल राइट का हनन नहीं होगा, लेकिन मैं आपकी संपत्ति छीन लूं तो इससे आपके फंडामेंटल राइट का हनन होगा। ये बाद में भारत की भी पूंजीपति वर्ग को लगा कि ये कुछ विचारधारात्मक तौर पे ज्यादा ही अश्लील हो गया है, तो उसने इंदिरा गांधी के पीरियड में इसको बदल दिया और बदल के उसमें जीने के अधिकार को फंडामेंटल राइट में डाला। तो ऐसा है हमारा संविधान। तो इसको भी समझना चाहिए हम लोग को, जो है वो है, ये सच है, ये मानना, इसको मानने से मैं ये नहीं कोई कह रहा है कि अभी हम जा रहे हैं संविधान तोड़ने, ये तो कोई कह नहीं रहा है। हाँ, बाद में अंबेडकर ने यह भी कहा कि इस संविधान को जलाने वाला मैं पहला व्यक्ति हूंगा, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं पूरे देश के मेहनतकशों का आह्वान करता हूं कि इसको जला दे। दोनों में फर्क है। तो वो डिसअपॉइंट हुए क्योंकि उनको बहुत से समझौते करने पड़े, कांग्रेस का जो ट्रेडिशनलिस्ट जो कंजर्वेटिव लॉबी थी उसके दबाव में बहुत सारे, और इसकी इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा भी दिया। इस मामले में ईमानदारी पे कोई संदेह अंबेडकर के नहीं किया जा सकता है। इस्तीफा क्यों दिया था? हिंदू कोड बिल जो था जिसमें स्त्रियों को उत्तराधिकार का वो देने, और बहुत ही प्रोग्रेसिव बिल था, जो अच्छा एक प्रगतिशील बिल था जो अंबेडकर इंट्रोड्यूस कर रहे थे, उस पे नेहरू ने ही साथ छोड़ दिया अंबेडकर का, उसके विरोध स्वरूप। और दूसरा, अंबेडकर लेबर मिनिस्ट्री चाहते थे, लॉ मिनिस्ट्री नहीं चाहते थे। इन दोनों कारणों से नाराज होकर अंबेडकर ने छोड़ा। तो एक प्रिंसिपल्ड स्टैंड इस मामले में अंबेडकर ने लिया, ये तो मानना चाहिए, एक सिद्धांतनिष्ठ स्टैंड लिया। आप अंबेडकर की राजनीति और दर्शन पे सवाल खड़ा कर सकते हो, जैसा कि मैंने कहा कि मंशा पे बहस नहीं की जा सकती, मंशा पे बहस करना हमारा काम नहीं है, क्योंकि हनुमान जी की तरह कोई अपना दिल चीर के नहीं दिखा सकता कि उसमें सियाराम बसते हैं। इसलिए फालतू में मंशा पे बहस करने का काम ये समाज वैज्ञानिकों का काम होता नहीं। बहरहाल, तो इसलिए हाँ, इस प्रक्रिया में आप भी आप देखिए कि क्या क्या चीजें और भी, जैसे अंबेडकर ये मानते थे कि जो भी सोसाइटी के भीतर एक चीज छूट रही थी, जैसे उन जिस समय ये बन रहा था कॉन्स्टिट्यूशन, उसी समय तेलंगाना में किसानों का एक विद्रोह चल रहा था। वो किसानों के विद्रोह में ज्यादातर शूद्र और दलित किसान थे, जिस किसानों के विद्रोह को पहली बार देश के इतिहास में एक साल बाद ही आजादी के हिंदुस्तान की सेना को अपनी ही जनता के ऊपर दौड़ाया गया, वो तेलंगाना को कुचलने में दौड़ाया गया, और हाथों में घट्टे देख देख के गोलियां मारी गई किसानों को और लैंडलेस लेबर को। उसमें ज्यादातर जो लोग शहीद हुए थे वो या तो शूद्र जातियों से आते थे या दलित थे, लेकिन अंबेडकर इस पे कुछ बोले नहीं, अंबेडकर इस पे शांत रहे। उल्टे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक जगह वो भाषण देते हुए इशारा करते हैं कि अब जबकि हमारा रिपब्लिक बन चुका है तो इसमें आर्म्स की, बंदूक की कोई जगह नहीं, फोर्स की, बल की कोई जगह नहीं है, इसलिए जो लोग वो रास्ता अख्तियार कर रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था, जो धनंजय कीर को उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया, वो कारण यह था, उनका मानना था कि मैं दो चीजों का समर्थन कभी नहीं करूंगा, एक रेड यूनियनिज्म यानी कि कम्युनिस्टों के नेतृत्व में बनने वाली ट्रेड यूनियन, और दूसरा किसान विद्रोह, पीजेंट इंसर्जेंसी। उन्होंने कहा कि ये दोनों चीजें कम्युनिज्म के ट्विंस हैं और इसलिए मैं इनका कभी समर्थन नहीं करूंगा। इसलिए उनका यह सिद्धांत था कि बल प्रयोग से नीचे से परिवर्तन करना यह गलत है, सरकार ऊपर से एफर्मेटिव एक्शन लेके जो चेंज करे वो सही है। इसलिए नीचे से कोई, हालांकि जिन आइडियल्स को वो मानते थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो तो बहुत ही हिंसात्मक क्रांति थी, जो लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी के सिद्धांत को स्थापित करने वाली जो क्रांति थी, वो तो बहुत बल प्रयोग और बहुत रक्तपातपूर्ण क्रांति थी। उल्टे रूस की क्रांति में इतना रक्तपात हुआ नहीं था, बहुत ही कुछ 2-2.5 दर्जन लोग मारे गए थे 1917 में। उसके बाद जो घेराबंदी हुई रूस की 14 देशों ने मिलकर की, और वहां पे जो सामंती ताकतें भीतर थी उनको जो मदद दे के विद्रोह करवाया, उसमें कई हजार लोग मरे। लेकिन क्रांति में तो सब तक का सबसे ब्लडी रेवोल्यूशन फ्रेंच रेवोल्यूशन है, सबसे रक्तपात पूर्ण क्रांति फ्रेंच रेवोल्यूशन है। लेकिन अंबेडकर का जो ड्यूईवादी व्यवहारवाद था उस पर वो अडिग थे, इसलिए एक तरीके से अंबेडकर एकदम कंसिस्टेंट थे। यही कारण था कि इवन जब वो मानते थे कि भाई रेड यूनियनिज्म नहीं होना चाहिए, इसलिए एक उसका बहुत जिक्र किया जाता है कि टेक्सटाइल स्ट्राइक हुई थी बॉम्बे में, टेक्सटाइल वर्कर्स की स्ट्राइक 1927 में, तो उसमें अंबेडकर ने दलित वर्कर्स को कन्विंस किया था कि तुम इससे अलग हो जाओ क्योंकि तुम्हारे साथ फैक्ट्री के भीतर मजदूर भी जो दूसरे जातियों के वो भेदभाव करते हैं। यह बात सच है कि दलित मजदूरों के साथ भेदभाव होता था और यह कम्युनिस्ट आंदोलन की वीकनेस थी कि इस मुद्दे को कम्युनिस्ट आंदोलन वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया में कभी ढंग से उठा नहीं पाया। लेकिन यह भी बात सच है कि अंबेडकर खुद नहीं गए थे टेक्सटाइल स्ट्राइक में, एक अंग्रेज मालिक मिल मालिक ने उनको बुलाया था स्टोन्स। तो अगर वास्तव में आप मजदूरों के बीच मौजूद जातिगत विभेद को लेकर चिंतित थे तो आपको अपनी पहल पे जाना चाहिए था, आपको एक अंग्रेज मालिक के बुलाने पे नहीं जाना चाहिए था। वो एक अंग्रेज मालिक के बुलाने पे गए और वहां पे उन्होंने दलित उसको, उसके बाद वो कोलैप्स कर गई स्ट्राइक। तो यहां पर भी कई लोग कह सकते हैं कि अंबेडकर ने एक ब्लैक लेग का काम किया, स्ट्राइक ब्रेकर का काम किया। मैं कहूंगा कि आप यहां फिर से अंबेडकर का यह सिद्धांत था कि रेड यूनियनिज्म से चीजें हल नहीं होंगी, मालिक और मजदूर के बीच में कोई वास्तविक अंतर विरोध नहीं है, प्रतीतिगत अंतर विरोध है और उसको सरकार के इंटरवेंशन से सुलझाया जाना चाहिए। और अगर कहीं मिलिटेंट रेड यूनियनिज्म हो रहा है, जुझारू रेड यूनियनिज्म हो रहा है, तो उससे नुकसान होगा। तो अंबेडकर की यहां भी मंशा पे प्रश्न नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे इसको समझने की जरूरत है कि अंबेडकर ने किन विचारधारात्मक प्रेरणों से प्रेरित होकर यह काम किया। तो यह एक तीसरा था कि कोलैबोरेटिंग विद द रूलर्स। और आखिरी स्ट्रेटजी उनकी जो थी वो थी कन्वर्जन, धर्मांतरण। पहली बार धर्मांतरण का जिक्र अंबेडकर करते हैं 1927 में, जब जलगांव बैकवर्ड क्लासेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं कि हम पहले हिंदू धर्म में ही सुधार करने का प्रयास करेंगे और अगर हिंदू धर्म में जाति का उन्मूलन नहीं होता तो हमें हिंदू धर्म को छोड़कर आगे बढ़ जाने में हमारा कोई नुकसान नहीं है। और यहां से पहली बार वो कन्वर्जन की बात करते हैं। जो पहला धर्म वो चुनते हैं कन्वर्जन के लिए, वो चुनते हैं सिखिज्म, जिस पे विचार करने के लिए कि धर्मांतरण पे अगर विचार करना है तो किस धर्म में धर्मांतरित हूं। सिखिज्म उन्होंने क्यों चुना यह भी जानना जरूरी है। सिखिज्म उन्होंने हिंदू महासभा के नेता मुंजे के कहने पर उस पर विचार करना चुना था। मुंजे का यह कहना था कि अगर आपको धर्मांतरण करना ही है तो आप सिख धर्म में धर्मांतरण कीजिए, क्योंकि इसके जरिए आप हिंदू धर्म के दायरे से बाहर जाएंगे लेकिन आप हिंदू सिविलाइजेशन के दायरे से बाहर नहीं जाएंगे। अंबेडकर ने बाद में खुद कहा कि मैंने सिख धर्म को इसीलिए सबसे पहले धर्मांतरण के लिए उस पर विचार किया क्योंकि मेरा मानना था इसके जरिए हम हिंदू धर्म से बाहर जाएंगे लेकिन हिंदू सिविलाइजेशन का एक डेट, एक कर्ज हमारे ऊपर भी है और यह कर्ज चुकाने का सही तरीका यह है कि हम सिखिज्म को अपनाएं, जिससे कि हम हिंदू सभ्यता और हिंदू संस्कृति के दायरे से बाहर नहीं जाएंगे, बस हिंदू धर्म को हम छोड़ेंगे। यह भी एक सोचने की बात है। यह भी एक सोचने की बात है कि अंबेडकर ने कभी भी इस्लाम को कन्वर्जन के लिए कंसिडर ही नहीं किया। क्रिश्चियनिटी को भी किया था एक बार छोटे से समय के लिए, बुद्धिज्म आगे तो हुए ही कन्वर्ट, सिखिज्म को किया था, इस्लाम को नहीं किया क्योंकि इस्लाम को के बारे में वो मानते थे कि ये भारतीय सभ्यता का हिस्सा नहीं है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट का। लेकिन उन्हीं का विचार ये भी था कि हिंदू धर्म भी भारतीय सभ्यता का हिस्सा नहीं है। अगर आप थॉट्स ऑफ पाकिस्तान पढ़ें तो उनका एक रवैया जो देखने में आता है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के कॉन्ट्रडिक्शन में और पार्टीशन के सवाल पे, जो ये कहते हैं कि वो मुस्लिम विरोधी हैं, वो गलत कहते हैं, एकदम गलत बात है। अंबेडकर मुस्लिम विरोधी नहीं थे लेकिन उनके कुछ प्रेक्षण बहुत सवाल के दायरे में आते हैं। जैसे वो ये कहते हैं कि टर्की का मुसलमान तो एडवांस्ड हो गया, आधुनिक हो गया और टर्की का मुसलमान आगे बढ़ गया लेकिन भारत का मुसलमान बहुत पिछड़ा हुआ है और वो तार्किक रीजनिंग के मामले में बहुत पीछे है, उसके इनकेपेबल है, अक्षम तार्किक रीजनिंग करने में और यही कारण है कि मुसलमान फंडामेंटलिज्म जो है वो पैदा हो रहा है। उन्होंने ये कहा कि हिंदू फंडामेंटलिज्म अपने आप नहीं पैदा हुआ है, हिंदू फंडामेंटलिज्म इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि मुस्लिम फंडामेंटलिज्म है। मुस्लिम फंडामेंटलिज्म अगर ना होता तो हिंदू फंडामेंटलिज्म नहीं पैदा होता। यह बात तथ्यतः सही नहीं है। पहली बात तो यह कि कभी भी फंडामेंटलिज्म हमेशा बाइनरी के रूप में विकसित होता है। एक फंडामेंटलिज्म हमेशा दूसरे फंडामेंटलिज्म को पैदा करवा के ही विकसित हो सकता है, उसके बिना विकसित नहीं हो सकता है क्योंकि यह आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है। आइडेंटिटी का बेसिक लॉजिक क्या होता है? अदरिंग, अन्यकरण। मैं अपनी आइडेंटिटी तभी बना सकता हूं जब मैं अपने आप को आपसे डेलिनिएट करूं, अलग करूं, जब मैं बोलूं आप अन्य हैं मैं ये हूं। तो इस प्रोसेस में मैं एक और आइडेंटिटी भी मजबूत कर रहा हूं। अकेली आइडेंटिटी कभी पैदा हो ही नहीं सकती है। हमेशा आइडेंटिटीज बाइनरी या मल्टीपल्स पे पैदा होती है, अकेली आइडेंटिटी नहीं पैदा होती है। तो ये खैर उनका सिद्धांत सही नहीं था, लेकिन खैर कन्वर्जन के लिए फिर जब सिखिज्म को उन्होंने कहा और उन्होंने ऐलान भी किया कि मैं दलितों का आह्वान करता हूं कि वो सिखिज्म में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके बाद कई दलित भारत में सिखिज्म में कन्वर्ट हुए। लेकिन सिखिज्म में कन्वर्ट होने के बाद जो उन्होंने वहां देखा कि जट किसान भी उनका वैसा ही शोषण करते हैं जैसे हिंदू धर्म में सवर्णवादी ताकतें करती हैं, तो उससे अंबेडकर को बहुत धक्का लगा। इसके अलावा 1936 में वो ब्रिटेन गए ये जानने के लिए कि क्या अगर कम्युनल अवार्ड और माइनॉरिटीज को जो बेनिफिट दिया जा रहा है, जो दलित सिख बन जाएंगे क्या उनको माइनॉरिटी बेनिफिट मिलेगा, तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि नहीं मिलेगा। तो इससे भी वो निराश हुए, और जब वो वापस आए तो उन्हें पता लगा कि यहां पर भी हालत वही है, जाति यहां पर भी है। तो फिर वो सिखिज्म से विड्रॉ किए, और उसके बाद करीबन 10-12 साल तक उन्होंने कन्वर्जन का खुले तौर पे कहीं उस तरीके से जिक्र नहीं किया, इशारे किए। अंततः वो कन्वर्ट होते 1956 में। बुद्धिज्म का अध्ययन वो लंबे समय से कर रहे थे और बीच में श्रीलंका भी गए, त्रिपिटकों वगैरह का अध्ययन किया, और उसके बाद 56 में वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए। हालांकि बुद्धिज्म भी जाति व्यवस्था से निपट नहीं पाया था, वास्तव में बुद्धिज्म के भीतर भी बुद्धिज्म का एनालिसिस कुछ लोगों ने यह भी किया है, जैसे कि इरफान हबीब, सतीश चंद्रा, कि उसने एक तरीके से जाति व्यवस्था को मजबूत करने में भी कुछ कदम उठाए, जैसे कि जीव हत्या को इस कदर अधर्म घोषित कर देना, तो वो बहुत सारी कम्युनिटीज थी, जो ट्राइब्स थे, जो बहुत सारी जातियां थी, वो तो खाती थी, मांसाहार करती थी, लेकिन उसको इस हद तक ले गए कि हल चलाना भी गलत है। तो बुद्ध ने कहा कि जो प्रव्रज्ञा ले रहा है, जो भिक्षु बन रहा है, वो हल नहीं चलाएगा। दूसरे कौन कौन प्रव्रज्ञा नहीं ले सकता? कर्जदार किसान प्रव्रज्ञा नहीं ले सकता। तो कर्जदार किसान कौन था? शूद्र और दलित। स्त्रियां अपने पति से इजाजत लिए बिना प्रव्रज्ञा नहीं ले सकती, यानी भिक्षु नहीं बन सकती। तो स्त्रियों को कौन सा पति आज्ञा देगा भिक्षु बनने की? और तीसरी चीज कि सैनिक राजा से आज्ञा लिए बिना प्रव्रज्ञा नहीं ले सकता, तो सैनिक को राजा क्यों देगा आज्ञा भिक्षु बनने की? तो ये तीनों ही चीजें वास्तव में स्त्रियों और दलितों के खिलाफ जाती थी, और बुद्ध धर्म में ये पहले ही हो गया। बाद में कुछ रेडिकल, बुद्ध की मृत्यु के बाद कुछ रेडिकल बौद्ध दार्शनिक हुए जिन्होंने इन चीजों को बदला, लेकिन वास्तव में जैसे ही बुद्धिज्म एक राजकीय धर्म बन गया, एक स्टेट रिलीजन बन गया मौर्य पीरियड में, वैसे उसका पतन हुआ, उसका कोलैप्स हुआ, और उसके बाद उसके भीतर भी जाति का प्रवेश हुआ। और इस तौर पे बुद्धिज्म कोई ऐसा धर्म नहीं था जो जाति से वो निजात दिलाता, ये साबित भी हो गया। अंबेडकर के कन्वर्जन के बाद 5.5 लाख दलित, जिसमें ज्यादातर महार थे, वो आने वाले 10-12 वर्षों में कन्वर्ट हुए, लेकिन और उनको नव बौद्ध बोला गया। लेकिन आज नव बौद्ध और दलित जो है वो पर्यायवाची बन गया है। तो वास्तव में वो तो जाति को उससे खत्म किया ही नहीं जा सकता, लेकिन ये भी सोचने की बात है कि अंबेडकर की आखिरी डेस्परेट स्ट्रेटजी थी, आखिरी हताश स्ट्रेटजी थी, वरना वो तो कन्वर्जन की बात 36 से कर रहे थे कि मैं हिंदू पैदा हुआ, हिंदू मरूंगा नहीं। 20 साल क्यों लगा? मरने से ठीक पहले, क्यों पहले ही कर लेते? क्योंकि एक होप भी थी उनमें एक टाइम तक कि शायद कुछ रिफॉर्म मूवमेंट के जरिए जाति व्यवस्था का नाश किया जा सके हिंदुइज्म के फोल्ड के भीतर। जैसे जैसे ये होप मरती गई, तो कई प्रयास वो एक साथ कर रहे थे जिसमें उनके कुछ आखिरी डेस्परेट अटेम्प्ट थे, आखिरी कुछ हताश प्रयास थे, जिसमें एक था शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का वो प्रपोजल जो उन्होंने क्रिप्स मिशन को दिया, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का बनना, कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद उनका इस्तीफा, और उसके 52 में इस्तीफा शायद दिया, 52 में ही शायद दिया, और उसके बाद 56 में मृत्यु से थोड़ा पहले ही कन्वर्जन। तो इस तौर पे अब अंबेडकर के पूरे उसको देखा जाए, अगर विचारधारा को, तो अंबेडकर से बहस इस प्रश्न पे आके रुकती है कि जाति के उन्मूलन के लिए सुधार या क्रांति। असली बहस ये, सुधारवाद या क्रांति, और इस बहस को ही हमें लगता है कि सबसे प्रमुख तौर पे समझा जाना चाहिए कि कास्ट किसी भी जाति के विरुद्ध लड़ाई किसी भी ऐसी विचारधारा के ऊपर खड़े होकर नहीं लड़ी जा सकती है जो आपको सत्ता के खिलाफ जाने से रोकती हो, क्योंकि हमारे देश में सत्ता का एक लिंग है और सत्ता की एक जाति भी है। पूंजीवादी सत्ता है, उसका एक लिंग भी है, उसका एक जेंडर है, वो पितृसत्तात्मक है और वो जातिवादी ब्राह्मणवादी है। और पूंजीवाद, जैसा कि पहले हिस्से में टॉक के मैंने रखा था, पूंजीवाद ने अपने तरीके से जाति व्यवस्था को सहयोजित कर लिया है। जाति इकोनॉमिक बेस का भी पार्ट है। अंबेडकर का मानना था कि इकोनॉमिक बेस का पार्ट नहीं है। कम्युनिस्टों ने भी कुछ यही गलती की, उसको इकोनॉमिक बेस का पार्ट नहीं माना, उसको अधिरचना का हिस्सा माना कि यह संस्कृति है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में लिखा है अंबेडकर ने, जाति कोई दीवार जैसी भौतिक चीज नहीं है जिसको धक्का देकर गिराया जाए, यह एक नोशन है, एक स्टेट ऑफ माइंड है, और इसलिए जाति के खात्मे के लिए नोशनल चेंज की जरूरत है। यह मैं कोट कर रहा हूं अंबेडकर को। लेकिन जाति वास्तव में लेबर डिवीजन से पैदा हुई थी, इसलिए वो इकोनॉमिक बेस का पार्ट तो है ही, वही पूरा इकोनॉमिक बेस नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक बेस का एक पार्ट जाति है। और आज भी वो विनिमय के एक रेगुलेटर का काम करती है। जाति वेजेस कम मिलती है दलित मजदूरों को, डिस्ट्रीब्यूशन जो वितरण होता है समाज में, जो उत्पादन होता है, वो वितरण का जो रेगुलेशन विनियमन होता है उसमें जाति एक भूमिका अदा करती है। आज भी लेबर डिवीजन, अगर सफाई कर्मचारी के उद्योग की बात की जाए तो एक रिजिड लेबर डिवीजन काफी हद तक वहां काम करता है, अभी भी लेबर डिवीजन का हिस्सा है वो। अगर आप पूरे देश में मींस ऑफ प्रोडक्शन पे कब्जे की बात करें तो उसमें दलितों को समानुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं है। 16% आर्थिक संसाधन दलितों के हाथ में नहीं है, तो आर्थिक तौर पे भी वो एक सबसे एक्सप्लॉइटेड वर्किंग क्लास की स्थिति में है। उसका एक बहुत छोटा सा एलीट पैदा हुआ है जो हर प्रतीकात्मक मुद्दे पे बहुत जोर जोर से शोर मचाता है, लेकिन जब भी असली कांड होते हैं तो अपने घरों में दुबक जाता है, कभी बाहर निकल के नहीं आता लड़ने के लिए। जो सबसे ज्यादा नाम लेते हैं अंबेडकरवाद का और अंबेडकरवादी, जब भी कोई सच में कांड होता है तो उस वक्त बस जुबानी जमा खर्च करते हैं, सड़क पे उतर के जो लड़ाई होती है वो नहीं लड़ते कभी। तो उसको छोड़ दिया जाए तो 89% दलित अभी भी गरीब शहरी मजदूर या गांव का खेतिहर मजदूर या ग्रामीण मजदूर है। तो ये क्या दिखाता है कि इकोनॉमिक बेस का पार्ट नहीं है जाति, इकोनॉमिक बेस का पार्ट है जाति, लेकिन जाति की एक स्वायत्तता भी है, क्योंकि जाति ही वर्ग नहीं है। जाति की स्वायत्तता के कारण ये सामाजिक उत्पीड़न और आर्थिक शोषण ये अंतर्गुंथित हो गया है, इंटरट्वाइंड हो गया है, और ऐसा ही हमेशा होता है, पूरी दुनिया में ऐसा होता है। आर्थिक शोषण अपने शुद्ध रूप में कहीं नहीं होता है, हर जगह आर्थिक शोषण सामाजिक उत्पीड़न से अंतर्गुंथित होता है। इसको दूसरे शब्दों में अगर सरल तरीके से कहें तो यह कहा जा सकता है, हर मजदूर शोषित है लेकिन दलित मजदूर अतिशोषित है। एवरी वर्कर इज एक्सप्लॉइटेड बट दलित वर्कर इज सुपर एक्सप्लॉइटेड। और दूसरा कहा जा सकता है, हर दलित सामाजिक उत्पीड़न का सामना करता है लेकिन जो गरीब दलित है वो सामाजिक उत्पीड़न के बर्बरतम रूपों का सामना करता है। हर दलित उत्पीड़न का सामना करता है और हमें उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। इवन भाजपा का एक मंत्री अगर मायावती के खिलाफ कोई जाति सूचक गाली देता है, जैसा हुआ था अभी हाल में, उसके खिलाफ भी हम लोग को लड़ना चाहिए। मायावती नहीं लड़ेगी, मायावती के लिए ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब छिपा हुआ वरदान है। छिपा हुआ वरदान यह कि यूपी के ठीक पहले अगर उसको बीजेपी जैसी सवर्णवादी पार्टी का नेता एक जाति सूचक गाली देता है तब तो पक्का जाटो और चमार वोट कंसोलिडेट हो जाएगा बीएसपी के लिए। एक इमोशनल ये यही डायलेक्टिक्स चलती है। शासक वर्ग भी मे भी जो दलित अस्मितावादी पार्टियां हैं उसका जो शासक वर्ग है वो जाति का इस्तेमाल करता है अपने वर्ग को अपने पक्ष में खड़ा करने के, अपनी जाति के लोगों को अपने पक्ष में, अपनी जाति के गरीबों को अपने पक्ष में खड़ा करने के लिए, और उसमें अस्मितावाद का इस्तेमाल करता है। और जब वो सत्ता में पहुंच जाता है तो जो अन्य सवर्णवादी ताकते हैं उनके साथ संसाधन में हिस्सेदारी के लिए नेगोशिएट करता है। बड़ी मजेदार और जटिल प्रक्रिया होती है जो अगर चुनावी जटिल दलित पॉलिटिक्स को आप देखें, अपने गरीब दलित आबादी के उसको अस्मितावाद का इस्तेमाल करके जीतता है सपोर्ट को, और अगर वो सत्ता में पहुंच गया चाहे अलायंस में चाहे नॉन अलायंस में, अगर सत्ता में पहुंच गया तो शासक वर्ग जो लूट का हिस्सा है लूट के हिस्से में अपने बंटवारे को बढ़ाने का प्रयास करता है। तो उसके लिए भी कास्ट एक रेगुलेशन मैकेनिज्म है, किस चीज के लिए, विनिमय हिस्सेदारी इसके लिए। तो इसलिए सामाजिक उत्पीड़न और आर्थिक शोषण हमेशा अंतर्गुंथित ही होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं। आयरिश मजदूरों के साथ होता था, ब्लैक्स के साथ होता था, होता है। तो ये जो चीज है कहीं पे आपको शुद्ध रूप में मार्क्स ने कैपिटल में जैसा आर्थिक शोषण लिखा है वैसा आर्थिक शोषण हूबहू कहीं नहीं, वो एक जनरलाइजेशन है, वो एक यथार्थ को, सारभूत यथार्थ को उपस्थित किया गया है, लेकिन सारभूत यथार्थ कभी वास्तविकता में हूबहू मौजूद नहीं होता है, वो हमेशा एक परिघटना के रूप में मौजूद होता है जो उसके सार को छिपाए रहती है, उस परिघटना को भेद के सार तक पहुंचना पड़ता है। तो इसलिए हमेशा ही ये होगा। और चूंकि कई लोग ये कहते हैं और अंबेडकर भी ये कहते थे कि सोशल रिफॉर्म पहले होगा तभी पॉलिटिकल रेवोल्यूशन होगा, आज भी कई लोग कहते हैं कि सामाजिक उत्पीड़न के लिए अंबेडकर, आर्थिक शोषण के लिए मार्क्स, ऐसे लोग न तो सामाजिक उत्पीड़न का एबीसी समझते हैं और न आर्थिक शोषण का एबीसी समझते हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग आइसोलेटेड फॉर्म्स में कहीं नहीं रहते हैं, ये हमेशा जुड़ के चलते हैं। और इस सामाजिक उत्पीड़न को भी चलाने और आर्थिक शोषण को चलाने का काम कौन करता है, राज्य सत्ता, दूसरे शब्दों में राजनीतिक अधिरचना, यानी कि सामाजिक अधिरचना को भी बचाने का काम राजनीतिक अधिरचना करती है। जो ही अंबेडकर ने कहा था, आप कोई भी लड़ाई लड़े, चाहे पॉलिटिकल रिफॉर्म की या इकोनॉमिक रिफॉर्म की, तो एक मॉन्स्टर, एक राक्षस तुरंत आपका रास्ता काटता है। यह बात सच है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जैसे ही आप जाति के खिलाफ लड़ाई शुरू करते हैं तो एक मॉन्स्टर आपका रास्ता काटता है, वह है राज्य सत्ता, वह है सरकार, अपने सारे पुलिस फौज फाटे के साथ उपस्थित हो जाती है उसी सामाजिक उत्पीड़न को बचाने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए। और इन दोनों में बड़ा राक्षस कौन है? तो मेरे हिसाब से राज्य सत्ता है, क्योंकि छोटे राक्षस को खाद पानी देने और उसको पोषित करने का काम यह बड़ा राक्षस करता है। इसलिए आप बिना राज्य सत्ता के क्रांतिकारी परिवर्तन का सवाल उठाए, बिना एक पूरे सामाजिक आर्थिक उत्पादन और पुनरुत्पादन के संबंधों के क्रांतिकारी रूपांतरण का सवाल उठाए हुए बिना आप जाति के उन्मूलन की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए हम कहते हैं कि क्रांति के बिना जाति उन्मूलन संभव नहीं है। लेकिन यह कहने का यह मतलब नहीं है कि क्रांति होने तक जाति उन्मूलन के अब वो तो सीधे उसी वक्त होगा, तो तब तक कुछ करने की जरूरत नहीं है। यह भी उतने ही जोर से कहा जा सकता है कि क्रांति होगी ही नहीं अगर आज ही इसी वक्त हम जाति विरोधी वर्ग आधारित आंदोलन खड़ा नहीं करते, एक क्लास बेस्ड एंटी कास्ट मूवमेंट। और मेरे शब्दों पर गौर करें, दलित आंदोलन नहीं, जाति विरोधी आंदोलन। यहीं पर जिग्नेश मेवानी तमाम भौतिक प्रश्नों को उठाने और एक रेडिकल मूवमेंट को प्रशंसनीय तरीके से लीड करने के बावजूद मेरी एक आलोचना है, एक कॉमरेडाना, एक साथी वाली आलोचना है जिग्नेश मेवानी के, कि अपनी यात्रा का नाम दलित अस्मिता यात्रा रखने के बजाय जाति विरोधी और या जाति तोड़ो यात्रा रखनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप ऐसा बैरियर खड़ा करते हैं, एक आबादी रुक जाती है, उसको आप बाहर कर जाते हैं। ये नाम ही एक्सक्लूसिविस्ट है, बहिष्करणवादी नाम है। तो आप कभी भी क्रांति के लिए मजदूर वर्ग को संगठित ही नहीं कर सकते अगर आप एक वर्ग आधारित जाति विरोधी आंदोलन नहीं खड़ा करते हैं। ये वर्ग आधारित जाति विरोधी आंदोलन आज ठीक खड़ा करने के लिए हमें खड़ा करना पड़ेगा, लेकिन वर्ग आधारित जाति विरोधी आंदोलन से मतलब क्या है? मतलब यह है कि वो जाति आंदोलन, वो जाति विरोधी आंदोलन, वो प्रतीकात्मक मुद्दों और सिंबॉलिक इश्यूज और इस तरह के जो फेनोमिनल मुद्दे होते हैं, परिघटनात्मक मुद्दे होते हैं, उस पर तो लड़ेगा ही, लेकिन केवल उस पर नहीं लड़ेगा। जैसा आज पूरा जाति विरोधी आंदोलन केंद्रित हो गया है, लक्ष्मणपुर बाथे और बथानी टोला के हत्यारे छूटते हैं तो कहीं पर हल्ला नहीं मचता है। जावखेड़, खैरलांजी, मिर्चपुर हो जाता है तो कुछ दिन हल्ला मच के शांत हो जाता है, तमाम ये अस्मितावादी संगठन वहां उतर के सड़क पे लड़ने को तैयार नहीं होते। लेकिन एनसीईआरटी किताब में एक कार्टून छप गया, जिस कार्टून को यही दिखाने के लिए सुहास पलशिकर ने छापा था अपनी पुस्तक में, कि किस तरीके से पूरे सत्ता व्यवस्था का एक जातिवादी चरित्र है। लेकिन चूंकि उस कार्टून में अंबेडकर का रिप्रेजेंटेशन उनको आपत्तिजनक लगा, तो वहां पर एक दलित संगठन ने जाकर रिपब्लिक सुहास पलशिकर के ऑफिस में तोड़फोड़ कर दी। इस पर तो बड़ा गुस्सा आया। पुणे यूनिवर्सिटी को अन्ना भाऊ साठे यूनिवर्सिटी नाम देने के लिए तो इतने साल से झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन जहां पर सच में हाथ काट लिए जा रहे हैं, दलित मजदूर अपनी मजदूरी मांगता है जब, तो कहां है ये लोग उस समय जब बथानी टोला और लक्ष्मणपुर बाथे के सवर्णवादी हत्यारों को छोड़ दिया जाता है। कोर्ट बोलता है पता नहीं किसने मारा, 60 लोगों को पता ही नहीं किसने मारा, तब ये लोग हल्ला क्यों नहीं मचाते, तब क्यों नहीं उतरते सड़कों पर? क्योंकि ये आबादी वो आबादी है जो सबसे ज्यादा बोल रही है, जिस बुद्धिजीवी आबादी पे सबसे ज्यादा भरोसा किया गया था एक समय में अंबेडकर द्वारा भी, ये आबादी अपना स्वर्ग प्राप्त कर चुकी है। और जब भी दमित कौमों के बीच से एक कुलीन शासक वर्ग पैदा होता है तो सत्ता की हिफाजत उनसे भी ज्यादा वफादारी के साथ करता है जिन्होंने उस सत्ता को बनाया है। इसलिए वो जलालत की, वो गरीबी की, वो दमन की जिंदगी के भीतर से, मान लीजिए किसी भी वजह से उठ के एक कुलीन तबका पैदा हुआ, उसमें से इंडिविजुअल्स आ सकते हैं जाति विरोधी आंदोलन में, लेकिन उसमें वो पूरा वर्ग नहीं आने वाला है। इस मुगालते में रहना, इस मुगालते से अंबेडकर तो आजाद हो गए थे, लेकिन आज के अंबेडकरवादी आजाद नहीं, क्योंकि वो अंबेडकरवादी आंदोलन ही पूरा उस कुलीन उसको ही रिप्रेजेंट करता है, वास्तव में एक जाति विरोधी वर्ग आधारित आंदोलन है नहीं। इसलिए पहला कारण कि इन सिंबॉलिक मुद्दों से आगे बढ़ के जो दलित उत्पीड़न की सबसे बर्बर घटनाएं हैं, दलित अपमान की सबसे ग्लेयरिंग घटनाएं हैं, और आप पिछले 40 साल के रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, दलित एट्रोसिटीज के निशाने पर हमेशा वर्किंग क्लास दलित होते हैं, अगर अपवादों को छोड़ दिया जाए तो उन पर कोई कुछ नहीं बोलता, उनके लिए सबसे पहले लड़ना होगा, यह सबसे पहली चीज है। दूसरी चीज जो मैं समझता हूं कि आज जो दलित आंदोलन जिसको मैंने पहले जिक्र किया कि दलित अपमान की भी जो जहां पर निशाना दलित अपमान का मायावती है जो कि दलित आबादी में पैदा हुए शासक वर्ग को रिप्रेजेंट करता है, तो उसका भी हमें विरोध करना चाहिए। इसलिए नहीं कि हम मायावती के समर्थक हैं, इसलिए कि हम ब्राह्मणवाद के विरोधी हैं, हम इस सोच के विरोधी हैं, इसलिए हमें उसके खिलाफ लड़ना, मायावती नहीं लड़ेगी। बल्कि ऐसे इस तरह की घटिया बयानबाजी बंद हो जाए तो इससे बीएसपी को नुकसान होगा, क्योंकि इस तरह की हर घटिया बयानबाजी अस्मितावाद को और मजबूत कर जाती है और उसका फायदा हमेशा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हर किस्म के अस्मितावाद को मिलता है, दलित अस्मितावाद को भी मिलता है। तो इसलिए उस हर अपमान के लिए भी एक रेडिकल मूवमेंट, वो वर्किंग क्लास लोअर मिडिल क्लास दलित आबादी के बीच से पहली बात, और खासतौर पर अगर हरियाणा की बात करें, अगर जाट नौजवान आगे नहीं आएंगे जाति तोड़ने के लिए तो जाति नहीं टूट पाएगी। आप ये समझो इसके गुलाम हम भी, हम भी जब तक इस चीज को छोड़ेंगे नहीं, ये जो जातिगत श्रेष्ठतावाद है, ये जो वर्चस्ववाद है, इससे हमें क्या मिला? मराठा एजिटेशन, जाट एजिटेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि आज के टाइम में मराठा आबादी, अब मराठा एजिटेशन का एग्जाम्पल लीजिए, मराठा आबादी में महाराष्ट्र के पूरे आर्थिक संसाधन, नौकरशाही, उस पर 200 मराठा परिवारों का कब्जा है, 200 मराठा परिवार केवल। मराठा आबादी का बड़ा हिस्सा वो जलालत की जिंदगी, मुफलिसी की जिंदगी जी रहा है, बेरोजगारी, गरीबी से उसकी कमर टूटी हुई है। तो उसका वर्गगत गुस्सा, उसका वर्गीय गुस्सा कहीं सत्ता के खिलाफ न फूट पड़े, इसलिए उसको बताया जाता है कि तुम्हारे नौकरी के अवसर लेके दलित चले गए। और जो वर्गीय गुस्सा मुड़ सकता था सत्ता के खिलाफ, उसको मोड़ दिया जाता है, दलित वर्सेस मराठा इशू बना दिया जाता है। वही काम यहां भी किया जाता है, वही काम गुज्जर मीणा उसमें भी हुआ। गुज्जर मीणा जो है वो दलित नहीं, ट्राइबल्स, तो मीणा और दलित के उसमें भी होता है यही काम। अब उसको किस किस उसमें बांट दिया जाता है फिर, अब एक महादलित कैटेगरी नीतीश कुमार नहीं जाती, तो वहां दलित और महादलित में झगड़ा शुरू हो गया। तो वास्तव में इस चीज को छोड़ने की जरूरत है। ये जो अस्मितावादी राजनीति है जिसको जाट नेता भी यहां इस्तेमाल कर रहे हैं कि अपने ऊपर सवाल ना है, ये जो लीड कर रहे हैं यही तो पूरे हरियाणा के संसाधनों पर कब्जा करके बैठे हैं, चाहे वो इनेलो के हों, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, है कि नहीं है? यही तो कब्जा करके बैठे हैं और ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे दुश्मन दलित हैं, तुमको रिजर्वेशन मिल जाए तो समाधान पैदा होगा। क्या मूर्खतापूर्ण तर्क है? जिस देश में 1997 से लेकर अभी तक सरकारी नौकरी जो है 2% से ज्यादा की रफ्तार से कम हो रही हो, उसमें रिजर्वेशन मिलने, क्योंकि रिजर्वेशन तो पब्लिक सेक्टर में ही है ना, प्राइवेट सेक्टर में तो है नहीं, और प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां कम हो रही हैं, पब्लिक सेक्टर में तो कम हो ही रही है। तो ये रिजर्वेशन के लिए लड़ना वैसा है जैसे कोई चीज है ही नहीं उसके लिए लड़ रहा है, जो है ही नहीं, जो अस्तित्व में ही नहीं है, जिसका वजूद ही नहीं है, उसके लिए लड़ ही नहीं रहे, लड़ मर रहे हैं, काट दे रहे हैं दूसरे को। क्या मूर्खता! हमारा साझा दुश्मन, उसको पहचानने की जरूरत है। वो निश्चित तौर पे वहां पर भी मराठों के बीच का कुलीन वर्ग है और वे यहां पर हरियाणा में जाटों के बीच का कुलीन वर्ग है, लेकिन जाटों के कुलीनों के बीच के कुलीन वर्ग की यारी जाटों के गरीबों से नहीं है, जाट वर्ग के कुलीन, जाटों के भीतर जो कुलीन वर्ग है उसकी यारी वो नहीं, ब्राह्मणों और ठाकुरों और उसके बीच का जो कुलीन वर्ग है उनसे है। ये समझने की जरूरत है, नहीं तो आपस में सिर्फ उटावल करते रहेंगे। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसको समझे। तो इसलिए रिजर्वेशन पे भी एक ऐसा स्टैंड लेना आज जरूरी है कि हम इसके ना तो पक्ष में है ना विपक्ष में। आज अगर कहीं पर रिजर्व सीटें हैं और नहीं भरी जा रही है तो भ्रष्टाचार का मसला है, उसके खिलाफ एनबीएस को भी लड़ना चाहिए, दिशा को भी लड़ना चाहिए, या कोई भी संगठन हो उसको लड़ना चाहिए कि जितनी सीट भी है वो भरो। लेकिन साथ साथ जो हमारा दलित साथी, उसको यह भी बताना चाहिए इससे कुछ नहीं हो जाएगा, इससे बहुत कुछ नहीं, इससे अब कोई तात्कालिक राहत भी कितनी मिल जाएगी ये देखना पड़ेगा। और जब जाट बोलता है या ब्राह्मण बोलता है या कोई जो अपवर्ड मोबाइल जाति बोलती है कि रिजर्वेशन से योग्यता से खिलवाड़ हो रहा है, तो उससे पूछना चाहिए कि भाई जब मैनेजमेंट कोटा फिक्स हो रहा था और एनआरआई कोटा फिक्स हो रहा था मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में, तब तुम्हें योग्यता की याद नहीं आई? क्या सारे धन्ना सेठों की औलादे जीनियस पैदा होती है? जो उस समय योग्यता का सवाल नहीं उठाया, जो सिर्फ जातिगत आरक्षण पर योग्यता का सवाल उठा रहा है, उसको शायद पता नहीं है लेकिन उसके दिमाग में ब्राह्मणवादी जातिवादी कीड़ा है। और साथ में हम यह भी पूछते हैं कि भाई जो है ही नहीं उसके लिए क्यों लड़ रहे हैं? हमें किस चीज के लिए लड़ना चाहिए? आज सबको शिक्षा और सबको रोजगार, ये मूलभूत अधिकार होना चाहिए। सरकार कहती है रोजगार देना हमारा काम नहीं है, तो फिर किसका काम है? सरकार टैक्स क्यों लेती है? सरकार के टोटल राजस्व का बड़ा हिस्सा अप्रत्यक्ष कर से आता है, वो टाटा बिरला नहीं पैदा करते हैं। और जो डायरेक्ट टैक्स भी जाता है डायरेक्ट टैक्स देने वाले छोटे से 10-15% जो अमीर वर्ग हैं, उनके पास वो डायरेक्ट टैक्स देने का पैसा भी उनके लकड़दादों ने नहीं पैदा किया। वो पैसा, वो संसाधन, वो धन संपदा इस देश के खेतों खलिहानों, कल कारखानों और खानों खदानों में पैदा होती है, और वहां जो मेहनत कशवर्ग पसीना बहा रहा है वो पैदा करता है। तो सब कुछ ही मेहनत कशवर्ग ने पैदा किया है, सुई से लेकर जहाज तक। तो सरकार क्यों नहीं देगी रोजगार? ये 15 रुपए की चिकन करी खाएंगे बैठ के विधानसभा और संसद में, और बोलेंगे कि रोजगार देना हमारा काम नहीं, सड़क बनाना। तो किसका काम है भाई? क्यों हो तुम, किस लिए? तुम इसलिए हो कि अडानी अंबानी को जो है वो सट्टेबाज पूंजी के उनके बुलबुले फुलाओ? तो ये हमें समझने की जरूरत है कि आज हमारी दुश्मन ये व्यवस्था है। अल्टीमेटली तो क्रांति के लिए हमें लड़ना है, बुनियादी तौर पे सत्ता व्यवस्था के परिवर्तन के लिए लड़ना है, लेकिन तात्कालिक तौर पे भी, आरक्षण के लिए नहीं। आरक्षण और बढ़ा दिया जा रहा है, जो है नहीं, जो है वो मिले ठीक है, मिलता रहे, जो उसका विरोध करता है हम उसका विरोध करते हैं, लेकिन अब इसमें और जोड़ दिया जाए तो ये वैसा होगा कि इस हॉल की छत पे खड़े हो जाओ, नीचे भूखे नंगों की भीड़ खड़ी हो और हाथ में एक रोटी हो, बोलो कि तुम सबसे भूखे लग रहे हो, तुमको 16%, तुम उससे कम भूखे लग रहे हो, तुमको 7%, तुम उससे कम भूखे लग रहे हो, तुमको 3%। सब मरेंगे, किसी का पेट नहीं भरेगा इतने से। और जिस छत पे खड़ा होकर शासक वर्ग ये खैरात बांट रहा है, उस भवन के भीतर माल भरा हुआ है, हम ही लोग का पैदा किया हुआ, तो खैरात क्यों नहीं? हमको एक ब्रेड नहीं चाहिए, हमको पूरी पूरा तंदूर लेंगे हम तो। और यही मांग होनी चाहिए तात्कालिक तौर पे हमारी, कि हमको रोजगार और शिक्षा, और निशुल्क और समान शिक्षा। यानी कि अमीर वो जो कॉन्वेंट में जाके पा रहा है, उसके नीचे जो गरीब है वो सैनिक स्कूल और इसमें पा रहा है केवी में, उसके जो नीचे और राजकीय स्कूल में पा रहा है, उसके जो नीचे जो म्युनिसिपैलिटी स्कूल में पा रहा है, जिसमें स्कूल में जैसा स्कूल जैसा कुछ होता ही नहीं है, ना तो ब्लैक बोर्ड होता है, ना शौचालय होता है, ना टीचर होते हैं। ज्यादातर गरीब आबादी मिड डे मील खाने के लिए जाती है, वो भी जहरीला मिलता है, सड़ा हुआ, खा के मरते हैं। तो ये समझना जरूरी है, इसलिए एक वर्ग आधारित जाति विरोधी आंदोलन। दूसरा, दो और चीजें जिस पर मैं अपनी बात खत्म करूंगा, कि आज के समय में दो चीजें हमारे जाति विरोधी आंदोलन का हिस्सा होना चाहिए। एक, पितृसत्ता टूटना। यह कहना अंबेडकर का सही था कि जब सजातीय विवाह टूटेगा और अंतरजातीय विवाह होंगे तो जाति टूटेगी, लेकिन सजातीय विवाह टूटे और अंतरजातीय विवाह हो, इसके लिए स्त्रियों का स्वतंत्र होना जरूरी है। जब तक स्त्रियों को यह अधिकार नहीं होगा कि वे अपनी इच्छा से अपने जीवन साथी का चुनाव करें, अपने जीवन में क्या पढ़ना है, क्या करियर है, क्या करना है, क्या हमारा कौन हमारा जीवन साथी होगा, यह चुनने का अधिकार अगर स्त्रियों को नहीं मिलेगा तो अंतरजातीय विवाह अरेंज्ड नहीं हो सकते। अंतरजातीय विवाह प्रेम विवाह होंगे, और इसलिए यहां पे पितृसत्ता पर हमला करना और स्त्रियों की आजादी के लिए लड़ना, यह भी अखिल भारतीय जाति विरोधी मंच का एक एजेंडा होना चाहिए। और आखिरी चीज, जब आज की पूरी दुनिया में एक दक्षिणपंथी फासीवाद का उभार हो रहा है, फासीवाद यहां सांप्रदायिक रूप में आ रहा है, कहीं नस्ली रूप में आ रहा है, तो इस फासीवाद के खिलाफ भी हमें लड़ना पड़ेगा। भारत में फासीवाद का चरित्र वही है जो कहा जाए कि सवर्णवादी ताकतों का प्राचीन काल में रहा है। यह सबसे सवर्णवादी ताकतें हैं जो आज फासीवादी सत्ता को कायम करके बैठी है। तो बिना फासीवाद के खिलाफ भी लड़े, आप सवर्णवाद के खिलाफ नहीं लड़ सकते। ये कुछ बुनियादी, मेरे पास पूरा समाधान नहीं है, लेकिन हां, मुझे लगता है कि वर्ग आधारित जाति विरोधी आंदोलन इस रूप में खड़ा किया जा सकता है। सुधारवाद के रास्ते नहीं, अंबेडकरवाद के रास्ते नहीं। अंबेडकर द इंडिविजुअल के प्रति और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के प्रति पूरा रिस्पेक्ट है, अंबेडकर के रास्ते से जाति उन्मूलन नहीं हो सकता है। बल्कि यह कहा जाना चाहिए, अंबेडकर के पास जाति उन्मूलन का रास्ता नहीं था, उनके जेन्युइन सरोकार थे, ईमानदारी से जिसपे उन्होंने काम किया कि जाति का नाश हो, लेकिन रास्ता उनके पास नहीं था। यह समझे बगैर आज के समय में 21वीं सदी में 2017 में बैठकर हम किसी कारगर जाति विरोधी आंदोलन की कल्पना नहीं कर सकते। धन्यवाद।